जनरल लांग, आप यहां सबसे बड़ी राजकुमारी को नहाते हुए देखने के लिए भी नहीं आए होंगे, है ना? झाओ गुजियांग के चंचल और चिढ़ाने वाले शब्दों ने लॉन्ग झान के होठों को फड़कने पर मजबूर कर दिया। लॉन्ग झान झाओ गुजियांग की आलसी और उदासीन स्थिति और उसकी अर्धमृत आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका। उनके विचार में ये झाओ गुजियांग उनका मजाक उड़ा रहा था। झाओ गुजियांग ने कुछ नहीं किया, छाया का आनंद लेने के लिए बड़े पेड़ पर निर्भर रहा, लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे असफलताएं दिलवाईं। वह ऐसे बेकार वारिस के खिलाफ क्यों नहीं जीत सका? सबसे बड़ी राजकुमारी, लॉन्ग झान की तलवार जैसी भौहें गुस्से में उठी और उसने झाओ गुजियांग पर उग्रता से इशारा करते हुए ली झाओ हुआ को धमकाना जारी रखा। झाओ गुजियांग को भाग जाने पर मजबूर करो, नहीं तो, ली झाओ हुआ ने भौहें सिकुड़ी लेकिन कुछ नहीं बोला। झाओ गुजियांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे पहले ही सुराग मिल चुका था। ली झाओ हुआ को लॉन्ग झान ने नियंत्रित किया हुआ लग रहा था। बड़ी राजकुमारी, क्या आपके पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं? झाओ गुजियांग की आंखें चमक उठी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लॉन्ग झान ने झाओ गुजियांग को गुस्से से घूरा, अपने दांत पीस लिए और ली झाओ हुआ से धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। उसे अभी भाग जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गुप्त सैन्य तैनाती को सार्वजनिक कर दूंगा। ली झाओ हुआ का दिल धीरे धीरे ठंडा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने धीरे से झाओ गुजियांग को घर में खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, झाओ गुजियांग हम में से एक है, वह कुछ भी सुन सकता है। लॉन्ग झान, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे उसके सामने कह दो। क्या यह महिला वास्तव में लॉन्ग झान की कमजोरी से प्रभावित हो गई है और मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती है? झाओ गुजियांग को और भी ज्यादा यकीन हो गया। वह भी मुस्कुराया, मानो उसके और लॉन्ग झान के बीच कोई नफरत ही नहीं थी और वे वाकई सहयोगी बन गए थे। ये सही है कमांडर लॉन्ग, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कह दीजिए, शायद मैं आपको कुछ विचारों के साथ मदद कर सकूं। ली झाओ हुआ ने झाओ गुजियांग की ओर देखा और सोचा कि यह आदमी वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और वह उससे बहुत प्रभावित हो रही थी। लॉन्ग झान ली झाओ हुआ की हरकतों से हैरान था। झाओ गुजियांग उनमें से एक था। झाओ गुजियांग के समर्थक राजा झेनबेई थे। ली झाओ हुआ की गुप्त सैन्य तैनाती का उद्देश्य विद्रोह करना था। ली झाओ हुआ की शक्ति और राजा झेनबेई की शक्ति के साथ एक बार जब वे वास्तव में सहयोग करते हैं तो उनके पास ली ज़ायुआन के साथ मुकाबला करने की वास्तविक क्षमता होगी। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह रहस्य उजागर कर देगा। अगर उसने सच में यह बात बता दी तो वह दो आग के बीच फंस जाएगा। अगर वे सच में लड़े तो दोनों पक्ष शायद पहले उसे मार देंगे। लॉन्ग झान ने पक्ष विपक्ष पर विचार किया। इस समय वह केवल अस्थायी रूप से ही विनम्र हो सकता था। उसने सूखी खांसी की। हम सब एक ही पक्ष में हैं, इसलिए इसे भूल जाए। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं काफी समय से यहां नहीं आया हूं। चूंकि झाओ गुजियांग, आप यहां जल्दी में आए हैं, इसलिए आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ होना चाहिए। बड़ी राजकुमारी, आप बात करें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लॉन्ग झान की बात खत्म होने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गया। ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि वहां कोई जान का खतरा नहीं था, लेकिन यह अपरिहार्य था कि झाओ गुजियांग उसे अपमानित करने का अवसर ढूंढ लेगा। ली झाओ हुआ ने धीरे से राहत की सांस ली। लॉन्ग झान को अपनी सेना की तैनाती के बारे में पता था जो उसकी उम्मीदों से परे थी। उसे लॉन्ग झान को रोकने के लिए झाओ गुजियांग का इस्तेमाल करना पड़ा। झाओ गुजियांग ने कभी भी लॉन्ग झान को इतनी समझदार नहीं देखा था। वह मुस्कुराया और लॉन्ग झान को रोकने के लिए आगे बढ़ा। आपने बड़ी सहजता से सबसे बड़ी राजकुमारी के निवास में प्रवेश किया और उसकी शांति को भंग कर दिया। जनरल लॉन्ग, इस तरह से चले जाना थोड़ा असभ्य है न? लॉन्ग झान का चेहरा उतर गया। झाओ गुजियांग, तुम क्या चाहते हो? झाओ गुजियांग ने जवाब दिया, ये वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। तुमने सबसे बड़ी राजकुमारी की शांति भंग की है, इसलिए तुम्हें कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए, है ना? लॉन्ग झान की नजर झाओ गुजियांग और ली झाओ हुआ पर घूम रही थी। अब उसके सामने सिर्फ झाओ गुजियांग ही नहीं खड़ा था। उनके विचार में ये सबसे बड़ी राजकुमारी और राजा झेनबेई के बीच एक संयुक्त प्रयास था। वह अकेले बड़ी राजकुमारी की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। अगर उसने राजा झेनबेई को भी शामिल कर लिया तो वह अब उसका विरोध नहीं कर पाएगा। उसका चेहरा बदल गया, उसे पता था कि वह सिर्फ सह सकता है। वह बगल की ओर मुड़ा, ली झाओ हुआ की ओर अपनी मुठियां बांधी और दांत पीसते हुए बोला, लॉन्ग झान ने सबसे बड़ी राजकुमारी को परेशान किया, कृपया मुझे माफ करें। हवेली में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम बाकी हैं, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। बोलने के बाद लॉन्ग झान मुड़ा और चला गया। जब वह झाओ गुजियांग के पास से गुजरा तो उसकी आस्तीन में हाथ कांप रहा था। अगर स्वर्गीय तलवार गायब नहीं हुई होती तो शायद वह झाओ गुजियांग को तलवार देने से खुद को नहीं रोक पाता। लेकिन अब उसे वह सहना था जो आम लोग नहीं सह सकते। नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, उसे कमजोर और अकेला होने के लिए मत धमकाओ, लॉन्ग जान। वह निश्चित रूप से भविष्य में झाओ हुजियांग के आज के अपमान का 10 गुना बदला चुकाएगा। लॉन्ग जान को जाते हुए देखकर ली झाओ हुआ खुद को झाओ हुजियांग की तरफ कुछ और नजरें डालने से रोक नहीं पाए। झाओ हुजियांग द्वारा लॉन्ग जान को रोकने और उससे माफी मांगने की हरकत ने उसे एक ऐसी गर्मजोशी का एहसास कराया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, जैसे कि सूखे चावल के खेत में वसंत की बारिश से सिंचाई हो रही हो। वह अपने आसपास के लोगों को शतरंज के मोहरे के रूप में देखती थी और उसके आसपास के लोग भी उसे सबसे बड़ी राजकुमारी, स्वामी और सेवक के बीच का रिश्ता, हितों का सहयोग मानते थे। आज लॉन्ग जान द्वारा धमकाए जाने और अपमानित किए जाने से, जो केवल हितों के बारे में सोचती थी, उसे झाओ हुजियांग में भावना की गर्मी महसूस हुई। उसे कुछ हद तक पक्षपात और संरक्षण की यह भावना पसंद आई। वह भावुक होकर बोली, तुम औरतों को प्यार करने में अपने पिता से भी बेहतर हो। औरत का मुंह धोखा देने वाला भूत होता है। झाओ हुजियांग को ली झाओ हुआ की तारीफ की परवाह नहीं थी। वह यहाँ गंभीर काम करने आया था। उन्होंने सीधे पूछा, विद्रोह की प्रगति कैसी है? राजा झेनान, ली जिंग पहले से ही तैयार हैं और किसी भी समय आगे बढ़ सकते हैं। जब ली झाओहुआ ने गंभीर व्यवसाय के बारे में बात की तो उसने अनायास ही एक महान और अलंघनीय महिमा प्रकट की, जैसे कि फीनिक्स दरबार में आ रहा हो। आपने जिस शीत माह का उल्लेख किया है उसके 6ठे दिन की रात को मैं इसका परीक्षण करने के लिए किसी को भेजूंगा और फिर दक्षिणी सीमा पर आधिकारिक रूप से और गुप्त रूप से विद्रोह शुरू किया जाएगा, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि आपने जो कहा वह सही है या नहीं। यदि स्थिति ठीक नहीं है, निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होगी। झाओ हुजियांग ने कसम खाए, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी गारंटी दे सकता हूँ। झाओ हुजियांग का आत्मविश्वास मूल काम से उनकी परिचितता से आया था। कुछ चीजें और कुछ प्लॉट बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह की सेटिंग नहीं बदलेगी। इसके अलावा उसने अपने जीवन की गारंटी देने का साहस किया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह समय उसके और उसके पिता के जीवन से जुड़ा हुआ था। वह उन लोगों में से था जो स्वयं को कम से कम गलतियां करने की इजाजत देता था। ली झाओहुआ ने झाओ हुजियांग पर गहरी नजर डाली। मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ कि जब समय आएगा तो आपके पिता की वफादारी के साथ वह ली जायुआन की मदद कर सकते हैं। आपको मेरे पिता के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, झाओ हुजियांग ने गहरी आवाज में कहा। मैं अपने पिता को रोक लूंगा। यह अच्छा है। ली झाओहुआ के पतले जैद हाथ ने झाओ हुजियांग के हाथ को थपथपाया और उसे पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हल्की नम सुगंधित हवा आ रही थी जो सबसे बड़ी राजकुमारी के नाजुक शरीर की नमी थी, जिसे नहाने के बाद पहुंचने का समय उसे नहीं मिला था। झाओ हुजियांग विचलित नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो महान कार्य करने जा रहा था। कुछ ही देर में झाओ हुजियांग ने सबसे बड़ी राजकुमारी के निवास को छोड़ दिया और वांगफू की ओर चल पड़ा। उन्होंने आसपास के माहौल का आकलन किया, जो शोरगुल वाला नहीं था और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करता था और भीड़ से बहुत दूर नहीं था, ताकि अगर स्थिति ठीक न हो तो वे भाग सकें। अपनी सुरक्षा को यथासंभव सुनिश्चित करते हुए अंततः उसने दिखावा करना बंद कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, आप सब लोग बाहर आ जाओ। जब वह सबसे बड़ी राजकुमारी के निवास पर गया तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह सबसे बड़ी राजकुमारी के निवास के पहरेदारों के प्रति विचारशील था तो उसने इस बात को और पुष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसका पीछा कर रहे व्यक्ति ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा था, मानो किसी को सूचना दे रहा हो। उसके शरीर की शक्ति अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वह दोस्त है या दुश्मन, और उसे सावधान रहने की जरूरत थी। एक आकृति आगे बढ़ी और गली के अंत में दीवार पर खड़ी हो गई, फिर दीवार से कूद कर झाओ हुजियांग की ओर चल दी। झाओ हुजियांग के बाईं ओर गली के प्रवेश द्वार पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान वाला एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। झाओ हुजियांग के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी कपड़े का झंडा पकड़े हुए धीरे धीरे आगे आया। दीवार से कूदने वाले व्यक्ति ने शरद ऋतु में एक छोटी जैकेट पहन रखी थी, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिख रही थी। उसकी गर्दन के चारों ओर एक दांत के आकार की जानवर की हड्डी लटक रही थी, जो भेड़िए के दांत की तरह थी, और उसकी कमर के चारों ओर एक पीले चमड़े की शराब की थैली लटक रही थी, जो चाकू की तरह मुड़ी हुई थी। इससे पहले कि वह व्यक्ति उसके पास आता, उसने अपनी मुठियां बंद की और कहा, कैंगलांग आपका स्वागत करता है। महाराज की समझ बहुत अच्छी है, वास्तव में वे प्रतिभाशाली हैं। झाओ हुजियांग के बाईं ओर से चलने वाले बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान बहुत सरल और ईमानदार थी। वह किसी साधारण बूढ़े किसान से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चील की तरह तेज थी, जो दुनिया की हर चीज को देखने में सक्षम लग रही थी। महाराज, मैं ची यंग हूँ। झंडा थामे अधेड़ उम्र का आदमी किसी भटकते हुए डॉक्टर की तरह था। उसने न केवल झंडा थामा हुआ था, बल्कि उसने अपने शरीर पर तिरछा कपड़ा भी लटका रखा था। उसने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया। मोदियो आपकी महारानी से मिल चुके हैं। झाओ गुजियांग ने उन तीनों की बारीकी से जांच की और उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। अब वह पहले जैसा सतर्क नहीं रहा। इन तीन लोगों से उसकी एक बार मुलाकात हुई थी जब वह और उसके पिता झेनबेई आर्मी शिविर में गए थे। उस समय उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, केवल ये सोचकर कि वे साधारण सैनिक हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वे बहुत गहराई से छिपे हुए थे। विशाल झेनबेई सेना में अनगिनत छिपे हुए विशेषज्ञ थे, लेकिन क्या झेनबेई सेना उत्तरी सीमा की ओर नहीं बढ़ चुकी है? ये तीन लोग राजधानी में क्यों रुके हुए हैं? महाराज, हम वांगे के आदेश के तहत गुप्त रूप से राजधानी लौट आए हैं और अब से आपके आदेशों का पालन करेंगे, मोडियाओ ने समझाया। कैंगलांग ने सिर हिलाया और ची यंग मुस्कुराई। तो बूढ़ा आदमी तैयार था? झाओ गुजियांग ने सिर हिलाया। संयोग से उसके पास कुछ ऐसा था जिसके लिए जनशक्ति की जरूरत थी। उन्होंने निर्देश दिया, चूंकि मामला ऐसा है तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। तुम जाओ और मेरे लिए कुछ जांच करो। जैसे जैसे रात गहराती गई, लॉन्ग झान, जो बार बार असफलताओं का सामना कर रहा था, ध्यान में डूब गया। उसे अपने चारों ओर की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। वह जानता था कि उसमें असाधारण प्रतिभा है और उसे और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने अपनी कड़ी मेहनत तेज कर दी। लेकिन अचानक उसे आने वाले खतरे का आभास हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी हथेलियां शक्ति से भर उठी और उसने अपने बगल के अंधेरे पर बमबारी कर दी। अंधेरे में काले कपड़े पहने दो व्यक्तियों पर हथेली का बल लगा, जिससे वे प्रकट हो गए और फिर हवेली के बाहर की ओर भाग गए। लॉन्ग झान गुस्से में था। वह वाकई बदकिस्मत था। वह हाल ही में इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? लीजा युआन और किंग झेनबेई जैसे लोगों के हाथों में हार झेलना ठीक था, लेकिन फिर भी लोग उसे भड़काने क्यों आ रहे थे? वह क्रोधित हो गया और उसे बाहर निकाल दिया गया। काले कपड़े पहने लोग बहुत तेजी से भाग गए और लॉन्ग झान ने बिना गति धीमी किए उनका करीब से पीछा किया। पूरे रास्ते पीछा करते हुए लॉन्ग झान शहर के बाहर आ गया। काले कपड़े पहने लोग शहर के बाहर जंगल में घुस गए। जंगल में काले कपड़े पहने लोग गायब हो गए थे। अंधेरे में बची हुई रोशनी की मदद से लॉन्ग झान ने दूरी पर एक धुंधली आकृति देखी। यह आकृति लंबी और सुंदर थी। क्या तुमने मुझ पर हमला करने के लिए किसी को भेजा है? तुम कौन हो? लॉन्ग झान सतर्क था। ट्रू यांग हॉट तकनीक की शक्ति उसके अंगों तक पहुंच गई। वह गुस्से से चिल्लाया और थप्पड़ मारा। क्या झाओ गुजियांग ने तुम्हें यहाँ भेजा है? सच्चे यांग हृदय तकनीक की शक्तिशाली आभा जंगल में सुंदर आकृति की ओर बढ़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि यह पूल में रात के चंद्रमा के प्रतिबिंब से टकराए हो और सुंदर आकृति पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा। लॉन्ग झान चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन वह सीधे सुंदर आकृति से निकलने वाले दबाव से बह गया। उसने घबराहट में विरोध किया, लेकिन कदम दर कदम पीछे हट गया, एक घुटने पर झुक गया और घुरघुराया। उसका दिल भय से भर गया। इतने लंबे समय के बाद भी आप चौथे स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं। सुंदर आकृति ने धीरे से अपना सिर घुमाया। लॉन्ग झान, क्या तुम अपने शिक्षक के महत्व के योग्य हो? ये स्पष्ट ठंडी आवाज सुनकर लॉन्ग झान, जो एक घुटने पर बैठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, अचानक ठिठक गया। मालिक, जब उसके सामने खड़ी सुंदर आकृति घूमकर कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ी तो उसे एक बार फिर वह खोया हुआ शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा। लॉन्ग झान ने मास्टर को बधाई दी। एक सुगंधित हवा उसके चारों ओर घूम रही थी और नाजुक जेड पैर उसके सामने कीचड़ भरी जमीन पर चल रहे थे, लेकिन वह ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी भी तरह के भटकते विचारों की तो बात ही छोड़िए। दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु शी युहिंग में अथाह शक्ति है। तुमने मुझे निराश किया है। शी युहिंग की आवाज स्पष्ट और आकर्षक थी जब उसने लॉन्ग झान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, फियान जियाओली, अपनी चाल चलो। हाँ गुरुजी। अंधेरे से दो महिलाओं की आवाजें सुनाई दी। लॉन्ग झान को अचानक हवा का एक झोंका महसूस हुआ जो उसके पास से गुजरा। सियान रंग की पोशाक पहने एक महिला पहले से ही उसके बगल में मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। जूनियर भाई लॉन्ग झान, यह मास्टर का आदेश है। अगले ही पल लॉन्ग झान ने महसूस किया कि उसकी ओर शक्तिशाली पैरों का एक झोंका आ रहा है। अगर वह नहीं बचता तो कम से कम उसे गंभीर चोट लग सकती थी और वह जमीन पर गिर सकता था। उसका शरीर अचानक ढह गया और सीनियर सिस्टर झाओ फेयान के मून चेजिंग सटेप के हमले से बच गया। फिर बिना रुके वह एक तरफ लुढ़क गया, अपनी हथेली से जमीन पर थपकी दी और खुद को सहारा दिया। ये चकमा देने का तरीका सहज और सही था, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी छाती पर उसकी बड़ी बहन ने लात मारी और उसका शरीर उड़ गया। वह एक पुराने पेड़ से जोर से टकराया, पत्तियां नीचे गिर रही थी और उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। क्या गति है! उसने अपने मुंह और नाक से बहते खून को जोर से पोंछा। सीनियर सिस्टर झाओ फेयान का हल्कापन कौशल शानदार था, एक ग्रैंड मास्टर के बराबर। उसके फ्लाइंग मून चेजिंग सटेप को पूर्णता तक विकसित किया गया था। वह पहले से ही पूरी तरह से चकमा दे चुका था, लेकिन वह अभी भी झाओ फेयान की दूसरी किक से बच नहीं सका। ये संभवतः सीनियर बहन की दया का परिणाम था। छोटे भाई, मेरी तलवार ले लो। लॉन्ग जान के दूसरी तरफ अंधेरे से एक स्पष्ट ठंडी आवाज आई। लॉन्ग जान की तलवार जैसी भौहें भयंकर रूप से सिकुड़ गईं। वह सीनियर सिस्टर जियांग ली की तलवार का सामना कैसे कर सकता था? सीनियर सिस्टर जियांग ली के बारे में कहा जाता है कि उनके पास प्राकृतिक तलवार अमरसंत शरीर है, जो केवल तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। उन्हें याद आया कि मास्टर ने एक बार कहा था कि जियांग ली का वर्तमान तलवारबाजी का स्तर संभवतः पूरी दुनिया में केवल उत्तरी गैरिसन राजा से नीचे है। वह इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मास्टर चाहता था कि दोनों बड़ी बहनें उसे इस दौरान की आलस्य के लिए सबक सिखाएं। भले ही दोनों बड़ी बहनें दया दिखाएं, लेकिन यह अब किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह रोक सके। सीनियर सिस्टर की तलवार की ऊर्जा पहले ही निकल चुकी थी। वह केवल घबराहट में वापस लड़ सकता था, अपनी तलवार खींचकर उसे रोक सकता था। हालांकि जिस क्षण तलवार उसके सामने रुकी और सीनियर सिस्टर की तलवार की ऊर्जा को छुआ, वह टुकड़ों में बिखर गई और बची हुई तलवार की ऊर्जा अभी भी भयानक थी। वह डर गया, मुश्किल से एक तरफ सरक पाया। उसके पीछे का प्राचीन पेड़ सीधे आधे में कटा हुआ था। कटा हुआ सतह दर्पण की तरह चिकना था। बची हुई तलवार की ऊर्जा जंगल की गहराई में बह गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। अनगिनत जंगली जानवर चौंक गए और सभी दिशाओं में भाग गए। और उसका दाहिना हाथ पहले ही तलवार की ऊर्जा से गहरे घाव से कट चुका था, जिससे सफेद हड्डी दिखाई दे रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ ढक लिया, ठंडा पसीना बह रहा था। मैंने सुना है कि तुमने स्वर्गीय तलवार प्राप्त कर ली है, स्वर्गीय तलवार कहाँ है? जियांग ली बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने, हाथ में तलवार लिए बिना धीरे धीरे बाहर चली गई। जिस तलवार ऊर्जा का उपयोग उसने अपने कनिष्ठ भाई को सबक सिखाने के लिए किया था, वह बस उसकी बार बार दया दिखाने वाली अपनी तलवार जैसी उंगलियों से उसे काटने वाली थी। लॉन्ग जान का चेहरा पीला पड़ गया था। स्वर्गीय तलवार झाओ हुजियांग द्वारा प्राप्त की गई थी। क्षमा करें वरिष्ठ बहन, कनिष्ठ बहन, कनिष्ठ भाई की प्रगति बहुत धीमी है। मैं आपको अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करने दे सकती, मैं केवल निराशाजनक रूप से रोक सकती हूँ। स्वर्गीय तलवार भाग्य का संकेत है, आपने कहा कि यह झाओ हुजियांग द्वारा प्राप्त किया गया था। शी युहिंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा क्या हुआ, क्या वह भी उसी ने प्राप्त किया था? लॉन्ग जान ने सिर हिलाया। शिष्य की तलवार शरद ऋतु के शिकार में खो गई थी। इसके बारे में सोचने पर यह बहुत संभव है कि झाओ हुजियांग ने ऐसा किया हो। कोई आश्चर्य नहीं, शी युहिंग की आंखें गहरी थी। मैंने रात में आकाशीय घटना देखी, बैंगनी तारा स्थानांतरित हो गया, भाग्य अशांत हो गया और एक अशुभ सितारा पैदा हुआ जिसमें भाग्य को बदलने की बहुत क्षमता थी। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? लॉन्ग जान की आंखें कांप उठी। उसने जो आत्मविश्वास पहले जगाया था वह इस समय लगातार टूट रहा था। शी युहिंग ने उसके लिए अपने भाग्य की गणना कर ली थी और नियति उसके साथ थी। महान जिया राजवंश, युग बदलता है, हर 30 साल में एक बार, अगले 30 साल उसके होते हैं जो भाग्य से धन्य होता है। लेकिन अब उसकी नियति बदलने की प्रवृत्ति है। इसका क्या मतलब है, वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। ये सब झाओ हुजियांग का है। वह अपनी लगातार हार और नियति के आगामी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सका और गुस्से से चिल्लाया। ये सब झाओ हुजियांग है। उसके तरीके घृणित हैं, वे मेरे अवसरों को बाधित कर रहे हैं। यदि वह न होता तो भाग्य अभी भी मेरे साथ होता। मुझे खेद है कि मैं इतना क्रूर नहीं था कि उसे शुरू में ही राजकुमार के भवन में मार डालूं। शी युहिंग की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर हिलाया। झाओ टिंग शियाओ का इकलौता बेटा, इस झाओ हुजियांग के पीछे झाओ टिंग शियाओ ही होगी जो उसे साधना कर रही होगी। झाओ टिंग शियाओ की ताकत के साथ झाओ हुजियांग स्वाभाविक रूप से असाधारण और एक मुश्किल दुश्मन है। वैसे क्या चरम यिन संत शरीर के ठिकाने के बारे में कोई सुराग है? लॉन्ग जान ने सोचा। जब मैंने पहली बार ली युनरुई को देखा तो ट्रू यांग हॉट सूत ने इसे महसूस किया। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि ली युनरुई बहुत संभवतः चरम यिनसंत शरीर है। शिष्य ने इस मामले को बाहरी लोगों को नहीं बताया है। मैं सबसे पहले ली युनरुई को नीचे ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे इस चोर झाओ हुजियांग का सामना करना पड़ा जिसने बार बार मेरे अच्छे कर्मों को बर्बाद कर दिया। ली युनरुई, ली जायुआन की प्यारी बेटी, ली कबीले का राजघराना। जंगल में धब्बेदार चांदनी के नीचे शी युहिंग की सुंदर आकृति बेहद खूबसूरत थी। उसकी आवाज चांदनी की तरह स्पष्ट और आकर्षक थी। दाओ संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज शूरवीर दंपति थे जिन्होंने एक समय चरम यिन हृदय सूत्र और सच्चे यांग हृदय सूत्र से प्रमुख संप्रदायों को हिलाकर रख दिया था। उस समय दोनों पूर्वजों की मार्शल आर्ट सर्वोत्तम नहीं थी, लेकिन जब चरम यिन हृदय सूत्र और सच्चे यांग हृदय सूत्र को एक साथ मिला दिया जाता है तो वे दुनिया में अद्वितीय होते हैं। ये केवल अफसोस की बात है कि एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र में अभ्यासियों की शर्तों के लिए बेहद कठोर आवश्यकताएं हैं। केवल एक्सट्रीम यिन सेंट बॉडी वाली महिलाएं ही इसका अभ्यास कर सकती हैं। यदि साधारण महिलाएं इसका अभ्यास करें तो उनके शरीर में ठंडी हवा के कारण क्षरण ही होगा तथा उनकी सारी आंतरिक शक्ति ठंडी हवा के कारण जम जाएगी। मैंने तुम्हें चरम यिन संत शरीर का पता लगाने के लिए क्योटो भेजा था। यदि तुम इसे प्राप्त कर लेते हो, साथ ही अपने सच्चे यांग हृदय सूत्र को भी, और अंततः इसमें महारत हासिल कर लेते हो, तो छोटे झाओ बुजियांग की बात तो छोड़ो, यहां तक कि उत्तरी गैरीसन के राजा झाओ टिंगशियाओ को भी, जो एक शक्तिशाली शक्ति है, तुम्हें उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग झान ने अपना सिर नीचा किया और उदास होकर कहा, अबली यूनरुई पहले से ही झाओ बुजियांग की महिला है, क्या चरम यिन संत शरीर बेकार हो जाएगा? नहीं, शी यूहिंग ने ठंडे स्वर में कहा, समस्या तुम्हारे साथ है। आप काय हैं और आपकी गति पराजित हो गई है। चरम यिन संत शरीर प्राप्त करना आपके लिए दुनिया का आधा हिस्सा प्राप्त करने के बराबर है। चाहे कोई भी तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो, यहां तक कि उत्तरी गैरीसन का राजा और उसका बेटा भी, तुम्हें उन्हें मारने और ली यूनरुई को वापस लेने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लॉन्ग झान ने गहरी सांस ली और अपने हाथ से खून को बहने दिया। उसकी तलवार जैसी भौहें और भी कस गईं और उसकी आंखें और भी तीखी हो गईं। मास्टर जी सही कहते हैं, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, वह भाग्य का धनी है। रुयान और अन्य लोगों के बारे में क्या? शी यूहिंग ने कुछ नोटिस किया और ठंडे स्वर में पूछा। मास्टर के सवालों का सामना करते हुए लॉन्ग झान ने अपना सिर नीचे कर लिया। तीनों वरिष्ठ बहनें झाओ बुजियांग के बहकावे में आ गई थीं और उन्होंने पहले ही शिष्य और संप्रदाय को धोखा दे दिया है। धोखा दिया? शी यूहिंग गुस्से में था और जंगल का तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया। लॉन्ग झान को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पिन और सुइयों पर बैठा हुआ है और उसके शरीर में ठंडक फैल गई। राजकुमार की हवेली, ली यूनरुई का कमरा। यून जिनशू ने ली यूनरुई के शरीर पर बढ़ती हुई मजबूत यिन ठंडी आभा को महसूस किया, सिर हिलाया और काफी भावुक हो गई। उसके मार्गदर्शन में ली यूनरुई ने जल्दी ही चरम यिन हृदय सूत्र में महारत हासिल कर ली। वह हमेशा से ही मार्शल आर्ट में बहुत रुचि रखती है और मजबूत मार्शल आर्ट प्रतिभा वाले लोगों में सबसे अधिक रुचि रखती है। ली यूनरुई की चरम यिन संत शरीर की साधना न केवल तेज है, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति में भी धीरे धीरे ठंड लगने के कोई संकेत नहीं है। ये पता चला कि ली यूनरुई चरम यिन संत शरीर है जिसे मास्टर ढूंढ रहा था। तस्क तस्क, झाओ गुजियांग ने वास्तव में एक खजाना पा लिया और मैं भी पौराणिक चरम यिन संत शरीर को देखने के लिए भाग्यशाली हूँ। यून जिनशू अधिक से अधिक भावुक हो गई। सच कहें तो वह ली यूनरुई की प्रतिभा से बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन उसके पास खुद भी एक मजबूत प्रतिभा है जो मार्शल आर्ट की उसकी समझ है। मार्शल आर्ट की समझ के मामले में उसे पूरा विश्वास है कि ली यूनरुई की बात तो छोड़ी, यहां तक कि पूरे राजकुमार के महल को भी एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे उसके मुकाबले में नहीं होंगे। चूंकि ली यूनरुई ने चरम यिन हृदय सूत्र का सफलतापूर्वक अभ्यास किया है, इसलिए उसने झाओ बुजियांग का अनुरोध पूरा कर दिया है। अब बारी है झाओ बुजियांग की, जो अपना अनुरोध पूरा करेंगी। यून जिनशू ने मन ही मन सोचा और ली यूनरुई की स्थिति की फिर से पुष्टि करने के बाद वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है, न केवल मैंने झाओ बुजियांग को मुझसे एक अनुरोध करने पर मजबूर किया, बल्कि मैंने व्यक्तिगत रूप से एक शीर्ष मार्शल आर्ट प्रतिभा को भी प्रशिक्षित किया। यून जिनशू बहुत संतुष्ट थी और उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए, लेकिन अचानक पीछे से हवा चली। कौन? यून जिनशू ने अभी प्रतिक्रिया ही की थी कि उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि उसका छोटा शरीर जमीन पर गिरता, उसे एक सुंदर आकृति ने पकड़ लिया। फिर वह सुंदर आकृति उसे लेकर राजकुमार के भवन में तेजी से घूमने लगी और शीघ्र ही रात में गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन यून जिनशू को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ दर्द महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला से स्पष्ट होने लगा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि लियू रुयान और लिंग किंगक्सु, जो छिपे हुए थे, भी उसके पास थे। उसके सामने का दृश्य अब राजकुमार की हवेली नहीं था। रुयान, क्विंगजु, वह चिल्लाई और जल्दी ही उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। जब उसने मास्टर की लंबी और सुंदर आकृति देखी तो उसका शरीर अकड़ गया और वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, उसकी भौहें भय से भर गईं। मास्टर, मास्टर, मालिक, लियू रुयान और लिंग किंगक्सु भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। तीनों महिलाएं भयभीत दिख रही थीं क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी शी यूहिंग को जागते हुए देखा था। इसके अलावा सीनियर सिस्टर जियांग ली और झाओ फेयान भी अपने गुरु के साथ थे। किसी को पता चले बिना उनका अपहरण करने में सक्षम होने के लिए, ये संभवतः सीनियर सिस्टर फेयान थी जिसने अपने असाधारण प्रकाश कौशल के साथ व्यक्तिगत रूप से यह कदम उठाया था। क्या तुम अब भी मुझे अपने स्वामी के रूप में अपने दिल में रखते हो? शी यूहिंग ने ठंडे भाव से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि लॉन्ग जान की सहायता करो और झाओ हुजियांग का शोषण करने के तरीके खोजने के अवसर का उपयोग करो, न कि सभी झाओ हुजियांग की तरफ भागो। लॉन्ग जान की सहायता करना मुख्य कार्य है मालिक। लियु रुयान डर से कांप रही थी। वह अपने मालिक को फिर से नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस दौरान झाओ हुजियांग और लॉन्ग जान के पक्ष में होने की तुलना ने उसे झाओ हुजियांग का बचाव करने से रोक नहीं पाया। मास्टर, झाओ हुजियांग हमारे प्रति जूनियर भाई लॉन्ग जान से कहीं अधिक विचारशील है, और इसके अलावा झाओ हुजियांग को झेनबेई के राजकुमार का समर्थन प्राप्त है। ये शिष्य केवल झाओ हुजियांग को जीतने की कोशिश कर रहा है ताकि दाओ संप्रदाय को ली राजवंश को उखाड़ फेंकने में मदद मिल सके। लिंग किंगक्सू सीधे घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थी, और उसने आत्मविश्वास से कहा, झाओ हुजियांग की प्रतिभा बेहद मजबूत है। इस शिष्य की राय में वह लॉन्ग जान से भी बेहतर है। इसके अलावा लॉन्ग जान ने ली ज़ायुआन को वांग परिवार को दबाने में मदद करने के लिए इस शिष्य को धोखा देने का विकल्प चुना। जूनियर बहन रुयान और सीनियर बहन जिनशु दोनों उपस्थित थे और इसकी गवाही दे सकते हैं। लॉन्ग जान घृणित और बेशर्म है। ये शिष्य उसकी सहायता नहीं करना चाहता। लियु रुयान ने चुपचाप लिंग किंगक्सू की आस्तीन खींची, ये जानते हुए कि किंगक्सू आमतौर पर अलग थलग रहती थी, लेकिन अब जब उनके मालिक उनसे सवाल कर रहे थे तो अधिक चतुराई से काम लेना बेहतर होगा। मास्टर, यू जिनशु ने भी कहा, जूनियर सिस्टर रुयान और जूनियर सिस्टर किंगक्सू सही हैं। जिनशु को पहले समझ में नहीं आया था कि दोनों जूनियर बहनें झाओ हुजियांग के पक्ष में क्यों खड़ी होना चाहती थी, लेकिन पिछले दो दिनों में जिनशु को कुछ हद तक समझ में आ गया है। जिनशु की राय में ये झाओ हुजियांग वास्तव में दाओ संप्रदाय के लिए अधिक उपयुक्त है। पृष्ठभूमि, शक्ति, प्रतिभा और स्वभाव के मामले में झाओ हुजियांग निश्चित रूप से लॉन्ग जान से नहीं हारेगा। पर्याप्त, लॉन्ग जान ही भाग्य का सच्चा चुना हुआ व्यक्ति है। मैं गलत निर्णय नहीं लूंगा। अभी वह केवल अस्थायी रूप से ही भाग्यशाली नहीं है। मैंने तुम्हें उसकी सहायता करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अब जाओ और झाओ हुजियांग को स्वर्गीय तलवार वापस करने के लिए मना लो, ताकि स्वर्गीय तलवार अपने मूल मालिक के पास वापस आ सके। लिंग किंगक्सू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके चांदी के दांत कसकर कांप रहे थे, और उसने कुछ नहीं कहा। लॉन्ग जान की सहायता करना असंभव था। उसके द्वारा झाओ हुजियांग को धोखा देना और भी असंभव था। इससे पहले जब लॉन्ग जान ने अपने स्वार्थी उद्देश्यों का उपयोग करके वांग परिवार को घेरने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया था, तो ये झाओ हुजियांग ही था जो उसके सामने खड़ा था, और उसने जूनियर सिस्टर लियु रुयान को उसे ले जाने दिया बिना उसे थोड़ा भी धोखा दिए। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग जान उस समय वर्तमान सम्राट की शक्ति उधार ले रहा था। झाओ हुजियांग उसके लिए सम्राट को धोखा देने के लिए तैयार थी, तो वह आज झाओ हुजियांग को स्वर्गीय तलवार से धोखा देने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? लियु रुयान ने हाथ जोड़कर शी युहेन को जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। इस विश्वासघाती शिष्य को क्षमा करें, लेकिन मुझे डर है कि इसका पालन करना कठिन होगा। युन जिनशु की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और उसने दृढ़ता से कहा, मुझे आप पर विश्वास है गुरुजी। मैं आपका सम्मान करता हूँ गुरुजी, लेकिन मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। वे सभी कहते हैं कि लियु जियांग विनाश के भाग्य से बच नहीं सकता, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आज झाओ हुजियांग के हाथों से स्वर्गीय तलवार को वापस छीनकर उसके मूल मालिक को लौटाना, मुझे विश्वास नहीं होता। यदि लॉन्ग जान वास्तव में भाग्य का व्यक्ति है, तो यह स्वर्गीय तलवार झाओ हुजियांग के हाथों में कैसे आ सकती है? अभिमानी शी युहिंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके तीनों शिष्यों में लॉन्ग जान के प्रति इतना गहरा पूर्वाग्रह होगा, और साथ ही झाओ हुजियांग के प्रति इतनी गहरी मान्यता होगी। वह गुस्से से खर्राटे लेने से खुद को नहीं रोक पाए, और उसकी शक्तिशाली आभा ने सीधे पूरे दृश्य को तहस नहस कर दिया। तीनों महिलाएं लिंग किंगक्सू भयानक आभा से दब गईं, उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके हाव भाव दर्दनाक थे। झाओ फेयन ने अपनी ऊंची पोनीटेल को झटका, तीनों छोटी बहनों को देखा और उनके लिए विनती करना चाहा। बर्फ से भी ज्यादा सफेद कपड़े पहने जियांग ली अपने काले बालों को नाचते हुए झाओ फेयन के कंधे को पकड़कर धीरे से अपना सिर हिलाया। गुरु के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। तीनों छोटी बहनों ने पहले उनका उल्लंघन किया था और विनती करना बेकार होगा। युन जिनशु की साधना सबसे कमजोर थी और वह शक्तिशाली दबाव को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती थी। उसके मुंह के कोने से खून पहले ही रिस चुका था। ज्यादा से ज्यादा तीन सांसों में युन जिनशु मर जाएगा। ये देखकर लियु रुयान कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी और बोली, गुरुजी, ये शिष्य झाओ हुजियांग के हाथों से स्वर्गीय तलवार प्राप्त करने के लिए तैयार है। मैं आपसे विनती करता हूँ, सीनियर बहन को जाने दीजिए। लिंग किंगक्सू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने लियु रुयान के साथ सिर झुकाया। उसकी झुकी हुई आंखों के बीच उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पुतलियां कुचली हुई आहों से भरी हुई लग रही थीं। दबाव खत्म हो गया। यून जिनशु दर्द से कराह उठी, उसका चेहरा सोने के कागज की तरह सफेद हो गया और उसे लियू रुयान और लिंग किंगजू ने सहारा दिया। जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ, शी युहिंग ने पलट कर कहा। जिनशु अभी यहीं रहो। हाँ, लियू रुयान ने अपनी मुठियां बांध ली और झुक गई। लिंग किंगसू घुटनों के बल बैठ गई और उसे खड़े होने से पहले दो बार मदद की गई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी, उसकी आंखें असहनीय थी, कुछ हद तक टालमटोल करने वाली, लेकिन जो कुछ पहले हुआ था उससे उनके मालिक का गुस्सा फूट पड़ा था। अगर आज फिर से उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन किया तो तीनों बहनों को बहुत कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। वह और किंगसू ठीक थे, उनके पास इसे झेलने के लिए मार्शल आर्ट का आधार था और वे अधिक पीड़ा सहन कर सकते थे, लेकिन सीनियर सिस्टर जिनशु का मार्शल आर्ट क्षेत्र बहुत कमजोर था, वह इसे कैसे झेल सकती थी। वांग निवास, छोटा आंगन, रात्रि के आकाश के नीचे, ली युनरुई ने झाओ हुजियांग के साथ चरम यिन हृदय सूत्र की साधना करने की खुशखबरी खुशी खुशी साझा की और अब वे दोनों आगे की साधना कर रहे हैं। झाओ हुजियांग ली युनरुई को अपने ट्रू यांग हॉट सूत्र के साथ विलय करने के लिए एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। झाओ हुजियांग को याद है कि मूल कार्य में एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र और ट्रू यांग हॉट सूत्र के विलय के बाद ये भयानक शक्ति के साथ एक महान हत्याचाल है। यही कारण है कि उसे यू जिनशु को धोखा देकर उसे एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र दिलवाना पड़ा, चाहे कुछ भी हो। यदि वह और ली युनरुई इसमें निपुण हो जाएं, तो भविष्य में संकटों का सामना करते समय उनके पास अधिक आत्म सुरक्षा शक्ति होगी। इस समय दोनों की आभाएं धीरे धीरे विलीन हो रही हैं और सच्ची यांग और चरम यिन ऊर्जाएं उनके शरीर को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। झाओ गुजियांग और ली युनरुई ने बात नहीं की, लेकिन जल्द ही उनके बीच एक टेलीपैथिक समझ विकसित हो गई और साथ मिलकर उन्होंने रात के आकाश की ओर हथेली से हमला किया। रात का आसमान धुले हुए जैसा था, तारे टिमटिमा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई हलचल नहीं है। दोनों को केवल एक स्पष्ट ऊर्जा महसूस हुई जो छोटे से आंगन से उठकर विशाल आकाश में उड़ रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें ज्यादा शक्ति नहीं है, झाओ गुजियांग हैरान था। ली युनरुई रात के आसमान को घूरते हुए मुंह फुलाए हुए था। क्या प्रक्रिया के किसी हिस्से में कोई समस्या थी? गुजियांग के कथन के अनुसार ये हथेली बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। दोनों को यह नहीं पता था कि वे इस शक्तिशाली बल को महसूस नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों की संयुक्त शक्ति ने उनके दायरे से कहीं परे एक शक्ति उत्सर्जित की थी, जिससे उनके लिए कुछ समय के लिए इसे महसूस करना मुश्किल हो गया था। और वांग निवास के एक शांत कोने वाले कमरे में झाओ टिंगशियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी भौहें ऊपर उठाई और छत की ओर देखा। अभी अभी उसे एक शक्तिशाली और अद्वितीय शक्ति का एहसास हुआ। इस शक्ति की ताकत कम से कम एक शीर्ष प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार द्वारा प्रदर्शित की गई थी और यह भी बहुत संभव था कि वह उसके समान ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक पहुंच गया था। और इस शक्ति का स्रोत गुजियांग और युनरुई के विवाह कक्ष की दिशा में था। वह जल्दी से गुजियांग की दिशा में भागा। जब वह छोटे से आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि गुजियांग और युनरुई रहस्यमयी चालों में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और आकाश की ओर हथेली से थपकी दे रहे थे। इस चाल की मुद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह काफी परिचित है। और इस हथेली में निहित शक्ति वह शक्तिशाली आभा थी जिसे उसने अभी महसूस किया था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया तथा उसके हृदय में राहत की भावना उमड़ पड़ी। अरे बदमाश, तू अपने बूढ़े पिता से भी बातें छुपा रहा है। आउच, ली युनरुई के साथ एक और संयुक्त हथेली के प्रहार के बाद झाओ गुजी ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। उसका शरीर हल्का और हवादार महसूस कर रहा है। झाओ गुजी ने ली युनरुई की पीठ थपथपाई। तुम्हारी प्रतिभा प्रबल है, लेकिन आखिरकार तुम्हारा अनुभव अभी भी उथला है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति अस्थिर है। पहले जाकर आराम करो। ठीक है, ली युनरुई ने अपना सिर झाओ गुजी की ठोड़ी पर टिका दिया और प्लास्टर की तरह झाओ गुजी से चिपक गई। तो फिर मैं पहले आराम कर लूंगा, बाद में तुम्हें भी आना है। झाओ गुजी मुस्कुराए। तीसरे पहर में दीपक जलाए जाते हैं, पांचवें पहर में मुर्गे बांध देते हैं, ये ठीक उसी समय होता है जब गुजी खेती करता है। मैं किस लिए आऊंगा, स्पष्ट पूछ रहा हूँ, ली युनरुई ने झाओ गुजी की ओर देखा। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ, ये कहते हुए उसने झाओ गुजी को कंधे से टक्कर मारी और अपने कमरे की ओर चल दी। दो कदम चलने के बाद उसने अपना सिर पीछे घुमाया। मत भूलना, झाओ गुजी ने सिर हिलाया। कुछ ही दूरी पर झाओ टिंगशियाओ चांदनी रात में उन दोनों की छायाएं देखकर दयालुता से मुस्कुराई। ली युनरुई के कदम हल्के थे जब वह अपने कमरे में लौटी। अचानक उसे उल्टी आ गई, उसे थोड़ा मतली महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी साधना के दौरान उसे कोई समस्या आई हो? शायद ये सिर्फ थकान थी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह खेती से थक चुकी थी और उसे अब ठीक से आराम करने की जरूरत थी। अल्पविराम। एक ही समय पर लियु रुयान और लिंग क्विंगजू वांग निवास लौट आए। झाओ बुजी, जो अभी भी लगन से साधना कर रहा था, ने लिंग किंगक्सू को देखा। लिंग किंगक्सू, जो आमतौर पर अलग थलग रहता था, स्पष्ट रूप से किसी बात से परेशान था। उसी समय उसने देखा कि यून जिनशु भी मौजूद नहीं था। उसने उलझन में पूछा, यू जिनशु कहाँ है? मेरे पास एक सवाल था जो मैं अभी उससे पूछना चाहता था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रुयान भी वहां नहीं था। मुझे लगा कि उन्होंने देखा होगा कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं थी और वे तुम्हें लेने चले गए होंगे। लियु रुयान अपने कपड़ों के कोने से लगातार छेड़छाड़ कर रही थी। उसकी मुस्कान थोड़ी रुकी थी। आप बिना किसी कारण के सीनियर सिस्टर यून के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शायद वह किसी मार्शल आर्ट पर शोध कर रही हैं। जब हम पहले संप्रदाय में थे तो हम अक्सर सीनियर सिस्टर यून को नहीं ढूंढ पाते थे। लिंग किंगक्स्यू ने अपने होठों को दबाया जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो और धीरे से बोली, झाओ बुजी। बुजी, लियु रुयान ने जल्दी से बातचीत को अपने हाथ में ले लिया। सीनियर सिस्टर यू की खातिर वह सीनियर सिस्टर किंगक्सू को अपनी परेशानी में उनका उद्देश्य प्रकट नहीं करने दे सकती थी। हमेशा की तरह वह झाओ बुजी के करीब आ गई, झाओ बुजी की बांह हिलाते हुए, जानबूझकर आकर्षण बिखेरते हुए। जिसकी बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं और आपने लॉन्ग जान के साथ लड़ाई में स्वर्गीय तलवार प्राप्त की है। मैंने आज तक ये भी नहीं देखा कि यह स्वर्गीय तलवार कितनी शक्तिशाली है। क्या आप इसे हमें दिखा सकते हैं? लिंग किंगक्स्यू की आंखें कांप उठी और वह झाओ बुजी की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। आखिरी बार जब उसने झाओ बुजी की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की थी, वह तब था जब वह झाओ बुजी के साथ ईमानदार मुठभेड़, पुरुष और महिला यिन और यांग के विलय को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। और इस बार ऐसा इसलिए था क्योंकि वह झाओ बुजी के साथ हुए धोखे को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। स्वर्गीय तलवार है न? झाओ बुजी की नजरें दोनों महिलाओं के हाव भाव पर पड़ीं। वह मुस्कुराया। आराम से, हम सब एक ही पक्ष में हैं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और स्वर्गीय तलवार को अपने हाथ में थाम लिया। हालांकि तलवार कपड़े में लिपटी हुई थी जिससे तलवार का शरीर छिपा हुआ था, फिर भी कपड़े के नीचे छिपी शक्तिशाली आभा को महसूस किया जा सकता था। यहाँ झाओ बुजी धीरे से मुस्कुराए और इसे लिंग क्विंगशू और लियु रुयान को सौंप दिया। लिंग किंगक्सू इस मुस्कुराहट से थोड़ा चौंक गई और उसकी आंखें नरम पड़ गईं। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। लियु रुयान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसने स्वर्गीय तलवार ले ली। उसने और उसकी बड़ी बहन ने झाओ बुजी को इस तरह धोखा दिया था। ये सब झाओ बुजी के भरोसे से उपजा था और जो खाया जा रहा था वह भी झाओ बुजी का भरोसा था। इन दोनों बहनों के पास अगर कुछ कहने को होता है तो वे नहीं कहती, जरूर कोई छिपी हुई कठिनाई होगी। वे मुझ पर हमला नहीं कर रहे हैं, उनका लक्ष्य स्वर्गीय तलवार है ना? स्वर्गीय तलवार की तुलना में जिस कारण से दोनों बहनों को ऐसा करना पड़ा वह अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कुछ और है? झाओ बुजी अभी भी सौम्य थे। झाओ बुजी के आंतरिक विचारों को सुनकर स्वर्गीय तलवार पकड़े लियु रुयान का हाथ ढीला पड़ गया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें कोई ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में नमी तुरंत भर गई। तो झाओ बुजी पहले से ही यह सब देख चुका था, लेकिन वह बस उनके साथ सहयोग कर रहा था। लिंग किंगक्सू ने गहरी सांस ली। झाओ बुजी ने इसे समझ लिया लेकिन कुछ नहीं कहा, जिससे वह और भी असहनीय हो गई। उसके दिल में अपराध बोध पैदा हो गया। झाओ बुजी, इस बार लियु रुयान ने बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया और अपनी बड़ी बहन को बातचीत जारी रखने दी। मुझे माफ कर दो। लिंग किंगक्सू की खूबसूरत आंखें चमक उठी। मैंने और मेरी छोटी बहन ने आपसे झूठ बोला। हम स्वर्गीय तलवार की शक्ति नहीं देखना चाहते थे। ये वरिष्ठ बहन यून है। वरिष्ठ बहन यू को हमारे स्वामी ने नजरबंद कर दिया है। हमें वरिष्ठ बहन यू को बचाने के लिए स्वर्गीय तलवार लेनी होगी। मुझे खेद है। लिंग किंगक्स्यू की माफी पूरी भी नहीं हुई थी कि झाओ बुजी धीरे से मुस्कुराए। मैंने क्या सोचा था? मैंने तो पहले ही कहा था हम सब एक ही पक्ष में हैं। मुझे शी यूहिंग से मिलने ले चलो। मुझे लगता है कि उसे लॉन्ग जान से मिलना चाहिए था, इसलिए वह शायद मुझसे भी मिलना चाहती होगी। झाओ बुजी, तुम नहीं जा सकते, मास्टर तुम्हें जाने नहीं देंगे। लियु रुयान ने जल्दी से उसे मना कर दिया। आज रात मास्टर के रवैये के साथ झाओ बुजी के लिए जाना बहुत खतरनाक होगा। आप नहीं जा सकते। लिंग किंगक्सू ने झाओ बुजी का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। मैं स्वर्गीय तलवार नहीं खोना चाहता। मैं भी लोगों को बचाना चाहता हूँ। शायद रात बहुत लंबी थी और चांदनी ठंडी थी। झाओ बुजी की आवाज चांदनी से पक्की नीली पत्थर की पटिया की तरह थी। चांदनी की सफेदी ठंडी ठंड थी, खुरदरी, कर्कश और ठंडी। इसके अलावा मेरे पिता झेनबेई के राजकुमार हैं। अल्पविराम। झेनबेई के राजकुमार झाओ टिंगशियाओ दुनिया के तीन महान ग्रैंड मास्टरों में से एक हैं और दाओ संप्रदाय के गुरु शी यूहिंग भी दुनिया के तीन महान ग्रैंड मास्टरों में से एक हैं। इस रात झाओ हुजी ने पहली बार शी युहिन को देखा। इससे पहले कि वह शी युहिन की सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो पाता, वह शी युहिन द्वारा उसे दिए गए उत्पीड़न की भावना से और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसका बूढ़ा पिता उससे बहुत प्यार करता था और कभी भी उसके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता था, इसलिए वह अपने बूढ़े पिता के अत्याचार की शक्तिशाली भावना को महसूस नहीं कर सकता था। ली ज़ायुआन ने अपनी कमजोरी और वर्षों के क्षरण को विलंबित करने के लिए जानबूझकर अपनी शक्ति को दबाया। उसे जो महसूस हुआ वह केवल शाही शक्ति की महिमा थी, न कि मार्शल आर्ट का उत्पीड़न। अब शी युहिन का सामना करते हुए उसने पहली बार बिना किसी छुप छुप के एक ग्रैंड मास्टर स्तर के विशेषज्ञ द्वारा लाए गए उत्पीड़न का सीधे सामना किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उफनते समुद्र में एक छोटी नाव है, आकाश में बिजली चमक रही है और गड़गड़ाहट हो रही है, चारों ओर तूफान है और उसके पैरों के नीचे की नाव डूबने वाली है। सौभाग्य से उसने अपना संयम नहीं खोया। इस समय गुजी समुद्र के साथ था, उसकी ताकत अपर्याप्त थी लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अधिक थी। वह न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। संप्रदाय गुरु, मैं स्वयं तलवार लाया हूँ। युन जिनशु का चेहरा पीला पड़ गया था, वह झाओ हुजी को घूर रही थी। ऐसे खतरे में झाओ हुजी खुद तलवार लेकर आए, क्या यह उसके लिए थी? शी युहिंग ने झाओ हुजी की ओर उदासीनता से देखा। स्वर्गीय तलवार को इस आसन पर प्रस्तुत करें, पहले उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? झाओ हुजी ने धीमी आवाज में सुझाव दिया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शी युहिंग, जो पहले उससे 3 फीट दूर था, पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। वह इससे बच नहीं सका, उसके पास इससे बचने का समय नहीं था और उसे शी युहिंग के जेड हाथ से गर्दन से पकड़ लिया गया। आपको इस सीट के लिए सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। झाओ गुजियांग की गर्दन को शी युहिंग ने पकड़ लिया और अचानक उसके शरीर में तनाव और फटने जैसी अनुभूति हुई। उसके चेहरे पर दर्द था लेकिन उसने कोई चिंता नहीं दिखाई। वह यहां आने की हिम्मत किसी बेपरवाह आवेग में नहीं बल्कि पूरी तैयारी करके आया था। TWKAN द्वारा COM मास्टर झाओ गुजियांग के दर्द भरे चेहरे को देखकर लिंग किंगक्सू जल्दी से आगे बढ़ी। वह झाओ गुजियांग के लिए विनती करना चाहती थी। हालांकि वह शी युहिंग से निकलने वाले रोलिंग दबाव से दब गई थी जिससे उसके लिए आधा कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मास्टर कृपया उसे जाने दीजिए, लिंग किंगक्सू की आवाज में विनती थी। मास्टर लियू रुयान सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और घुटनों के बल शी युहिंग की ओर बढ़ी। झाओ गुजियांग ने पहले ही देख लिया था कि शिष्य स्वर्गीय तलवार के लिए आपको धोखा देना चाहते थे, लेकिन वह अभी भी सीनियर बहन युन के जीवन के बदले स्वर्गीय तलवार का व्यापार करने को तैयार था। वह ईमानदारी के साथ आया था, वह आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता था। उसे जाने दो। युन जिनशु का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, उसकी आवाज कमजोर थी जिसमें एक सिसकी थी। उसके पास कौन सा गुण या योग्यता थी कि वह झाओ गुजियांग को इस तरह जोखिम में डालने लायक थी? वह झाओ गुजियांग को खाली आंखों से देखती रही, उसका दिल अपराध बोध और अज्ञात भावनाओं से भर गया। उसे जाने दो, शी युहिंग ने धीरे धीरे अपने पतले हाथ की ताकत बढ़ाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मूल रूप से ये सीट केवल उसे सबक देना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। झाओ गुजियांग, तुमने सच्चा यांग हृदय सूत्र चुरा लिया है ना? अब ये सीट न केवल स्वर्गीय तलवार चाहती है बल्कि आपका जीवन भी चाहती है। नहीं, लियू रुयान ने आगे बढ़कर शी युहिंग का पैर पकड़ लिया। गुरुजी, कृपया उसे जाने दीजिए, ये शिष्य ही था जिसने यह बात उसे बताई थी। शादी की पोशाक बनने को तैयार, लिंग किंगक्सू ने बड़बड़ाते हुए शादी की पोशाक की दिव्य कला को पूरी तरह से उजागर किया। उसकी ताकत तुरंत बढ़ गई, चौथे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के पास पहुंच गई। उसने दबाव का सामना किया और झाओ गुजियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अगले ही पल वह शी युहिंग की शक्तिशाली आभा से पीछे हट गई। एक दर्जन कदम पीछे हटते हुए उसने अपना शरीर स्थिर किया, एक दबी हुई कराह निकाली और खून थूक दिया। शी युहिंग के राज्य के एक पावर हाउस के पास एक शक्तिशाली आभा है। यदि अन्य लोग विरोध करना चाहते हैं तो दबाव भारी पड़ेगा, यदि वे समर्पण करते हैं तो दबाव एक अदृश्य दमनकारी आभा बन जाएगा। लियू रुयान ने पूरे दिल से दया की भीख मांगी, वह चाहती थी कि शी युहिंग झाओ गुजियांग को जाने दे। अब शी युहिंग की हत्या की मंशा को महसूस करते हुए उसने जल्दी से शी युहिंग की बांह पकड़ ली। झाओ गुजियांग के भागने का मौका बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जैसे ही उसने शी युहिंग की बांह को छुआ, वह उड़ गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। शी युहिंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक ठंडी हो गई, वह झाओ गुजियांग की गर्दन को एक पंजे से कुचलने ही वाली थी। अचानक उसकी निगाहें झिलमिला उठी, उसकी आभा बदल गई और जंगल में गिरे हुए पत्तों ने तुरंत उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। डिंग, भनभनाहट। अगले ही पल एक अदृश्य तलवार क्यूई ने गिरे हुए पत्तों की इस रक्षा पर वार किया। तलवार क्यूई और गिरे हुए पत्तों की शक्ति आपस में टकराई, तलवार क्यूई बिखर गई, गिरे हुए पत्तों की रक्षा बिखर गई और पत्ते नाचते हुए गिर पड़े। टूटी हुई तलवार की क्यूई पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। टूटी हुई तलवार की क्यूई बहादुरी से आगे बढ़ी, युद्ध के मैदान में बहादुर सैनिकों की तरह शी युहिंग की ओर वार करती हुई। शी युहिंग के हरे बालों का एक कतरा कटा हुआ था जो झाओ गुजियांग की नाक की नोक पर गिर रहा था। उसके चेहरे पर तुरंत कालेपन की लकीरें उभर आईं और वह गुस्से से चिल्लाई, जिससे बची हुई तलवार की क्यूई टूट गई। झाओ टिंगजियाओ, रात के आसमान के नीचे एक भारी भरकम आकृति धीरे धीरे चलती हुई आई। आखिरी लड़ाई 10 साल पहले, 10 साल बाद आपकी मार्शल आर्ट का क्षेत्र स्थिर हो गया लगता है। हम्फ, शी युहिंग ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी तलवार की क्यूई भी कमजोर हो गई है। झाओ टिंगशियाओ की तलवार जैसी भौहें हल्की सी फड़की, मानो तलवार निकाल ली गई हो। क्या आप अभी भी 13 प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकारों के संयुक्त हमले को हरा सकते हैं? उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई और क्षण भर में चारों ओर रेत और पत्थर उड़ने लगे। शी युहिंग ने व्यंग्य किया और जमीन पर अपने जेड पैर के हल्के से धक्के के साथ गिरे हुए पत्ते सरसराहट करते हुए हवा में लटके, जैसे सैनिक और घोड़े उसकी रक्षा कर रहे हों और झाओ टिंगशियाओ की शक्तिशाली आभा का सामना कर रहे हों। दो शक्तिशाली आभाएं चुपचाप टकराईं, जैसे कोई तूफान दुनिया को बदल दे। तूफान के केंद्र में झाओ गुजियांग तूफान से टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, बल्कि चुपचाप अपनी इंद्रियों से वंचित हो गया। या शायद ये सबसे बड़ी आवाज थी, मौन होने के कारण अब वह कोई आवाज नहीं सुन सकता था। लेकिन उसने देखा कि लिंग किंगक्सु और लियु रुयान तूफान से पीछे की ओर उड़ रहे थे, उनके वस्त्र सीधी और कांपती हुई रेखाओं में खींच गए थे। युन जिनशु को एक सफेद वस्त्रधारी महिला ने सहारा देकर युद्ध के मैदान के किनारे तक खींचा। सफेद वस्त्र पहने वह महिला भी दाओ संप्रदाय की सदस्य थी जो तूफान में खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े लहरा रहे थे, उसका शरीर धरती में घुसी हुई तेज तलवार के समान सीधा था। बूढ़े आदमी झाओ और शी युहिंग की आभा के बीच टकराव जल्दी ही समाप्त हो गया और ध्वनि झाओ गुजियांग के कानों में लौट आई। पत्ते सरसराने लगे, बची हुई हवा चीखने लगी और हवा में धातु की आवाज थी, जैसे तलवार की हल्की झनकार तलवार भिनभिनाने की आवाज के साथ गूंज रही थी। उसका शरीर उड़ गया, मानो उसे शी युहिंग ने लापरवाही से बाहर फेंक दिया हो और उसके बूढ़े पिता के पास फेंक दिया हो। फिर वह एक गर्म शरीर के सहारे झुक गया और उसके बूढ़े पिता ने उसे सहारा दिया। झाओ टिंगशियाओ, आपका बेटा बहुत निडर है। शी युहिंग ने ठंडी सांस ली। अगर उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसकी और झाओ टिंगशियाओ की लड़ाई बहुत जोरदार होगी और अदालत का ध्यान आकर्षित करेगी, तो वह निश्चित रूप से ये देखने की कोशिश करेगी कि तलवार दाओ ग्रैंड मास्टर झाओ टिंगशियाओ की ताकत कितनी दूर तक पहुंच गई है। जियो ली, अपनी छोटी बहनों को ले जाओ। शी युहिंग ने अपनी लंबी आस्तीनें उतारी, शान से घूमी और सरसराती हुई गिरती पत्तियों में गायब हो गई। जैसे ही लिंग किंगक्सु और लियु रुयान भागने वाले थे, जियांग ली उनके पास आ गया, उनके एक्यू पॉइंट्स को सील कर दिया और उन्हें ले गया। झाओ गुजियांग की तलवार जैसी भौहें सिकुड़ गईं और झाओ टिंगशियाओ का गर्म हाथ उसके कंधे पर दबा। बदबूदार बच्चे, चलो चलें। अगले ही पल झाओ गुजियांग के सामने का दृश्य तेजी से पीछे हट गया, अंधेरे प्रकाश और छाया में धुंधला हो गया। वह एक तलवार की तरह था जो अपने म्यान में वापस आ गई। क्योटो शहर के बाहर एक अनजान जगह, लियु रुयान और उनकी तीन बहनें घर में नजरबंद थीं। उनकी शक्तियां पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं और उनके चेहरे उदास थे। दरवाजा खोला गया और देखा कि वह उनकी सबसे बड़ी बहन जियांग ली थी। फिर जियांग ली दरवाजे के बाहर पहरा देने लगा और शी युहिंग घर के अंदर चला गया। शी युहिंग ने अपने तीनों शिष्यों की ओर ठंडी नजर से देखा। ऐसा लगता है कि झाओ गुजियांग की नजर में आप स्वर्गीय तलवार से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। झाओ गुजियांग अभी अभी आया और उसने चुपके से झेनबेई के राजकुमार को इसकी सूचना दे दी। वह स्वर्गीय तलवार को सौंपना नहीं चाहता था। सौभाग्य से इस शिक्षक ने एक बैकअप योजना तैयार की। आपकी वरिष्ठ बहन फयान वापस आनी चाहिए। लिंग किंगक्सु और तीनों महिलाओं ने अचानक अपने सिर उठाए, उनके चेहरे पर डर के भाव थे। सीनियर सिस्टर फेयान वापस आ रही थी। वह पहले कहाँ थी? मास्टर, दरवाजे के बाहर, जियांग ली ने सम्मानपूर्वक कहा। फेयान वापस आ गया है। घर के बाहर से हवा का एक झोंका आया और झाओ फेयन की आकृति एक घुटने पर बैठी हुई दिखाई दी। मालिक, क्या तुमने ली युनरुई को पकड़ लिया? झाओ फेयन ने अपना सिर नीचा किया। ये शिष्य असफल हो गया। शी युहिंग को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, आपने ली युनरुई को नहीं पकड़ा? ये शिष्य राजकुमार के भवन में किसी की नजर में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं ली युनरुई को ले जाने की तैयारी कर रहा था, तीन विशेषज्ञ प्रकट हुए जिनमें से कोई भी इस शिष्य से कमजोर नहीं था, झाओ फेयन ने उत्तर दिया। जैसे ही वे तीनों प्रकट हुए, उन्होंने इस शिष्य के हल्केपन के कौशल का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और मैं ली युनरुई को बिल्कुल भी दूर नहीं ले जा सका। शियुहिंग चुप था। जब झाओ गुजियांग अकेले आया तो उसने चुपके से झाओ फेयान को राजकुमार की हवेली में जाकर लोगों को पकड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसने गणना की थी कि झाओ टिंगजियाओ निश्चित रूप से झाओ गुजियांग के पीछे पीछे आएगा, इसलिए वह झाओ टिंगजियाओ के हवेली में न होने पर ली युनरुई का अपहरण करने का अवसर लेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार के महल में विशेषज्ञ भी होंगे, यहां तक कि फेयन के हल्केपन के कौशल से भी बचा जा सकता है। झेनबेई के राजकुमार, अच्छे तरीके, शियुहिंग ने कुछ गुस्से में कहा। मास्टर, एक और बात है, झाओ फेयन की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। जब ये शिष्य ली युनरुई को पकड़ रहा था और उसने ली युनरुई की कलाई पकड़ ली, मैंने उसकी नब्ज महसूस की, वह एक खुश नब्ज थी। झाओ फेयन की रिपोर्ट सुनकर शियुहिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सदमे और गुस्से में कहा, क्या कहा आपने, खुश, खुश नब्ज? झाओ फेयन हकलाया। शियुहिंग का चेहरा पूरी तरह से डूब गया। एक बच्चे की उपस्थिति चरम यिन पवित्र शरीर को प्रभावित करेगी और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अगर यह सचमुच एक खुश नब्ज है तो झाओ गुजियांग और उसके पिता राजकुमार के भवन में लौट आए। रात गहरा गई और राजकुमार का भवन शांत हो गया। सन्नाटे में तीन आकृतियां प्रकट हुईं। नमस्कार महामहिम, नमस्कार महामहिम उत्तराधिकारी। वे तीन लोग थे, कैंगलांग, चियिंग और मोडियाओ। चियिंग ने बताया, किसी ने पहले राजकुमार के महल में जबरन घुसकर वारिस की पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया था। वारिस की पत्नी को लगभग ले जाया गया था और अब वह भयभीत लग रही है। युरुई, झाओ गुजियांग की तलवार जैसी भौहें सिकुड़ गईं और वह जल्दी से ली युनरुई के कमरे की ओर भागा। झाओ टिंगशियाओ ने कठोर चेहरे के साथ गहरी आवाज में पूछा, वे कौन थे, उनका किंगोंग उल्लेखनीय है? मोदियाओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सोचा, यदि यह अधीनस्थ गलत नहीं है तो संभवतः ये फ्लाइंग स्टार चेजिंग मून सटेप है जो जियांगू से बहुत पहले गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि वे उत्तराधिकारी की पत्नी को पकड़ने क्यों आए थे। झाओ टिंगशियाओ के दिल में एक अनुमान था और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सौभाग्य से आप पहरा दे रहे थे, अन्यथा युनरुई आज गंभीर संकट में पड़ जाती। ये हमारा कर्तव्य है, चियिंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। इसके अलावा यह उत्तराधिकारी ही था जिसने हमें उत्तराधिकारी की पत्नी की अच्छी तरह से रक्षा करने का निर्देश दिया था। झाओ टिंगशियाओ आश्चर्य से मुस्कुराए, ये बच्चा सचमुच बड़ा हो गया है, वह अपने कार्यों में और अधिक संगठित होता जा रहा है। बात बस इतनी है कि वह भावनाओं को बहुत अधिक महत्व देता है, उसने वास्तव में अभी खुद को जोखिम में डाल दिया। ओह, चियिंग ने दूसरी चीज के बारे में सोचा जो झाओ गुजियांग ने उन्हें करने के लिए कहा था और मुस्कुराए, शायद उत्तराधिकारी खुद को जोखिम में नहीं डाल रहा था। ली युनरुई का कमरा, झाओ गुजियांग ने ली युनरुई को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। ली युनरुई पहले भी डरी हुई थी लेकिन अब वह डर दूर हो चुका था। उसने अपनी बाहें झाओ गुजियांग की कमर के चारों ओर लपेट ली। उसकी आंखें ऊपर की ओर थी, वह झाओ गुजियांग के सुंदर चेहरे को घूर रही थी और उसने अपने होंठ काटे जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो। क्या हुआ, झाओ गुजियांग ने स्नेह भरी निगाहों को महसूस किया और धीरे से पूछा। ली युनरुई मुस्कुराई, उसके गाल लाल हो गए और उसने अस्पष्टता से कहा, आप पिता बनने वाले हैं। झाओ गुजियांग को संदेह था कि उसने सही सुना है, उसकी अभिव्यक्ति उलझन में थी, वह सीधे ली युनरुई को देख रहा था। मैंने कहा, ली युनरुई ने झाओ गुजियांग की गर्दन पकड़ ली, उसका चेहरा झाओ गुजियांग के गाल से चिपक गया और झाओ गुजियांग के कान में एक एक शब्द कहा, तुम पिता बनने वाले हो। हे हे हे, झाओ गुजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा थोड़ा उदास होकर, वह पिता बनने वाला है। ली युनरुई ने ये सब देखा, पूरी कोमलता से झाओ गुजियांग को कसकर गले लगा लिया। झाओ गुजियांग ने भी ली युनरुई को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को और अधिक कसकर गले लगाने लगे, उनके चेहरे एक दूसरे से रगड़ने लगे। मैं पिता बनने वाला हूँ, झाओ गुजियांग खुशी से भरा था और चिंता से भी भरा हुआ था। यदि सब कुछ सुरक्षित और सुचारू होता तो वह बहुत खुश होता, लेकिन उसके सिर पर अभी भी एक चाकू लटक रहा था। लीजा युआन के बढ़ते गहरे संदेह से, नियत नायक लॉन्ग जांग की हत्या के इरादे से पीछे हटने की अनिच्छा से, वह नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जन्म लेते ही विस्थापित हो जाए और अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ भागे। इससे भी अधिक, वह नहीं चाहते थे कि बच्चा जन्म से पहले ही अपने पिता और सब कुछ खो दे। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता के गर्म हाथ उसके कंधों पर भारी दबाव डाल रहे हों। अब उसके सामने सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं थी बल्कि पूरा परिवार था। अच्छे से आराम करो, झाओ गुजियांग ने ली युनरुई के गाल को चूमा। शांति से सो जाओ, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। तो फिर जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम्हें वापस आना होगा। ली युनरुई थोड़ा उदास हुआ, झाओ गुजियांग की गर्दन हिलाते हुए और फिर आज्ञाकारी ढंग से बोला, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। ठीक है, झाओ गुजियांग ने ली युनरुई को मना लिया। कुछ देर तक दोनों में स्नेह रहा और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। बाहर चांदनी ठंडी थी और जब चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका रूप बदल गया। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति सौम्य रहने वाला उसका चेहरा अब बर्फ से सना हुआ था। वह राजकुमार के महल के कोने में स्थित एक घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में वह इस घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम उस व्यक्ति को साथ लाए हो जिसे ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? अंधेरे में मोडियाओ ने उत्तर दिया, महाराज वे अंदर हैं। झाओ गुजियांग ने घर का दरवाजा खोला और मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरे में चला गया। मोडियाओ अंधेरे में गायब हो गया और चियांग और कैंगलांग ने दरवाजे की रखवाली की। कमरे में रोशनियां टिमटिमाने लगी। मेज पर दो बूढ़े लोग बैठे थे, एक जोड़ा। आपने लंबी यात्रा में बहुत कष्ट उठाया है बुजुर्गों, झाओ गुजियांग ने धीरे से मुस्कुराया जैसे कि वह दो बूढ़े लोगों की संतान था। उसने अपने हाथ जोड़े, मैं झाओ गुजियांग हूँ, युहेंग की दोस्त। उसने मुझे अपनी कहानी बताई है। वह बचपन से ही अनाथ थी और आप दोनों ने ही उसे बचाया और उसका पालन पोषण किया। वह हमेशा आभारी रही है, लेकिन हाल ही में वह कई मामलों में बहुत व्यस्त रही है, इसलिए उसने मुझे आप दोनों को राजधानी में लाने के लिए कहा। अब से इस जगह को अपने घर के रूप में मानो और राजकुमार के महल में अपना अच्छा ख्याल रखना। युहेंग ने इन सभी वर्षों में बाहर अपना नाम बनाया है। शी युहेंग के दत्तक पिता का चेहरा झुर्रियों से भरा था, उनके बाल सफेद हो गए थे और उनका हाथ सलाम करने के लिए कांप रहा था। आप उत्तराधिकारी हैं, है ना? युहेंग को इन वर्षों में आपसे बहुत मदद मिली होगी, वह उत्तराधिकारी से भी दोस्ती कर सकती है। बूढ़े आदमी, अब से आप मुझे सिर्फ गुजियांग कह सकते हैं। झाओ गुजियांग ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया। आज देर हो चुकी है और ये थोड़ा सा सरल और जल्दबाजी वाला काम है, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आपने बहुत दूर तक यात्रा की है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जल्दी आराम करें और जब युहेंग का काम खत्म हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से आपसे मिलने आएगी। बस बस, बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। हमारे पहाड़ी गांव की तुलना में यहाँ की स्थितियाँ काफी बेहतर हैं। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी बस इस बच्चे को देखना चाहता है। जब उसका काम हो जाएगा तो यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मुझे आपको धन्यवाद देना है वारिस गुजियांग। दरवाजे के बाहर झाओ टिंगशियाओ ने कमरे में हो रही बातचीत सुनी और अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। अब उसे समझ में आया कि क्यों कैंगलांग और अन्य दो ने पहले उससे कहा था कि शायद गुजियांग खुद को जोखिम में नहीं डाल रहा है। यदि वह शी युहेंग से मिलने के लिए गुजियांग के पीछे नहीं गया होता तो कैंगलांग और अन्य लोग उस वृद्ध दंपति को साथ ले आते जिनका शी युहेंग के साथ घनिष्ठ संबंध था। ये वृद्ध दंपति गुजियांग का तुरुप का पत्ता था। शी युहेंग ने अपने हृदय विधि से अपने दाव को साबित किया और ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश किया। अगर ये दो बूढ़े जोड़े खतरे में होते तो शी युहेंग को निश्चित रूप से अपने दाव हृदय को नुकसान होता और वह ग्रैंड मास्टर दायरे से गिर सकती थी। शी युहेंग को गुजियांग के कदम से अनिवार्य रूप से भावनात्मक और तर्कपूर्ण दोनों ही दृष्टियों से रोका जाएगा। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? झाओ गुजियांग ने दरवाजा बंद किया और जाने के लिए तैयार हुआ और अपने पिता को देखा। बुरा साधन नहीं है, झाओ टिंगशियाओ ने प्रशंसा की, लेकिन तुमने तो ये बात अपने पिता से भी छुपाई। क्या अब तुम्हें यह नहीं पता? झाओ गुजियांग ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। इसके अलावा कोई भी अपने बेटे को उसके पिता से बेहतर नहीं जानता, मैं ये बात आपसे कैसे छिपा सकता हूँ? झेनबेई का राजकुमार हंसा और पिता पुत्र ने एक दूसरे के कंधों पर अपनी बाहें रख दी। अगले दिन झाओ टिंगशियाओ ने इंपीरियल स्टडी का दरवाजा खोला। महाराज, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। आओ 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 टिंगशियाओ। लीजा युआन की मुस्कुराहट कोमल थी, मानो उस दिन झेनबेई के राजकुमार से भिड़ने से जो गहरी कलह पैदा हुई थी वह बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। झेनबेई का राजकुमार डेस्क की ओर चला गया। टिंगजियाओ, लीजा युआन ने एक गुप्त पत्र सौंपा। दक्षिणी सीमा पर जाओ। झाओ टिंगशियाओ ने गुप्त पत्र खोला और ऊपर लिखी सामग्री को देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। दक्षिणी सीमा ने अकारण ही 5 शहरों को दयान साम्राज्य को सौंप दिया। लीजा युआन का चेहरा भारी था। आपने ये भी देखा है, दक्षिया का क्षेत्र वास्तव में सौंप दिया गया है और मैं इससे पहले अनजान था। मैंने ली जिन को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे ये बताने के लिए कहा कि वे दक्षिणी सीमा की सुरक्षा किस प्रकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये यात्रा करो और देखो कि झेनान के राजकुमार ली जिन क्या कर रहे हैं। झेनबेई के राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और गुप्त पत्र नीचे रख दिया। मुझे हाल ही में राजकुमार के महल में रहना है। दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु शी युहेंग ने गुजियांग पर हमला किया है। ली ज़ेयुआन का चेहरा फिर डूब गया। टिंगशियाओ, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात एक बड़े भाई के तौर पर कह रहा हूँ। गुजियांग स्वाभाविक रूप से शरारती है और उसे नियंत्रित करने और दबाने की जरूरत है। देखो, वह हर जगह दुश्मन बना रहा है और खुद पर विपत्ति ला रहा है ना? आप उसके प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। इसके अलावा आप एक समय उत्तरी सीमा की रक्षा करने वाले महान जनरल थे, क्या आप देश को परिवार से पहले रखने की अवधारणा को भूल गए हैं? अब जब दक्षिणी सीमा पर संकट होने का संदेह है तो आपको आगे आना चाहिए। भाई, झाओ टिंगशियाओ ने ली ज़ायुआन पर गहरी नजर डाली। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, इसका एक और कारण है। युनरुई गर्भवती है, मुझे उनकी रक्षा करनी है। ली ज़ायुआन स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें अविश्वास में कांप रही थीं। आप क्या कहा आपने? युनरुई गर्भवती है, झाओ टिंगशियाओ ने इसे फिर दोहराया। ली ज़ायुआन को पुष्टिकृत उत्तर प्राप्त होने पर आश्चर्य हुआ और वह कुछ हद तक चकित भी हुआ, उसकी बेटी गर्भवती थी। इसकी गणना करने पर यह उनकी ली ज़ायुआन की पहली पोती या पोता होगा जो उनके लिए शाही परिवार की वंशावली होगी। वास्तव में युनरुई को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। ली ज़ायुआन की आंखें गहरी थीं। वह युनरुई की रक्षा करने के झाओ टिंगजियाओ के विचार से सहमत था, लेकिन वह झाओ टिंगजियाओ के क्योटो में रहने से सहमत नहीं था। दक्षिणी सीमा में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और राजा झेनांग की विशिष्ट स्थिति के अज्ञात होने के कारण दक्षिणी सीमा पर भेजे गए व्यक्ति को ली जिंग राजा झेनांग को दबाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ऐसे उम्मीदवार बहुत कम थे। वर्तमान में वह केवल झाओ टिंगशियाओ के बारे में ही सोच सकते थे। लेकिन टिंगजियाओ, ली ज़ायुआन ने अपना स्वर बदल दिया, एकमात्र व्यक्ति जिस पर हम अब भरोसा करते हैं और जिसके पास दक्षिणी सीमा की जांच करने की क्षमता है, वह आप हैं। आपको जाना ही होगा, आपको देश को प्राथमिकता देनी होगी। जहां तक युनरुई और गुजियांग की बात है, हम आपसे वादा करते हैं हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। झाओ टिंगशियाओ ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि ली ज़ायुआन ने जो कहा वह उचित था, फिर भी वह हिचकिचा रहा था। युनरुई हमारी बेटी है। ली ज़ायुआन ने देखा कि झाओ टिंगजियाओ अभी भी हिचकिचा रहा था, उसे मनाना जारी रखा। गुजियांग के मामले के बारे में आपने पहले भी हमसे बहस की थी और हमने तब से इस पर विचार किया है। हम उसे अपने बेटे की तरह मानेंगे। अब जब युनरुई गर्भवती है तो हम निश्चित रूप से उनकी अच्छी देखभाल करेंगे, झाओ टिंगशियाओ ने सोचा और अंततः सिर हिला दिया। ली ज़ायुआन ने एक निश्चित उत्तर पाकर धीरे धीरे राहत की सांस ली। पिछले दो दिनों से दक्षिणी सीमा के मामले उसके लिए लगातार चिंता का विषय रहे थे। झाओ टिंगजियाओ के जाने के लिए सहमत होने के बाद उसे यकीन था कि झाओ टिंगजियाओ की योग्यताएं उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाएंगी। इसके बाद दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई और ली ज़ायुआन ने कुछ बातें बताईं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। झाओ टिंगशियाओ के चले जाने के बाद ली ज़ायुआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, धीरे से अपनी आंखें बंद की और झपकी ले ली। शांत होते होते उसे लगने लगा कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ ही समय में वह कमजोरी के दौर से गुजरने लगा। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे पता था कि युनरुई गर्भवती है और वह अपनी रीति नीति के विपरीत जाकर नर्म पड़ने लगा था। यदि वह क्रूरता के साथ युनरुई के बच्चे को व्यक्तिगत रूप से मार सके तो क्या उसका राज्य दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगा? लेकिन जब वह समय आएगा तो क्या वह निर्दयी व्यक्ति तब भी मनुष्य होगा? कमजोरी के निकट आने पर उसे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि महान दाव को प्राप्त करने के लिए उसे सचमुच भावनाओं का परित्याग करना पड़ा? ली ज़ायुआन द्वंद्व में पड़ गया, उसके विचार अधिकाधिक जटिल होते गए। वांग निवास झाओ टिंगजियाओ वुजियांग को कुछ चीजें समझाना चाहता था, लेकिन पाया कि बच्चा वुजियांग फिर से अपने स्वयं के मामलों में व्यस्त था। वुजियांग बड़ा हो गया था और काम करने का उसका अपना तरीका था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वुजियांग गलतियां करेगा, उसे बस वुजियांग और युनरुई की सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने कैंगलांग और अन्य दो को बुलाया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें निर्देश दिया। स्थिति गंभीर है, मुझे दक्षिणी सीमा पर जाना है। वुजियांग और युनरुई को आपकी सुरक्षा में सौंपा गया है। महाराज, कृपया निश्चिंत रहें, आपके अधीनस्थ उत्तराधिकारी और राजकुमारी कंसोरट की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, कैंगलांग और अन्य दो ने जवाब दिया। अगर स्थिति बदल जाती है, झाओ टिंगशियाओ ने जाने से पहले एक पल सोचा और फिर निर्देश दिया, यदि आवश्यक हो तो वुजियांग और युनरुई को यहां से ले जाओ। कैंगलांग और अन्य दो ने एक दूसरे को देखा, फिर गंभीरता से कहा, हाँ। ड्रैगन बैटल मैनर, झाओ वुजियांग ने हवेली में घुसने की कोशिश की। पहरेदार उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाए और वे उसे रोकने के बारे में बहुत गंभीर होने की हिम्मत नहीं कर पाए। लॉन्ग झान, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। झाओ वुजियांग ने मनों के लेआउट और साज सज्जा की स्पष्ट रूप से जांच की। जागीर के नौकरों को उत्सुकता थी। क्योटो में हर कोई जानता था कि वारिस झाओ और उनके मालिक के बीच अनबन थी। वारिस झाओ के साथ आज क्या हो रहा था जो इतने घमंड से आ रहे थे? अपने मालिक से मिलने आ रहे थे, उन दोनों में कब सुलह हुई? झाओ गुजियांग का ड्रैगन बैटल मैनर के नौकरों द्वारा पूरे रास्ते पीछा किया गया और जब वह सामने वाले हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि लॉन्ग झान ठंडे चेहरे के साथ वहां बैठा था। लॉन्ग झान ने अपना हाथ हिलाया, नौकरों को भगाया, आश्चर्य और संदेह से झाओ गुजियांग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या तुम मेरे दरवाजे पर आते थे? अब मुझे आने की अनुमति नहीं है। झाओ गुजियांग ने लॉन्ग झांग की स्थिति का अवलोकन किया और पाया कि लॉन्ग झांग घायल हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, स्थिति वैसी ही थी जैसा कि लियू रुयान और लिंग किंगक्सू ने कल रात उसकी स्वर्गीय तलवार वापस लेने के लिए वापस आने पर कहा था। ये लॉन्ग झांग ही था जिसने उस पर नफरत का रुख मोड़ दिया। उसी समय लॉन्ग झांग को सीनियर सिस्टर जियांग ली और दूसरी सीनियर सिस्टर झाओ फ्यान द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए था। आप कैसे घायल हो गए? झाओ गुजियांग ने जानबूझकर पूछा। उसका स्वर उपहासपूर्ण था। तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कल तुम्हारे मालिक और बड़ी बहन ने तुम्हें पीटा हो? लॉन्ग झांग को बहुत आश्चर्य हुआ। झाओ गुजियांग को कैसे पता चला कि उसके गुरु और बड़ी बहन क्योटो आ गए हैं? जल्द ही उसे समझ में आ गया कि ऐसा होना चाहिए था कि उसके स्वामी ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी, इसलिए झाओ गुजियांग को पता था। अब जब तुम्हें पता है कि मेरे गुरु और बड़ी बहन क्योटो के पास हैं, तब भी तुम इतने घमंडी हो? लॉन्ग झांग ने झांसा दिया। अभी बाहर निकलें, अन्यथा। झाओ गुजियांग ने अपना हाथ लहराया। मैं यहां आपके साथ बकवास करने नहीं आया हूं, मैं शियुहिंग के साथ एक सौदा करना चाहता हूं। लियू रुयान और अन्य लोगों को वापस ले लिया गया है, लॉन्ग झांग ने व्यंग्य किया। तुम उनके बदले क्या चाहते हो? स्वर्गीय तलवार। हे झाओ गुजियांग, ऐसा लगता है कि महिलाएं वास्तव में आपकी कमजोरी हैं। किसने कहा कि मैं उन्हें बदलना चाहता हूं? झाओ गुजियांग ने हंसते हुए कहा और उसके बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाकर शी युहिंग से कहो कि अगर आज मेरी तीनों औरतें वापस नहीं आईं, तो आज रात मैं उनके पालक माता पिता की बलि चढ़ा दूंगा। लॉन्ग झांग चौंक गया और सीधा बैठ गया। झाओ गुजियांग, क्या आपको डर नहीं है कि मेरे मालिक लोगों की मांग करने के लिए आपके झेनबेई वांग निवास पर कदम रखेंगे? हे झाओ गुजियांग आक्रामक था। क्या उसकी हिम्मत है? मेरे पिता राजा झेनबेई हैं। आधे घंटे बाद झाओ गुजियांग वांग निवास पर लौटते हुए कैंगलांग और अन्य दो से नवीनतम समाचार प्राप्त करते हैं और उनकी तलवार भौहें गहरी रूप से सिकुड़ जाती हैं। क्या मेरे पिताजी चले गए? दक्षिणी सीमा पर उसने अभी अभी लॉन्ग झांग के सामने सख्त व्यवहार किया था। क्या अब उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ने वाला था? झाओ टिंगशियाओ ने आदेश स्वीकार कर लिया और राजधानी छोड़कर दक्षिणी सीमा की ओर चले गए। इससे झाओ गुजियांग को लगातार चिंता होने लगी। उसका बूढ़ा आदमी दक्षिणी सीमा पर किस मिशन के लिए जा रहा था? क्या ली जायुआन जानबूझकर अपने बूढ़े आदमी को दूर भेज रहा था? अब जबकि उसके बूढ़े पिता आदेश के तहत चले गए हैं, तो उसे दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु शी युहिंग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जब वह वांग निवास में आए? उसे अब सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसे सबसे बड़ी राजकुमारी को ढूंढना था। वह जानता था कि सबसे बड़ी राजकुमारी अभी भी कुछ छिपा रही है और उसे वह उधार लेना था। झाओ गुजियांग ने जब उसके विचारों को समझा तो वह सहजता से सबसे बड़ी राजकुमारी के निवास पर गया। उन्होंने ली झाओहुआ को बताया कि उनका बूढ़ा पिता दक्षिणी सीमा पर जा रहा है, जिससे उसे ली झाओहुआ का समर्थन मिलने की उम्मीद है। ली झाओहुआ ने अपनी पतली टांगों को पार किया, उसके जेड हाथ ने उसकी ठोड़ी को सहारा दिया। झाओ गुजियांग की कुछ चिंतित उपस्थिति को देखा और अचानक उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। झाओ टिंगशियाओ की दक्षिणी सीमा की यात्रा की योजना मैंने जानबूझकर बनाई थी। ज़ेननान के राजा ली जिंग के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। विशेष समस्या को जाने बिना ली ज़ायुआन किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहता था जो दक्षिणी सीमा पर जाकर वहां नियंत्रण कर सके। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बिल को पूरा कर सकें, और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए केवल झाओ टिंगजियाओ ही व्यक्तिगत रूप से जा सकते थे। केवल जब झाओ टिंगशियाओ दक्षिणी सीमा पर जाएगा तभी मैं चैन से रह पाऊंगा, ताकि वह बीच में न फंसे और किसी भी पक्ष को खुश न कर सके। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम ही थे? वह मैं था। तो फिर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, झाओ गुजियांग ने मासूमियत से कहा। आपने मेरे बूढ़े आदमी को दक्षिणी सीमा पर जाने के लिए डिजाइन किया है और अब मुझे दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु शी युहिंग द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। शी युहिंग किसी भी समय वांग निवास में कदम रख सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? शी युहिंग, तुम उसके निशाने पर कैसे आ गए? ली झाओहुआ हैरान थी। वह शी युहिंग से कुछ हद तक सावधान थी और जब उसने कहा तो उसका चेहरा गंभीर था। शी युहिंग एक ग्रैंड मास्टर हैं। मैं ग्रैंड मास्टर से केवल आधे कदम की दूरी पर हूं, लेकिन यह आधा कदम एक खाई से अलग है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? वास्तव में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, झाओ गुजियांग ने समझाया। बस हमें आभा के मामले में उससे हारना नहीं है। अगर वह सावधान रहेगी तो स्वाभाविक रूप से वह नहीं लड़ेगी। ली झाओहुआ विचारमग्न दिखे। झाओ गुजियांग ने उसकी ओर देखा, उसकी तलवार जैसी भौहें सिकुड़ गईं। मैं उसे कैसे धोखा दूंगा कि वह मुझे 7 सितारा महिला रक्षक दे दे जिसे उसने छुपा रखा है? क्या यह महिला वास्तव में यह नहीं समझती कि अगर मैंने फोन काट दिया तो उसकी बगावत में मदद करने वाला कोई नहीं होगा? ली झाओहुआ ने सोचा। उसकी नजर अचानक झाओ गुजियांग पर पड़ी। वह चौंक गई। झाओ बुजियांग को सेवन स्टॉर्स फीमेल गार्ड के बारे में कैसे पता चला? यह उसके छिपे हुए तुरुप के पत्तों में से एक था। हालांकि झाओ बुजियांग ने जो कहा वह भी सही था। अगर झाओ बुजियांग को कुछ हो गया तो वह निस्संदेह विद्रोह के रास्ते पर एक शक्तिशाली सहायक खो देगी। झाओ टिंगशियाओ का राजधानी छोड़ना और अब वांग निवास की सुरक्षा करने में सक्षम न होना वास्तव में उससे संबंधित था। ठीक है, ली झाओहुआ ने गहराई से सोचने के बाद सिर हिलाया। मैं वास्तव में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। झाओ बुजियांग ने ली झाओहुआ की पतली पार की हुई टांगों पर अपना हाथ मारा। सहयोग से खुशी मिले। रात, वांग निवास, छोटा आंगन। झाओ बुजियांग ने शी युहिंग के दत्तक माता पिता के लिए एक भोज की मेजबानी की। उसके पीछे सात महिलाएं नौकरानियों के वेश में आदरपूर्वक खड़ी थीं। ये सात महिलाएं वांग निवास से नहीं थीं, बल्कि सात सितारे महिला गार्ड थीं जिन्हें उसने आज ली झाओहुआ से अनलॉक किया था। ये सात लोग पांचवीं रैंक पर थे, लेकिन उन्होंने सात सितारा तलवार गठन का एक सेट विकसित किया। जब वे सातों सेना में शामिल हो गए तो वे पहले रैंक से लड़ सकते थे। हालांकि वे अभी भी शी युहिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन ये शी युहिंग को सतर्क करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार क्या शी युहिंग के दत्तक माता पिता अभी भी यहाँ नहीं थे? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शी युहिंग के दत्तक पिता के लिए शराब का एक गिलास भरा और विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया ये शराब चखें। युहिंग अभी तक क्यों नहीं आया? बुजियांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह जल्द ही आने वाली है? दत्तक पिता अभी भी झाओ बुजियांग के उत्साह से कुछ हद तक अपरिचित था। उसने अपने जीवन के अधिकांश समय कड़ी मेहनत की थी और यह पहली बार था जब उसने किसी राजकुमार का सामना किया था। यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। वह अभी भी कुछ हद तक संयमित था, दोनों हाथों से शराब का गिलास पकड़े हुए सावधानी से पूछ रहा था। शायद वह बहुत व्यस्त है और देर हो गई है। झाओ बुजियांग भी जल्दी में नहीं था। वह मुस्कुराया। अचानक उसकी भौहें उठ गईं। शी युहिंग ठंडे चेहरे के साथ आया था। वह कदम दर कदम आगे बढ़ी, पहले अपने दत्तक माता पिता को देखा, फिर उसकी आंखें बेहद भयंकर हो गईं और उसने झाओ बुजियांग को भयंकर रूप से घूरा। झाओ बुजियांग ने वास्तव में उसे धमकाने के लिए उसके दत्तक माता पिता का उपयोग करने का साहस किया। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि झेनबेई के राजा राजधानी छोड़ चुके हैं। झाओ बुजियांग ने फिर भी इतना घमंडी होने की हिम्मत की। तो आज वह झाओ बुजियांग को अच्छा दिखाएगी। वह गुस्से से भरी हुई थी और उसने झाओ बुजियांग को सबक सिखाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने जो पतला हाथ बढ़ाया था उसे झाओ बुजियांग ने पकड़ लिया और उसे अपनी बगल वाली सीट पर खींच लिया। क्या तुम थक गई हो? क्या तुम अधीर हो? झाओ बुजियांग ने उसके लिए शराब का गिलास भरा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। पहले कुछ खा लो, अपना पेट भर लो। झाओ बुजियांग का व्यवहार, मानो वह उससे बहुत परिचित था, यहां तक कि अंतरंगता के संकेत के साथ उसने, जिसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। जब वह प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली थी और भावनाओं से फूटने वाली थी तो एक दयालु और कठोर आवाज सुनाई दी। दत्तक पिता ने सीधे चेहरे से कहा, यार पिताजी जानते हैं कि तुम व्यस्त हो, लेकिन तुम थोड़े ज्यादा अज्ञानी हो। बुजियांग हमें वांग निवास पर ले गया और हमारा अच्छा सत्कार किया, लेकिन आप स्वयं गायब हो गए। यदि बुजियांग न होता तो हमें आपकी स्थिति का पता नहीं चलता। पिताजी ने उसे बुजियांग कहा। क्या हो रहा है? शी युहिंग का दिल कांप रहा था। झाओ बुजियांग ने अपने दत्तक माता पिता को कैसे पाया? अपने दत्तक माता पिता को खतरे में न डालने के लिए उसने शायद ही कभी उनसे संपर्क किया, यहां तक कि उसके कुछ शिष्यों को भी नहीं पता था। झाओ बुजियांग को कैसे पता चला कि उसके दत्तक माता पिता हैं? और उन्हें ढूंढ भी लिया? आओ एक और गिलास पी लो, मछली मत उठाओ। झाओ बुजियांग ने खतरे के किनारे पर आगे पीछे नाचते हुए शी युहिंग को शराब का एक और गिलास दिया। इन दो ढालों के साथ इस महिला को हमला करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? आइए पहले उसकी अंतिम पंक्ति का परीक्षण करें। शी युहिंग ने आश्चर्य से झाओ बुजियांग की ओर देखा। क्या? झाओ बुजियांग ने आखिरी दो वाक्य बोले। उसके बोले बिना वह ये कैसे सुन सकती थी? क्या वह झाओ बुजियांग की अंतरात्मा की आवाज सुन सकती थी? झाओ बुजियांग जानबूझकर अपनी निचली सीमा का परीक्षण कर रही थी, एक इंच आगे बढ़कर एक मील की चाहत में मौत को आमंत्रित कर रही थी। शी युहिंग गुस्से में थी। उसने वाइन का गिलास लिया और अपनी आंतरिक शक्ति के झटके से वाइन के गिलास के साथ झाओ बुजियांग के हाथ में एक शक्तिशाली बल हिला दिया। आज चाहे कुछ भी हो, वह झाओ बुजियांग को सबक सिखाएगी। झाओ बुजियांग को अपने हाथ की हड्डियों में तेज दर्द महसूस हुआ। वह जानता था कि शी युहिंग उसे सबक सिखाने से खुद को नहीं रोक सकता। उसने कहा, उस समय बहुत देर हो चुकी थी, फिर जल्दी ही सीधे बाएं हाथ से छह, दाहिने हाथ से सात, बाएं पैर से गोल घेरे बनाना, दाहिने पैर से लात मारना, और फिर ही यो। वह नीचे गिर गया। उसकी आंखों में दर्द था। बस ऐसे ही शी युहिंग को घूर रहा था। देखते हैं मैं तुमसे पैसे वसूल पाता हूँ या नहीं। शी युहिंग ने फिर से आंतरिक आवाज सुनी, आश्चर्य से गिरे हुए झाओ हुजियांग की ओर देखा और निश्चित रूप से अगले ही पल दत्तक पिता ने गहरी आवाज में कहा, युअ तुम क्या कर रहे हो? आपने बिना किसी कारण के हुजियांग को क्यों धकेला? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? शी युहिंग ने सहन करना चुना। वह सहाय थी और झाओ हुजियांग के पास पहुंची। उसका पतला हाथ झाओ हुजियांग ने पकड़ लिया और उसने देखा कि झाओ हुजियांग अचानक दुष्टता से मुस्कुरा रहा है। उसका दिल बिना किसी कारण के धड़क उठा, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि झाओ हुजियांग कुछ और करने वाला है। उसने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे दोष मत दो तुम दोनों। झाओ हुजियांग ने मुस्कुराते हुए, समझदारी से मुस्कुराते हुए, अपनी मुस्कान में शर्मीले प्यार के साथ खड़े हुए, युआ चाहे कुछ भी करे मैं उसे माफ कर दूंगी। शी युहिंग का दिल दहल गया। अरे नहीं, दत्तक माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने झाओ हुजियांग की बात सुनी। उन दोनों के बीच वाकई कुछ चल रहा था। क्या ये हो सकता है कि तुम दोनों? दत्तक पिता का स्वर खुशी से थोड़ा कांप उठा। ये सही है, मैं इसे तुम दोनों से नहीं छिपाऊंगा। झाओ हुजियांग के गालों पर लड़कियों जैसी शर्म दिखी और वह सिकुड़े हुए होंठों से मुस्कुराया। वास्तव में यू एर और मैं दिल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर शी युहिंग का रुका हुआ दिल अंततः मर गया। सचमुच, झाओ हुजियांग को ये कहते हुए सुनकर दत्तक पिता बहुत खुश हुआ। जिन वर्षों में उन्होंने युवा का पालन पोषण किया, यद्यपि वे सख्त थे, फिर भी उन्हें इस बच्चे के लिए विशेष रूप से दुख होता था। इन सालों में यू एर आजीविका कमाने के लिए बाहर चला गया। उसे चिंता थी कि यू एर की उम्र बढ़ती जा रही है। लड़कियों, जब वे बड़ी हो जाएंगी तो पति मिलना मुश्किल हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से यू एर को पहले से ही एक मिल गया है। झाओ हुजियांग एक अच्छा इंसान है। वह युवक सुंदर दिखता है, लोगों के साथ सौम्य व्यवहार करता है और एक बड़ा परिवार और बड़ा व्यवसाय वाला एक युवा स्वामी भी है। वह बहुत संतुष्ट है। पिताजी, शी युहिंग खुद को रोक नहीं पाई। उसे झाओ हुजियांग को बकवास करने से रोकना पड़ा। उसने बेचैनी से कहा, झाओ बू की बात मत सुनो यू एर, अभी कुछ मत कहना। दत्तक पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, यू एर को संकेत दिया कि वह झाओ हुजियांग की बात ध्यान से सुने। चूंकि झाओ हुजियांग ने पहले ही इस बारे में बात कर दी थी, इसलिए यू एर को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी। सच में, झाओ हुजियांग ने सिर हिलाया। शी युहिंग को स्नेह से देखा और फिर भी विचारशीलता से कहा, मैं जानता हूं कि यू एर शर्मीला है और इनकार करना चाहता है, लेकिन मैं एक पुरुष हूं, इसलिए मुझे पहल करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। झाओ हुजियांग, शी युहिंग फिर से बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। अब वह चाहती थी कि वह झाओ हुजियांग का मुंह फाड़ दे, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसे अपने पिता की सख्त निगाहों ने घूर कर देखा। वह इतनी क्रोधित थी कि उसने मेज के नीचे झाओ हुजियांग का हाथ जोर से पकड़ लिया। झाओ हुजियांग दर्द में था, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मौके का फायदा उठाया और उसकी तरफ झुका, जैसे कह रहा हो, तुम मुझे मेरे माता पिता के सामने क्यों खींच रही हो? अगर कुछ है तो हम रात को बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं। हुजियांग, दत्तक पिता ने कुछ देर सोचा और सीधे मुद्दे पर आकर अपनी चिंता व्यक्त की। युवा शायद आपसे कई साल बड़ा है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झाओ हुजियांग स्वाभाविक रूप से समझ गया कि शी युहिंग के दत्तक पिता का क्या मतलब था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, 3 साल बड़ी पत्नी होना सोने की ईंट थामे रहने जैसा है। 30 साल बड़ी पत्नी होना एक साम्राज्य उपहार में मिलने जैसा है। यू एर के साथ मैंने लगभग आधा साम्राज्य जीत लिया है। ऐसी अच्छी चीज मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मेरे पास उसे लाड़ प्यार करने का भी समय नहीं है, तो फिर मैं उसे नापसंद करने को कैसे तैयार हो सकता हूँ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू एर और मैं एक जैसे विचार वाले हैं और हमारी भावनाएं वास्तविक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उम्र कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे जैसी सोच किसकी है? शी युहिंग खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से से कहा, युवा, दत्तक माता ने अपना दयालु भाव बदला और सख्ती से कहा, तुम्हारे माता पिता तुमसे कुछ नहीं चाहते। वे बस यही चाहते हैं कि तुम्हें शादी के लिए एक अच्छा परिवार मिले और तुम्हें वह कठिन जीवन न जीना पड़े जो तुम्हारे माता पिता जीते थे। तुम एक लड़की हो, लेकिन तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना चेहरा दिखाने और जीविका कमाने के लिए बाहर जाने पर जोर देती हो। इतने साल हो गए हैं और तुम अक्सर हमसे मिलने नहीं आते। हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम बाहर क्या कर रहे हो या तुम ठीक हो या नहीं। अब यह अच्छा है, हुजियांग तुमसे शादी करने को तैयार है। वह एक अच्छा इंसान है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। वह तुम्हारा अनुसरण करेगा और तुमसे प्यार करेगा। तुम उसे क्यों नहीं समझोती? तुम्हें और क्या चाहिए? शी युहिंग अपने दत्तक माता पिता से बहस नहीं करना चाहती थी। उसे याद था कि इन दोनों बुजुर्गों ने उसके प्रति कितनी दयालुता दिखाई थी, लेकिन वह झाओ हुजियांग की योजनाबद्ध तमाशा को अब और जारी नहीं रखना चाहती थी। उसे इसे रोकना था। वह आगे बढ़ने और अपने माता पिता को दूर ले जाने के लिए तैयार हो गई, ताकि झाओ गुजियांग को और अधिक परेशान न होने दिया जाए। झाओ गुजियांग ने हर समय विवरणों पर ध्यान दिया। वह तुरंत समझ गया कि शी युहिंग क्या सोच रहा था। उसने अपनी आंखें घुमाई और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी चेतावनी के शी युहिंग के गाल पर चूमा। फिर उसने अपनी उंगलियां आसमान की ओर उठाई। चिंता मत करो बड़ू, मैं निश्चित रूप से यू एयर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यदि मैं इस शपथ का उल्लंघन करूं तो मुझ पर बिजली गिर जाए। बोलने के बाद उसने चुपके से रात के आसमान की ओर देखा। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था, सिवाय शी युहिंग के, जो बहुत गुस्से में था। शी युहिंग पहले ही राक्षसी हत्या के इरादे से भड़क चुका था। उसके शरीर में क्यूई और रक्त एक पल में बढ़ गया। इससे पहले कि शी युहिंग हमला कर पाता, वह सीधे दो बूढ़े लोगों के पीछे छिप गया। बुजुर्गों, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए यू एयर और मैंने आपके भोजन और दैनिक जीवन की देखभाल के लिए तीन लड़कियों की भी व्यवस्था की है। तुम अपनी हठधर्मिता मत दिखाओ, उन तीन लड़कियों को बाहर निकालो। ये सुनकर दोनों बूढ़े लोग दयालुता से मुस्कुराए। युवक, तुम और गुजियांग बहुत विचारशील हो। शी युहिंग की आस्तीन के अंदर उसके पतले जैद हाथों की पोरियां तब तक दबाई गईं जब तक कि वे सफेद नहीं हो गईं। अब जब उसके माता पिता झाओ गुजियांग के सामने थे और झाओ गुजियांग वाकपटु था और उसे अपने शब्दों में शामिल भी कर रहा था, तो वह बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकती थी। उन्हें अंदर आने दो, शी युहिंग ने एक गहरी सांस ली और झाओ फेयान और जियांग ली को छोटे से आंगन के बाहर जाने का आदेश दिया। लियू रुयान बहनें छोटे से प्रांगण में प्रवेश करते समय हैरान दिख रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि प्रांगण के अंदर विस्तार से क्या चर्चा हुई थी। झाओ गुजियांग ने दोनों वृद्ध लोगों के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। तुम दोनों अब से शाही महल में अपने बुढ़ापे का आनंद लोगे और यू एयर और मैं तुम दोनों को एक बड़ा मोटा पोता देंगे, इसका इंतजार करो। अच्छा अच्छा अच्छा, बूढ़े आदमी ने भावुक भाव से सिर हिलाया। उनका मिशन पूरा हो गया था और यू एयर को आखिरकार पति का परिवार मिल गया। चलो पहले खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा होने वाला है। झाओ गुजियांग नीचे झुका और धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लूंगा। लियू रुयान बहनें पहले से ही हैरान थीं और उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी। उन्हें संदेह था कि उन्होंने गलत सुना है। यू एयर कौन है? क्या यहाँ यू एयर नाम की कोई लड़की है? क्या ये यू उनका स्वामी शी युहिंग हो सकता है? झाओ गुजियांग ने गुरु पर कब विजय प्राप्त की? गुरु खंडन क्यों नहीं करते? गुरुजी कुछ तो बोलो। शी युहिंग का चेहरा ठंडा था और उसने अपने गिलास में शराब एक ही घूंट में पी ली। झाओ गुजियांग वाकपटु था और उसने दोनों बड़ों को धोखा दिया। वह खुद को समझा नहीं सकी। अब उसके माता पिता पहले से ही झाओ गुजियांग को एक अच्छा दामाद मानते थे, वे उसकी बात कैसे सुन सकते थे? आओ थोड़ा मांस खाओ। झाओ गुजियांग ने शी युहिंग की प्लेट में खाना रखा। शी युहिंग ने अपने दांत पीस लिए और दांतों के बीच से आवाज निकाली। मैं गोमांस नहीं खाता। युवा दत्तक पिता ने अपना शराब का गिलास भारी ढंग से नीचे रख दिया। पिताजी जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व मजबूत है, लेकिन आप गुजियांग को परेशान नहीं कर सकते। गुजियांग आपको इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। आप लोग अच्छा जीवन जिए, ये किसी भी चीज से बेहतर है। हमेशा झगड़ा मत करो। शी युहिंग ने चुपचाप अपना चावल खाया। झाओ गुजियांग ने बहुत उत्साह से दोनों बुजुर्गों के साथ कपों का आदान प्रदान किया। तीन बार शराब पीने और पांच बार विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद दोनों बूढ़े थक गए और आराम करने के लिए नीचे चले गए। शी युहिंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सीधे झाओ गुजियांग को मारना चाहती थी और फिर उसके बाद अपने माता पिता को धोखा देने का बहाना ढूंढना चाहती थी। सात सितारा महिला गार्डों ने हत्या के इरादे को भांप लिया और सीधे झाओ गुजियांग के सामने खड़ी हो गईं। तीन लियू रुयान लड़कियां भी झाओ गुजियांग के साथ खड़ी थीं। झाओ गुजियांग के साथ आगे बढ़ रही थीं और पीछे हट रही थीं। तीन कैंगलांग भी प्रकट हुए, अपने युवा स्वामी के सामने सात सितारा महिला रक्षकों के साथ खड़े थे। युवक, तुम अपने पति की हत्या नहीं करना चाहती हो, है ना? झाओ गुजियांग ने अपने हाथ फैला दिए। ऐसा लग रहा था कि वह पिटाई के लायक है, जिससे शी युहिंग के दांत खुजलाने लगे। लेकिन शी युहिंग को गुस्सा होने के अलावा झाओ गुजियांग की दोबारा जांच करनी पड़ी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शाही महल में उत्तरी जैन राजा के बिना भी झाओ गुजियांग से निपटना इतना मुश्किल होगा। अब एकमात्र विकल्प था कि कुछ समय के लिए हार मान ली जाए। उसने धीरे धीरे अपनी हत्या की मंशा को नियंत्रित किया, अपना शक्तिशाली दबाव वापस लिया और अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए छोटे से आंगन से बाहर चली गई। वह इस बेशर्म व्यक्ति झाओ गुजियांग को अब और नहीं देखना चाहती थी। युए धीरे चलो, झाओ गुजियांग ने याद दिलाया। लेकिन अब से मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब आना है और तुम आओगे। पिता भक्ति सबसे महत्वपूर्ण गुण है, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए। शी युहिंग ने अपना सिर घुमाया और कठोरता से कहा। अगर मेरे माता पिता को कुछ भी हो गया तो झेनबेई रॉयल हवेली को भी नहीं बख्शा जाएगा। बोलने के बाद वह बिना पीछे देखे चली गई। झाओ गुजियांग ने शी युहिंग की सुंदर पीठ को देखा और धीरे से राहत की सांस ली। तीनों लियू रुयान लड़कियां देख सकती थीं कि झाओ गुजियांग ने उन्हें बचाने के लिए कोई चाल चली होगी। कल जब मास्टर उन्हें ले गया तब झाओ गुजियांग ने उनका साथ नहीं छोड़ा। गुजियांग, धन्यवाद। लियू रुयान स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी, वह मोहक ढंग से मुस्कुराई और उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। युन जिनशु ने राहत की सांस ली। उसे कल झाओ गुजियांग द्वारा तलवार से बचाए जाने का दृश्य याद आया और उसका दिल भावनाओं और अपराध बोध से भर गया। धन्यवाद झाओ गुजियांग, आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? झाओ गुजियांग मुस्कुराया और कहा, हम सब एक ही पक्ष में हैं। देखो, किंगक्सू मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार नहीं कर रही है। लिंग किंगक्सू का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसके गले में कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण बात अटक गई थी और वह कुछ देर तक अपना मुंह खोलना नहीं जानती थी। अब उनका एकमात्र भरोसा झाओ गुजियांग था। उन्हें झाओ गुजियांग के साथ सुख दुख बांटना था, इसलिए उन्हें एक साथ सोना पड़ता था। कुछ ही देर में वे झाओ गुजियांग को प्रशिक्षण कक्ष में ले गए। लिंग किंगक्सू की आंखें थोड़ी उलझन भरी थीं, बोलने में शर्म आ रही थी। लियू रुयान आकर्षण से भरी हुई थी और वह जो करना चाहती थी वह लगभग उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। युन जिनशु प्रशिक्षण कक्ष में टॉनिक का ढेर लेकर आए। झाओ गुजियांग ने इस युद्ध को देखा, उसकी तलवार जैसी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी कमर में बिना किसी कारण के हल्का दर्द होने लगा। उसने सावधान होकर अपनी कमर को सहारा देते हुए कहा, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? लियू रुयान ने लिंग किंगक्सू को धक्का दिया और लिंग किंगक्सू ने अपनी आंखें नीची कर ली, अलग होने का नाटक करते हुए। झाओ गुजियांग, क्या आप एक स्थायी ब्राइडल गाउन कौशल चाहते हैं? झाओ गुजियांग, क्या आप अनंत वेडिंग गाउन दिव्य कौशल प्राप्त करना चाहेंगे? लिंग किंगक्सू को ये कहते हुए सुनकर झाओ गुजियांग क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गया, जैसे उसने लिंग किंगक्सू और अन्य दो महिलाओं को ये कहते हुए सुना हो, बूढ़े झाओ, क्या तुम्हें एक पत्नी चाहिए? अब उसे सत्ता की जरूरत है, इसलिए वह निश्चित रूप से इनकार नहीं करेगा। इसलिए झाओ गुजियांग ने लियू रुयान और लिंग किंगक्सू के साथ विवाह पोशाक दिव्य कौशल की गहनतम साधना शुरू की। साधना प्रक्रिया के दौरान लियू रुयान और लिंग किंगक्सू पहले से कहीं अधिक सहयोगी थे। वे जो कुछ भी जानते थे उसे एक दूसरे को प्रदान करते थे। उनकी शक्ति लगातार पानी की एक बूंद की तरह रिस रही थी। वेडिंग गाउन दिव्य कौशल केवल अस्थायी रूप से साथी अभ्यासियों की शक्ति उधार ले सकता है। स्थायी रूप से शक्ति उधार लेने के लिए साथी अभ्यासियों को एक व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए अपने स्वयं के मार्शल आर्ट क्षेत्र में योगदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। झाओ गुजियांग और दो महिलाओं द्वारा अभ्यास किया गया वेडिंग गाउन दिव्य कौशल निस्संदेह लियू रुयान और लिंग किंगक्सू द्वारा झाओ गुजियांग को अपनी शक्ति के साथ स्थायी रूप से सशक्त बनाने का विकल्प है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि वे स्वयं बहुत कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह का आत्मा बलिदान करने वाला दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो आम लोग कर सकते हैं, लेकिन लियू रुयान और लिंग किंगक्सू समझते हैं कि केवल जब झाओ गुजियांग मजबूत हो जाता है तभी वह उनकी बेहतर सुरक्षा कर सकता है। अन्यथा अगर अगली बार शी युहिंग उन पर हमला करता है तो वे शी युहिंग के हाथों मारे जाने की संभावना है। बेहतर है कि अब उनकी शक्ति झाओ गुजियांग को हस्तांतरित कर दी जाए। ड्रैगन बैटल मैनर, वरिष्ठ बहन फेयान, कैसा रहा? लॉन्ग जान उत्सुकता से झाओ गुजियांग के साथ व्यवहार की स्थिति जानना चाहता था और चापलूसी से कहा। मास्टर के साथ दो वरिष्ठ बहनों के होने के कारण झाओ गुजियांग इतना डर गया होगा कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी और दया की भीख मांगने लगा। झाओ फेयन हॉल में आगे पीछे घूमता रहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उसने लॉन्ग जान को अनदेखा कर दिया। सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर जियांग ली तलवार की पुस्तिका पकड़े हुए थी और उसे ध्यान से पढ़ रही थी। तलवार की पुस्तिका पर लिखी गई बहुत सी टिप्पणियां जूनियर सिस्टर यू ने लिखी थी और बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। वह अपनी तलवार की राह खुद ही जांच रही थी और उसने लॉन्ग जान के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अतीत में जब जूनियर भाई लॉन्ग जान के सवालों का सामना करना पड़ता था तो वे निश्चित रूप से लॉन्ग जान को जवाब देते और समझाते थे। आखिरकार उस समय लॉन्ग जान की प्रतिभा बेजोड़ थी और वे उसे बहुत महत्व देते थे, लेकिन अब उनकी नज़र में लॉन्ग जान अब उतना आशाजनक नहीं रहा। लॉन्ग जान को पहले स्वर्गीय तलवार का केवल आधा हिस्सा ही मिला था और बाद में इसे झाओ गुजियांग ने छीन लिया। मास्टर ने रात में आकाशीय घटनाओं का अवलोकन किया और सितारों को बदलते देखा और लॉन्ग जान की सैन्य शक्ति भी छीन ली गई। प्यार में लॉन्ग जान और भी पूरी तरह से असफल रहा। उसने राजकुमारी से शादी नहीं की और यहां तक कि रुयान और अन्य दो भी झाओ गुजियांग के पक्ष में भाग गए। वे फिर से लॉन्ग जान को कैसे महत्व दे सकते थे? ये देखकर कि दोनों वरिष्ठ बहनें चुप थीं, लॉन्ग जान को ये कैसे पता नहीं चल सका कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी और उसकी वरिष्ठ बहनें उसे नीची नजर से देखती थीं। उसने अपनी गर्दन को छुआ, सूखी खांसी ली, अपनी शर्मिंदगी को छुपाया और मुस्कुराया। हालांकि झेनबेई के राजकुमार ने राजधानी छोड़ दी है। झेनबेई के राजकुमार के बिना झाओ गुजियांग के पास कोई सहारा नहीं है और वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। उस समय उसे मारना मुर्गियों और कुत्तों को मारने जितना आसान होगा। दोनों वरिष्ठ बहनों ने फिर भी उसे अनदेखा कर दिया। झाओ फेयन के विचारों में फिर से बाधा आई। उसने अपनी भौहें उठाई और लॉन्ग झान की ओर ठंडी नजर से देखा। गुरुजी, शिष्य गुरुजी को नमस्कार करता है। लॉन्ग झान और भी शर्मिंदा हो गया। उसने अचानक मास्टर को हॉल के सामने आते देखा और तुरंत झुककर सलाम किया। दोनों बड़ी बहनों ने उसे थोड़ा नीचा देखा और अनदेखा कर दिया। उसने पूछा, मास्टर, कोई बात नहीं है न? मास्टर के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने और झेनबेई के राजकुमार के मनों में न होने के बावजूद क्या झाओ गुजियांग फिर भी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है? वह निश्चित रूप से मास्टर की शक्ति से कुचला जाएगा। भले ही मास्टर ने झेनबेई के राजकुमार के चेहरे की परवाह किए बिना झाओ गुजियांग को नहीं मारा, लेकिन वह कम से कम झाओ गुजियांग को एक गहरा सबक तो देगी। शियुहिंग गुस्से में लॉन्ग झान की हवेली में आई। वह झाओ गुजियांग के तरीकों को हल करने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। तरीका ये था कि उसे न देखा जाए, नजरों से दूर, दिमाग से दूर। झाओ गुजियांग को बेशर्मी से काम करने और उसके माता पिता की शक्ति उधार लेकर उसे गुप्त रूप से धमकाने का मौका न दिया जाए। मास्टर के लिए राजकुमार के महल में जाना कठिन काम था, लॉन्ग झान ने आदरपूर्वक कहा। वह कुत्ता झाओ गुजियांग आपकी आंखों में खटकता है। वह बहुत चालाक कामुक है और उसने तीनों बड़ी बहनों को धोखे से ले लिया है। तीनों बड़ी बहनें उसके साथ जाने को तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें किस तरह का परमानंद दिया है और उन्होंने आपके विरोध में भी बात की। गुरु, उसके लिए एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर झाओ गुजियांग तीनों वरिष्ठ बहनों को पसंद कर सकता है तो तीनों वरिष्ठ बहनें भी अच्छी इंसान नहीं हैं। लेकिन आपके व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने से, गुरु, आप निश्चित रूप से झाओ गुजियांग को सबक सिखाएंगे और झाओ गुजियांग को। चुप रहो, शी युहिंग पहले से ही अपना गुस्सा रोक रही थी। लॉन्ग झान की बातें सुनकर उसे लगा जैसे लॉन्ग झान उसे डांट रहा हो। झाओ गुजियांग को किसी ऐसी चीज से लगाव हो गया जो अच्छी नहीं थी। झाओ गुजियांग ने पहले ही उस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, शी युहिंग। अब उसके माता पिता को सच में लगता है कि उसके और झाओ गुजियांग के बीच एक करीबी रिश्ता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका। शी युहिंग का चेहरा ठंडा था। आज आप कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं? आपका सच्चा यांग हॉट सूत्र किस स्तर पर है? क्या आपकी मार्शल आर्ट की दुनिया में उन्नति हो गई है? मास्टर, मैं, लॉन्ग झान हकलाते हुए एक पल के लिए जवाब देने में असमर्थ हो गया। उसने आज केवल थोड़ी देर के लिए अभ्यास किया और बाकी समय समाचार की प्रतीक्षा में बिताया। जहां तक सच्चे यांग हॉट सूत्र और मार्शल आर्ट क्षेत्र की बात है तो उन्हें साधना इतना आसान कैसे हो सकता है? तुम बहुत आलसी हो, तुमने मुझे निराश कर दिया है। शी युहिंग का चेहरा और भी ठंडा हो गया। जियो ली, तुम लॉन्ग झान को सुधारने आए हो, पीछे मत हटो। हाँ, जियांग ली ने तलवार की पुस्तिका नीचे रख दी और गंभीरता से सिर हिलाया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे तलवार की कुछ चालों का अभ्यास करने की जरूरत थी, इसलिए वह अपने कनिष्ठ भाई लॉन्ग झान को लकड़ी के खंभे की तरह इस्तेमाल करके जोरदार वार करेगी। झाओ फेयान ने भौहें सिकोड़ी। वह और उसकी बड़ी बहन पहले भी राजकुमार के महल के बाहर जा चुकी थी और उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। उसने केवल मास्टर को ये कहते हुए सुना कि वे छोटी बहन किंगक्सू और अन्य दो को छोड़ दें। ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा आसान नहीं थी। उसने चिंता और संदेह से पूछा, मास्टर, वह झाओ गुजियांग? झाओ गुजियांग बहुत ही असाधारण व्यक्ति हैं। उनके विचार अत्यंत सूक्ष्म हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की उनकी क्षमता बहुत मजबूत है। शी युहिंग प्रतिभा की प्रशंसा करने में कंजूस नहीं थी। उसने हल्की सी आह भरी। भविष्य में राजकुमार के महल में उपस्थित होना मेरे लिए असुविधाजनक होगा। गुरुजी, आपके शिष्य और सबसे बड़ी बहन आपकी ओर से कार्य कर सकते हैं, झाओ फियान ने गंभीरता से कहा। शी युहिंग ने अपना सिर हिलाया। झाओ गुजियांग के इर्द गिर्द अभी भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, आपके पास कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं है। झाओ फेयान ने भौहें सिकोड़ी। उसने राजकुमार के महल में तीन विशेषज्ञों का सामना किया था, लेकिन ये तीनों ली युनरुई की रक्षा कर रहे थे। उसे विश्वास था कि उसके हल्केपन के कौशल और सबसे बड़ी बहन के साथ, भले ही तीन विशेषज्ञ उसे ली युनरुई पर हमला करने से रोक दें, वे निश्चित रूप से उसे झाओ गुजियांग पर हमला करने से नहीं रोक पाएंगे। वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ गुजियांग के आसपास अभी भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। राजकुमार का भवन सचमुच अथाह था। मालिक, झाओ फेयान के मन में अभी भी कुछ विचार थे और वह बोलने ही वाली थी। उसने अभी एक शब्द ही कहा था कि अचानक उसने अपना मुंह बंद कर लिया और गेट की ओर देखने लगी। कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। आगंतुक एक बूढ़ा आदमी था जो ब्रोकेड का लबादा पहने हुए था और हौंफते हुए दौड़ रहा था। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उसने जल्दी से बैठने के लिए एक सीट ढूंढ ली। लॉर्ड कैपिटल मिलिट्री ऑफिसर, बड़ी स्थिति है। लॉन्ग जान ने भौहें सिकोड़ी। आगंतुक हुआ जिंग था, जो इंपीरियल अस्पताल का प्रमुख था। हुआ जिंग को रिपोर्ट करने की इतनी उत्सुकता क्यों थी? उसने तुरंत पूछा, हेड हुआ, क्या हुआ? धीरे बोलो। इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सामान्य किया और फिर देखा कि हॉल में तीन महिलाएं थीं। उसने अपनी आंखों से लॉन्ग जान को संकेत दिया। लॉन्ग जान ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि ठीक है, बस बोलो। फिर इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख ने सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, सम्राट ने हमारे शाही अस्पताल को गर्भावस्था को स्थिर करने वाली दवा लेने का आदेश दिया तथा छठे राजकुमार को झेनबेई के महल के राजकुमार को गर्भावस्था को स्थिर करने वाली दवा भेजने की तैयारी करने को कहा। ऐसा होना चाहिए कि सातवीं राजकुमारी गर्भवती हो। क्या ली यूनरुई गर्भवती है? लॉन्ग जान का दिल धड़क उठा। वह गुस्से में था। जिस महिला पर उसने दिल लगाया था वह उस कुत्ते झाओ हुजियांग का बीज ले जा रही थी। शी युहिंग को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग जान के पास भी इंपीरियल अस्पताल में कोई है। उसने उसकी तरफ देखा। लॉन्ग जान ने उसे समझा और उसके पास धीमी आवाज में समझाया, गुरुजी, ये हुआ जिंग शाही अस्पताल का प्रमुख है। शिष्य को पहले ही पता चल गया था कि वह औषधीय पदार्थों की तस्करी और रिश्वत लेने में माहिर है और अब वह शिष्य के नियंत्रण में है। शी युहिंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं। स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। वह पहले चिंतित थी कि ली यूनरुई की गर्भावस्था उसके चरम यिन पवित्र शरीर को प्रभावित करेगी, लेकिन अब वह गर्भावस्था को स्थिर करने वाली दवा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख का उपयोग कर सकती है। राजकुमार की हवेली, अभ्यास कक्ष। झाओ गुजियांग बहुत ही उत्साही था। लियु रुयान और लिंग किंगसु की पूरी मदद से वह पहले ही तीसरे दर्जे के मार्शल कलाकार के दायरे में पहुंच चुका था। यदि अब उसका सामना लॉन्ग जान से होता तो वह लॉन्ग जान को शानदार तरीके से हरा सकता था। ये केवल अफसोस की बात है कि शी युहिंग अब राजधानी में आ गया है। शी युहिंग की सुरक्षा के साथ उसके लिए लॉन्ग जान से निपटना आसान नहीं है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उसने धीरे से लियु रुयान और लिंग किंगसु को गले लगाया। इन दोनों महिलाओं ने उसकी बहुत मदद की थी और उसे अपने दिल में यह बात याद आ गई। भविष्य में आप राजकुमार के महल में रहेंगे और मैं निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। युन जिनशु ने पूरी प्रक्रिया देखी थी और वह तीनों लोगों को मार्शल आर्ट के सिद्धांत के बारे में मार्गदर्शन दे रही थी, जिससे वह शर्मा गई। यु जिनशु, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। झाओ गुजियांग अपने बुद्धिमान समय के दौरान स्पष्टता और खुलेपन की स्थिति में थे और उन्होंने कुछ समस्याओं के बारे में सोचा। मैं युन जिनशु बार बार पीछे हट रही थी। उसके गाल इतने लाल हो गए थे कि उनसे लगभग खून टपक रहा था और वह हकलाते हुए बोली, मैं अभी तैयार नहीं हूं। इसके अलावा आपने अभी अभी किंगजू और रुयान के साथ काम खत्म किया है, क्या आप में अभी भी ऊर्जा है? झाओ गुजियांग अवाक रह गए। उन्होंने समझाया, मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे गर्भावस्था को स्थिर करने वाली कुछ दवाई तैयार करने में मदद करो। कोई तुम्हारे साथ दवाई की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मैं जानता हूं कि आप सैकड़ों क्लासिक्स में पारंगत हैं और आप फार्माकोलॉजी में भी बहुत अच्छे हैं। भविष्य में गर्भावस्था को स्थिर करने वाली कोई भी दवा सिवाय उसके जिसे हम स्वयं बनाते हैं नहीं खाई जा सकेगी, चाहे उसे कोई भी भेजे। युन जिनशु ने अजीब तरीके से सिर हिलाया। झाओ गुजियांग वास्तव में स्थिर था। एक महिला की गर्भावस्था के मामले को इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बैंग बैंग, इसी समय दरवाजा खटखटाया गया और बूढ़े बटले की आवाज आई, महाराज, महामहिम, क्या आप व्यस्त हैं? छठे राजकुमार यहाँ हैं और कह रहे हैं कि वे गर्भावस्था को स्थिर करने वाली दवा देने आए हैं। शाही महल, ली युनई ने तुरंत क्योटो में अपने एकमात्र स्वयंभू अच्छे दोस्त झाओ गुजियांग को अपनी बाहों में भर लिया। आप किसके साथ व्यस्त हैं? मुझे मत बताओ कि तुम मेरी बहन की पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ घूम रहे हो, गर्भावस्था में आराम देने वाली दवा देने आए हो। झाओ गुजियांग ने ली युनई के हाथ में रखे दवा के थैले पर नजर डाली। इसे वापस ले लो, क्या मतलब है तुम्हारा? ली युनई हैरान रह गई। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैंने दवा के साथ छेड़छाड़ की है? रॉयल पैलेस के पास गर्भावस्था को शांत करने वाली अपनी दवा है, झाओ गुजियांग ने धैर्यपूर्वक समझाया। उसे ली युनई पर विशेष रूप से संदेह नहीं था, लेकिन दवा के साथ छेड़छाड़ करने के कई अवसर थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंतित था जिसके पीछे छिपे इरादे थे। बीमारियों के इलाज और लोगों को बचाने के मामले में क्या शाही महल की तुलना शाही अस्पताल से की जा सकती है? ली युनई ने भौहें सिकुड़ी, एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि झाओ गुजियांग की सावधानी कुछ हद तक सही थी। उसने कहा, ये सिर्फ दवा की चिंता है। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मैं भी चिंतित हूँ। मैंने खुद दवा नहीं बनाई और मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा। इस तरह आप प्रतीक्षा करें। ली युनई ने अपनी बात खत्म करने के बाद बूढ़े प्रबंधक को खोजने के लिए दौड़ लगाई और कहा कि वह दवा का काढ़ा बनाना चाहता है। फिर उसने रॉयल पैलेस की रसोई में हलचल मचा दी, औषधीय जड़ी बूटियां पकाईं। कुछ ही देर में वह दवा का कटोरा लेकर झाओ हुजियांग के पास आया और गंभीरता से कहा, आप ध्यान से देखिए। ये कहने के बाद उसने ठंडा किया हुआ औषधीय सूप एक ही घूंट में अपने मुंह में डाल लिया। झाओ हुजियांग की तलवार जैसी भौहें फड़क उठी। उसने ली युनई की खुद को आजमाने की हिम्मत की भावना की प्रशंसा की, और वह ये भी देख सकता था कि ली युनई थोड़ा मूर्ख था, लेकिन वास्तव में उसके और युन रुई के प्रति उसके कोई बुरे इरादे नहीं थे। चिंता मत करो, ली युनई को झाओ हुजियांग की चिंता समझ में आ गई। उसने आत्मविश्वास से हाथ हिलाया। मैंने विशेष रूप से शाही बलिदान न्यायालय के उपमंत्री से पूछा था, और उन्होंने शाही चिकित्सा ब्यूरो के एक चिकित्सक को व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बात समझाई। गर्भावस्था में आराम देने वाली अधिकांश दवाएं टॉनिक होती हैं, लेकिन कमजोर तिल्ली और पेट वाले या नमी गर्मी वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होती। अगर मैं इसे पी लूं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, चिंता मत करो। यू रुई के लिए दवा का परीक्षण करना बिल्कुल सही है। ग्लग ग्लग हो। ली युनई बोलते समय अनजाने में ही अपने गले से गुड़गुड़ाहट की आवाज निकालने लगा, मानो वह डूब रहा हो। उसके मुंह के कोनों से अनायास ही सफेद झाग की धारें बहने लगी। उसने अपने मुंह के कोने को पोंछा और सफेद झाग देखा। अरे, ये तो जहरीला है। फिर उसने एक दबी हुई कराह निकाली, उसके नितंब अनायास ही ऊपर उठ गए, उसके पैर अचानक अकड़ गए, उसका चेहरा भयभीत हो गया और वह चिल्लाया, झाओ हुजियांग, तुम्हारा शौचालय कहाँ है? झाओ हुजियांग ने तिरछे इशारा किया। ली युनई पागलों की तरह भागा, भागते समय जोर जोर से डकारे मार रहा था। कुछ ही देर में ली युनई पीला चेहरा लिए वापस आया और कांपती आवाज में बोला, झाओ हुजियांग, ये दवा, रुको, मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता। वह पागलों की तरह फिर शौचालय की ओर भागा। आधे घंटे के बाद ली युनई दस्त से लगभग थक गया था। वह बूढ़े प्रबंधक की मदद से वापस आया, उसका चेहरा सोने के कागज की तरह सफेद था, उसके होंठ पीले थे और वह पूरे शरीर में कांप रहा था। इस कांपने का आधा हिस्सा दस्त के कारण था और आधा हिस्सा गुस्से के कारण। किसी ने वास्तव में युन रुई पर हमला करने की हिम्मत की, और वह दवा देने वाला था। उसे डर का एहसास हुआ। अगर झाओ हुजियांग की सावधानी न होती तो वह झाओ हुजियांग के चेहरे पर भारी भाव थे। अगर ये दवा वाकई युन रुई को दी गई होती तो बच्चे को निश्चित रूप से नुकसान होता। इस दवा की विषाक्तता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस समय युन रुई सुरक्षित और स्वस्थ होगी, लेकिन बच्चा चला जाएगा। दूसरे लोग केवल यही सोचेंगे कि युन रुई की गर्भावस्था अस्थिर है और कुछ गड़बड़ है। पर्दे के पीछे से असल में कौन तार खींच रहा है? लीजा युआन, इंपीरियल अस्पताल से कोई? हमें अंत तक जांच करनी होगी। जांच करो, गहनता से जांच करो। झाओ हुजियांग और ली युनई ने एक स्वर में कहा, उनके दिल स्पष्ट रूप से क्रोध से भरे हुए थे। झाओ हुजियांग ली युनई की मदद करने गया, लेकिन ली युनई ने अपना हाथ हिलाया और कांपती आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं घोड़ों को तैयार करने जा रहा हूँ। बूढ़ा प्रबंधक जल्दी से शाही महल से बाहर भाग गया। आधे घंटे बाद बूढ़े प्रबंधक ने गाड़ी चलाई और तीनों शाही बलिदान के दरबार में पहुंचे। महामहिम छठे राजकुमार, महामहिम उत्तराधिकारी, शाही बलिदान दरबार के पहरेदारों ने लोगों को गाड़ी से उतरते देखा और जल्दी से सलामी दी। यह अधीनस्थ उपमंत्री को रिपोर्ट करेगा, चले जाओ, रास्ते से हट जाओ। ली युनई थोड़ा लंगड़ाते हुए चला। उसने झाओ हुजियांग को सीधे पकड़ लिया और अंदर घुस गया। महाराज, यह क्या है? झाओ हुजियांग और ली युनई अभी तक शाही अस्पताल नहीं गए थे जब वे शाही बलिदान न्यायालय के कनिष्ठ उपमंत्री से टकरा गए। शाही बलिदान दरबार के कनिष्ठ उपमंत्री ने भौहें सिकोड़ी। इन दो लोगों को आक्रामक रूप से आते देख जरूर कुछ बड़ा हो रहा होगा। उसे जल्दी से उपमंत्री को रिपोर्ट करनी थी, इसलिए वह उन दोनों के सामने रुका और सलाम किया। महाराज, अगर कोई काम है तो आप इस अधिकारी को आदेश दे सकते हैं, यह अधिकारी आपको ले जाएगा। तुम भी चले जाओ। ली युनई ने सीधे शाही बलिदान न्यायालय के कनिष्ठ उपमंत्री को धक्का दिया और उग्रता से कहा, मुझे थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। शाही बलिदान न्यायालय के कनिष्ठ उपमंत्री भयभीत हो गए और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। कांपते हुए उन्होंने अपनी आधिकारिक टोपी को ठीक किया, ये सोचते हुए कि यह खत्म हो गया। ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। ये देखकर कि छठे राजकुमार का गुस्सा बाहर निकल रहा था और वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और झाओ शिजी की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे, वह जानता था कि शाही बलिदान के दरबार में आज अराजकता होनी तय थी। जिस दिशा में वे दोनों जा रहे थे वह इंपीरियल अस्पताल था। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए आए थे। क्या ये सातवीं राजकुमारी के लिए हो सकता है? हे भगवान, शाही बलिदान दरबार के उपमंत्री को लगा कि आसमान गिरने वाला है। अगर छठा राजकुमार और झाओ शिजी वास्तव में सातवीं राजकुमारी के लिए आए तो शाही बलिदान दरबार शायद आज ही जमीन पर धराशायी हो जाएगा। सातवीं राजकुमारी सम्राट की सबसे प्रिय राजकुमारी थी, दुनिया में कौन नहीं जानता था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, कांपता हुआ, जब तक कि उसने ली युनई और झाओ हुजियांग को दूर जाते नहीं देखा। वह जल्दी से उठा और मुख्य आधार उपमंत्री को खोजने चला गया। जबकि शाही बलिदान न्यायालय के कनिष्ठ उपमंत्री उपमंत्री को रिपोर्ट करने गए थे, शाही बलिदान न्यायालय में लॉन्ग झान के मुखबिर भी संदेश देने के लिए तेजी से लॉन्ग झान के निवास की ओर दौड़े। अरे अरे महामहिम, निदेशक बेहोश हो गए हैं और वर्तमान में, कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। इंपीरियल अस्पताल के सामने कई चिकित्सक एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठ गए और झाओ हुजियांग और ली युनई का रास्ता रोक दिया। वे दोनों दुष्ट सितारों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन निर्देशक ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हें रोकने का निर्देश दिया था। अधीनस्थों के रूप में उन्हें ऐसा करना पड़ा, भले ही वे न चाहते हों। सबूत नष्ट करना, झाओ हुजियांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी हथेली को हवा से उड़ाया और सीधे रास्ता रोक रहे दो चिकित्सकों को दूर भगाया और अंदर की ओर भागा। ली युनई ने उस चिकित्सक को लात मारकर दूर कर दिया जो उसका पैर पकड़ रहा था और जानबूझकर उसे विलंबित कर रहा था, और तेजी से अंदर भाग गया। इस समय इंपीरियल अस्पताल के निदेशक हुआ जिंग, जैसा कि झाओ हुजियांग ने अनुमान लगाया था, सबूत नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे। विभिन्न चीजों को दवा के स्टोव में फेंक रहे थे, जिसमें ली जा रही औषधीय जड़ी बूटियों के रिकॉर्ड, बची हुई औषधीय जड़ी बूटियां इत्यादि शामिल थी। उसे इतनी जल्दी पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। झाओ हुजियांग और ली युनई एक साथ आए थे और उसे बहाने बनाने के लिए सारे सबूत नष्ट करने पड़े, अन्यथा उसे बहाने बनाने का मौका भी नहीं मिलता। धमाका, दरवाजा जोर से खुला। झाओ हुजियांग ने एक पैर से दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुसा और सीधे इंपीरियल अस्पताल के निदेशक का हाथ पकड़ लिया। शिजी, इंपीरियल अस्पताल के निदेशक ने विरोध करना चाहा, लेकिन झाओ हुजियांग ने सीधे उसे पकड़ लिया और दवा स्टोव पर दबा दिया। दवा का स्टोव गर्म था और इंपीरियल अस्पताल के निदेशक के गालों से धुआं निकल रहा था और वह बुरी तरह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो महाराज, मुझे छोड़ दो। आहा, ली युनई होंफते हुए दौड़ा। उसने सबूत छीन लिया जिसे जलाने का समय शाही अस्पताल के निदेशक के पास नहीं था। उसने औषधीय जड़ी बूटियों को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तराजू उठाया और सीधे शाही अस्पताल के निदेशक के शरीर पर उसे मारा, मारते हुए डांटा, तुम कृतघ्न मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? झाओ हुजियांग ने ठंडे स्वर में कहा और जाने से इनकार कर दिया। इंपीरियल अस्पताल के निदेशक दर्द से चिल्लाए, मैं आपको बताऊंगा महाराज, कृपया मुझे पहले जाने दीजिए। रुको, एक चिंतित और भयंकर आवाज उसके पीछे पीछे आई, साथ में घोड़ों की टापों की लगातार आवाज भी। घर के बाहर उनके आने की आवाज से एक फुफकार सुनाई दी। लॉन्ग झान ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया, यहां तक कि लापरवाही से शाही बलिदान के दरबार में घुस गया, समय के खिलाफ दौड़ लगाई और अंततः वहां पहुंच गया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली, महाराज शाही बलिदान न्यायालय में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेफ्टिनेंट को न्यायालय से रिपोर्ट मिल गई है और वह स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन को साथ ले आया है। तुरंत रुकें। ये लिखते हुए मुझे आशा है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नोवेल नेट TWKN.COM याद होगा। लॉन्ग झान को आते देख शाही अस्पताल के प्रमुख ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, लेफ्टिनेंट लॉन्ग, मुझे बचाओ। ली युनई ने लॉन्ग झान के सामने कदम रखा, क्या आप इस राजकुमार को अभिनय करना सिखा रहे हैं? महाराज, ग्रेजिया के कानून के अनुसार मुझे आप दोनों को पकड़ने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि महामहिम अस्पताल के प्रमुख को रिहा कर देंगे। आपकी जो भी मांगे हैं, मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से जांच करने में आपकी सहायता करूंगा। लॉन्ग झान ने कानून का हवाला देते हुए अपनी तलवार के साथ आगे कदम बढ़ाया। वह लगातार इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख की स्थिति पर नजर रखता था, उसे उजागर नहीं करने देने का दृढ़ निश्चय करता था। झाओ हुजियांग ने अनसुना कर दिया, इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख को कसकर पकड़ लिया और फिर से पूछा, तुम्हें किसने आदेश दिया? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे कि मैं, झाओ हुजियांग, ये कदम उठाने की हिम्मत कर पाऊंगा या नहीं? इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख का पूरा शरीर कांप उठा, उसके गालों में तीव्र दर्द उसके दिल के डर को दबा नहीं पा रहा था। वह दूसरों की धमकियों का विरोध करने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन झाओ हुजियांग कौन था? झेनबेई के राजकुमार का इकलौता बेटा, सातवीं राजकुमारी का पति, जो आमतौर पर कानून विहीन था। राजकुमार जो काम करने की हिम्मत नहीं करते, झाओ हुजियांग ने पहले भी किए थे। क्या आप उसके जैसे इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख को मारने की हिम्मत नहीं कर सकते? अगर कुछ हुआ तो झेनबेई का राजकुमार उसे बचा लेगा। मैं बात करूंगा। आतंक में इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख की निगाहें लॉन्ग झान की ओर मुड़ गईं। वह पहले अपनी जान बचाने के लिए लॉन्ग झान को बेनकाब करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह उसे इशारा करने वाला था, तलवार की ऊर्जा की ठंडी चमक उसकी छाती में घुस गई। उसने अविश्वास से तलवार पकड़े हुए लॉन्ग जान की ओर देखा और अपना मुंह खोला। इसकी यह है, इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख अंततः अपनी बात पूरी भी नहीं कर सके और बेहोश होकर गिर पड़े। झाओ गुजियांग ने लॉन्ग जान की ओर देखा, उसका स्वर भयानक रूप से ठंडा था। लॉन्ग जान, तुम उसे चुप कराने के लिए हत्या कर रहे हो, इसके पीछे तुम ही हो, है ना? हम महाराज, उत्तराधिकारी, आपको लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग जान ने अपनी तलवार खींची और ठंडे स्वर में कहा, अभी अभी हुआ जिंग छठे राजकुमार की पीछे से हत्या करना चाहता था। मैं छठे राजकुमार की रक्षा कर रहा था, तुम पाद रहे हो। लियुनई काफी गुस्से में थी, उसने कांपती हुई उंगली से लॉन्ग जान की ओर इशारा किया। झाओ गुजियांग की सच्ची यांग शक्ति उसके अंगों में प्रवाहित हो रही थी। वह लॉन्ग जान को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। क्रैक क्रैक क्रैक, दरवाजे के बाहर स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन आ पहुंची, अपने क्रॉसबो लोड किए और झाओ गुजियांग और ली युनई पर निशाना साधा। लॉन्ग जान ने ठंडी सांस ली, उसने ली युनई और झाओ गुजियांग को मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन क्या झाओ गुजियांग ने उसे मारने की हिम्मत की? स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के क्रॉसबो के नीचे, क्या वह उसे मार सकता था? क्या वह उसे घायल भी कर सकता था? सम्राट के आदेशानुसार स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन को राजधानी की शांति की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। लॉन्ग जान ने धीरे से अपनी तलवार से खून पोंछा। शाही अस्पताल का प्रमुख मर चुका था, इसलिए उसे फंसाया नहीं जा सकता था। वह पहले से ही निडर था। आज दोनों महामहिमों की हरकतों को शाही बलिदान दरबार में सभी ने देखा है। मैं निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से सम्राट को इसकी रिपोर्ट दूंगा। लॉन्ग जान को यकीन था कि झाओ गुजियांग पीछे हट जाएगा, क्योंकि अगर यह मामला ली ज़ायुआन तक पहुंचता है तो ली ज़ायुआन के झाओ गुजियांग के प्रति पूर्वाग्रह और उसके प्रति पक्षपात के साथ वह निश्चित रूप से अभी भी उसके पक्ष में खड़ा होगा और झाओ गुजियांग को दंडित करेगा। तो इसकी रिपोर्ट करो, झाओ गुजियांग ने लॉन्ग जान को और अधिक परेशान नहीं किया और सीधे दरवाजे की ओर चल दिया। शाही महल, झाओ गुजियांग और ली युनई पहुंचे, लॉन्ग जान धीरे धीरे उनके पीछे आया, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। महाराज, सम्राट महत्वपूर्ण मामलों में भाग ले रहे हैं, आप दोनों को किसी और दिन वापस आना चाहिए। मुख्य नपुंसक चेन झेंगहुआ ने झाओ गुजियांग और ली युनई को शाही अध्ययन कक्ष के सामने रोक दिया। लॉन्ग जान ने दूर से ही व्यंग्य किया, झाओ गुजियांग अभी भी उस पर मुकदमा करना चाहता है, मेरे पास भी महत्वपूर्ण मामले हैं। झाओ गुजियांग ने ठंडे स्वर में कहा, एक रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का प्रदर्शन करते हुए और चेन झेंगहुआ को धक्का देकर इंपीरियल स्टडी में जाने के लिए मजबूर करने वाला था, लेकिन उसकी हथेली की हवा चेन झेंगहुआ को बिल्कुल भी हिला नहीं सकी। झाओ गुजियांग की अभिव्यक्ति डूब गई। मूल कार्य में मुख्य नपुंसक चेन झेंगहुआ छिपे हुए चौथे ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन वे आमतौर पर अपनी ताकत बिल्कुल नहीं दिखाते थे और यहां तक कि जानबूझकर कमजोर दिखाई देते थे। चेन झेंगहुआ ने अपनी आस्तीनें कस ली, अंदर से वह विश्वास से परे हैरान था। झाओ गुजियांग बहुत तेजी से बड़ा हो गया था, है ना? जब वे कुछ समय पहले मिले थे तब भी वह रैंक 9 मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन अब वह इतनी जल्दी रैंक 3 बन गया है। आखिर मामला क्या है? शाही अध्ययन कक्ष के अंदर ली ज़ायुआन की ठंडी आवाज आई, क्योंकि अब उसने बाहर का शोर सुन लिया था। ली ज़ायुआन मूल रूप से अपने कौशल का अभ्यास कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कमजोरी का दौर आ रहा था। सर्दियों के महीने की शुरुआत में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे अपनी योजनाओं को तेज करना था और पूरी तैयारी करनी थी, लेकिन उसने बाहर लड़ाई की आवाज सुनी और चेन झेंगहुआ, जो हमेशा स्थिर रहता था, कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया। तभी चेन झेंगहुआ ने एक तरफ कदम बढ़ाया और झाओ गुजियांग और अन्य लोगों को अंदर आने दिया। पिता सम्राट, ली युनई घुटनों के बल बैठ गया, आपके बेटे को महत्वपूर्ण मामले बताने हैं। इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख हुआ जिंग ने गर्भावस्था लाने वाली दवा के साथ छेड़छाड़ की, जिससे युनरुई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। झाओ गुजियांग ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसके पीछे लॉन्ग जान का ही हाथ है। लॉन्ग जान ने पहले ही इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख को चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी है। महाराज, उत्तराधिकारी, आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए, लॉन्ग जान ने तर्क देते हुए कहा। उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी, मैं राजकुमार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए मैंने कार्रवाई की और इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख को मार डाला। स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के सभी लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। कृपया महाराज, सत्य को पहचाने। गुजियांग, क्या तुम्हारे पास सबूत है? ली ज़ायुआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाने लगा। तुम्हारा बेटा, झाओ गुजियांग ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मरने से पहले इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख की आंखों में जो भाव था वह नकली नहीं हो सकता था, लेकिन उसे सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बिना सबूत के तो यह एक गलतफहमी है। ली ज़ायुआन की आंखें गहरी थी। जहां तक हुआ जिन के मामले की बात है, हम इसकी पूरी तरह से जांच करने का तरीका ढूंढ लेंगे। आपको आपसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, हालांकि झाओ गुजियांग के पास लॉन्ग झान पर सीधे आरोप लगाने के लिए सबूत नहीं थे, लेकिन उसका उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, आपका बेटा विदा लेता है। झाओ ली यूनई हैरान था, झाओ गुजियांग बिना किसी बात के इतना बड़ा बवाल क्यों मचा रहा था? यह मामला कैसे सुलझ सकता था? अगर कोई सबूत नहीं था तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आज वह लॉन्ग झान उस कुत्ते पर मुकदमा करने जा रहा था जो वास्तव में यून रुई को नुकसान पहुंचाना चाहता था। चलो चलें, झाओ गुजियांग ने धीमी आवाज में कहा जब वह आगे बढ़ गया। ली यूनई ने अपना सिर नीचे किया, मुट्ठी बांधने से पहले कई गहरी सांसें ली और कहा, आपका पुत्र पिता सम्राट की शिक्षाओं का आदरपूर्वक पालन करता है और सबसे पहले विदा लेगा। वह गुस्से से उठ खड़ा हुआ और इंपीरियल स्टडी से बाहर चला गया। लॉन्ग झान ने मन ही मन उपहास किया। भले ही सम्राट अब उसे उतना महत्व नहीं देता था, फिर भी वह उसका पक्षधर था। बिना सबूत के झाओ गुजियांग और दूसरे लोग उसे नीचे लाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते थे? मुख्य खोजी अक्सर सम्राट के साथ जाता था और उसने ऐसी बारीकियां देखी जो दूसरों ने नहीं देखी थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और लॉन्ग झान के पीछे खड़ा हो गया। झेंग हुआ। झाओ गुजियांग और ली यूनी के चले जाने के बाद ली ज़ेयुआन ने अचानक गहरी आवाज में कहा। चेन झेंग हुआ ने सिर हिलाया और लॉन्ग झान के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह उड़ गया। लॉन्ग झान की त्वचा फट गई और खून बेकाबू होकर बहने लगा। उसने अविश्वास में अपना चेहरा ढक लिया। ली ज़ेयुआन की आंखें भयंकर थीं। कमीने, तुमने हमारी बेटी को छूने की हिम्मत की? ये सुनकर चेन झेंगहुआ ने आगे बढ़कर लॉन्ग झान को फिर से थप्पड़ मारा, जिससे लॉन्ग झान के कई दांत टूट गए, खून के साथ मिलकर उसके पेट में चले गए। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, महामहिम। लॉन्ग झान के गले में खून भर गया और वह मुश्किल से बोल पाया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, एक दर्दनाक कराह निकाली, अपनी आंखों के भीतर क्षणभंगुर क्रूरता को छिपाते हुए एक अंतिम हताश विनती की। झाओ गुजियांग ने हमेशा मुझे निशाना बनाया है, वह मेरी निंदा कर रहा है। कृपया महाराज स्पष्ट रूप से देखें। ग्रैंड यूनुट चेन झेंगहुआ ने लॉन्ग झान के चेहरे पर थप्पड़ मारना जारी रखा। लॉन्ग झान बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, जमीन पर पड़ा रहा, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके गालों पर छलक रहा था। उसने फिर भी झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि एक बार उसने ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ली ज़ेयुआन के चेहरे पर गहरी अभिव्यक्ति थी और उसकी आंखें गहरी थीं, जब उसने ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहे। बाहर निकलो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। धन्यवाद महामहिम, मेरी जान बख्शने के लिए। लॉन्ग झान ने उठने के लिए संघर्ष किया, अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए शाही अध्ययन कक्ष के बाहर की ओर अस्थिर गति से चल रहा था, प्रत्येक कदम खूनी पदचिह्न छोड़ रहा था। चेन झेंगहुआ ने लॉन्ग झान की विदाई की तस्वीर देखी। उसकी सफेद भौहें सिकुड़ गईं और उसने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज यह मामला, क्या ये वास्तव में लॉन्ग झान द्वारा नहीं किया गया हो सकता है? ली ज़ेयुआन ने गहरी आवाज में कहा। झाओ गुजियांग कभी भी अपने बच्चे का इस्तेमाल लॉन्ग झान को फंसाने की योजना बनाने के लिए नहीं करेगा। इसके अलावा इस बार गर्भावस्था को सुरक्षित रखने वाली दवा यूनयी ने दी थी। यूनयी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, शाही अस्पताल से निकलने से लेकर राजकुमार के महल में पहुंचने तक की हर चीज को व्यक्तिगत रूप से संभालता है। समस्या केवल शाही अस्पताल के भीतर ही हो सकती है। इंपीरियल अस्पताल, ली ज़ेयुआन ने एक गहरी सांस ली, इसे एक बार दोहराया, उसका स्वर ठंडा होता जा रहा था। अगर ये तथ्य न होता कि अभी अदालत में उथल पुथल मचाना उचित नहीं है, तो मैंने आज ही लॉन्ग झान को मार दिया होता। चेन झेंगहुआ ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसे पता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज ये काम असल में किसने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह मामला सम्राट की अभेद्य सीमा को छू गया था। बहुत समय बाद सम्राट इतने क्रोधित हुए थे। राजकुमारी झांग की हवेली, झाओ गुजियांग ने फूलों की खुशबू सूंघते हुए और बहते पानी की आवाज सुनते हुए नहा रहेली झाओहुआ से कहा, राजकुमारी क्या होगा अगर आप पहले नहा लें और मैं बाहर इंतजार करूंगा? हम सब अपने अपने लोग हैं, छोटी छोटी बातों से इतना विवश क्यों होना चाहिए? ली झाओहुआ ने पानी की एक बाल्टी उठाई और उसे अपने नाजुक शरीर पर डाला। उसने सीधे झाओ गुजियांग की अधिक निगाहों में देखा और मुस्कुराए। ये राजकुमारी यह जानने के लिए उत्सुक है कि आज महल में इतना हंगामा मचाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था। यह आपकी सामान्य स्थिर और विवेकपूर्ण शैली नहीं लगती। झाओ गुजियांग बाथटब के किनारे बैठा था। बाथटब के अंदर का पानी का भाप धुंधला था, लेकिन यह उसकी नजर को बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं कर सका। वह घने कोहरे में अकेले पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति की तरह था, आत्मविश्वास और धैर्य से शांति से कह रहा था, क्योंकि मेरी सीमाएं लंघनीय हैं, तो फिर इसे आखिर तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? ली झाओहुआ ने हैरान होकर पूछा। वह समझ सकती थी कि झाओ हुजियांग महल में हंगामा मचा रहा है। आखिरकार ये यून रुई से संबंधित था, लेकिन झाओ हुजियांग ने आखिरकार लॉन्ग झान को बहुत शोर मचाकर और कम कार्रवाई करके छोड़ दिया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे वह बहुत हैरान हो गई। क्योंकि यह सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसकी सीमाएं अलंघनीय हैं। झाओ हुजियांग ने अपने बड़े हाथ से स्नानघर में हाथ डाला, पानी से खेलते हुए खिलखिलाते हुए। ली ज़ेयुआन के पास भी है, क्या आप यून रुई के बारे में बात कर रहे हैं? ली झाओहुआ ने भौहें से कोड़ी। नहीं, झाओ हुजियांग ने अपना सिर हिलाते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यह इंपीरियल अस्पताल का प्रमुख है। ली झाओहुआ की आंखें चमक उठी और वह अचानक समझ गई। हमारे सम्राट वास्तव में कई बार काफी उदार होते हैं, कई चीजों को सहन करने में सक्षम होते हैं। झाओ हुजियांग की आंखें गहरी थी, लेकिन वह किसी को भी अपनी शक्ति का लालच या धमकी देने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे धोखा देने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि इंपीरियल अस्पताल के प्रमुख को स्पष्ट रूप से लॉन्ग झान ने खरीद लिया था। लॉन्ग झान द्वारा अपने लोगों को नियंत्रित करने की हिम्मत करना उसकी वास्तविक अपरिवर्तनीय सीमा को छूने से अलग नहीं है। ली झाओहुआ की आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने झाओ हुजियांग को अधिक प्रशंसा के साथ देखा। झाओ हुजियांग बहुत शोर मचा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह जानता था कि ली ज़ेयुआन पर्याप्त सबूतों के बिना लॉन्ग झान का पक्ष लेगा और उसे कोई बड़ी सजा नहीं देगा। लेकिन अगर ली ज़ेयुआन को पता चलता कि इंपीरियल अस्पताल का प्रमुख लॉन्ग झान के साथ मिलीभगत कर रहा है, तो वह वास्तव में क्रोधित हो जाएगा और लॉन्ग झान को सजा देगा। झाओ हुजियांग को बस इस मामले को ली ज़ेयुआन के सामने लाना था। तुम और अधिक चालाक होते जा रहे हो, ली झाओहुआ ने प्रशंसा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आपके इस कदम से लॉन्ग झान जल्द ही यहाँ रहने में असमर्थ हो जाएगा। शायद मुझे बस वापस लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। जो कोई भी मुझे और मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं बिना चूके उसका बदला लूंगा। झाओ हुजियांग की आंखें गहरी थीं क्योंकि वह पानी से खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ली झाओहुआ को नहला रहा है। जो कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मैं उसे भी अवश्य याद रखूंगी, उसकी दयालुता का बदला अवश्य दूंगी, और यदि उचित हुआ तो मैं अपने आप को विवाह के लिए भी प्रस्तुत कर सकती हूँ। दस्तक दस्तक, दरवाजा खटखटाया गया। ली झाओहुआ के जवाब देने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, यह क्या है? मास्टर, लॉन्ग झान को अभी अभी उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। दरवाजे के बाहर से एक सम्मानजनक आवाज आई। समझ गई, नीचे चलो, ली झाओहुआ ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ हुजियांग को देखते हुए उसकी आंखें अचानक मुस्कुराहट में बदल गईं, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह स्नान में तैरती हुई झाओ हुजियांग के करीब पहुंची और मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। काफी नहीं, झाओ हुजियांग ने सतही तौर पर पानी के साथ खेला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ठंड का एहसास हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर यह अतीत में होता तो ली ज़ेयुआन ने निश्चित रूप से लॉन्ग झान को मार दिया होता, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि ली ज़ेयुआन वास्तव में कमजोर हो गया है और वह आसानी से अदालत में उथल पुथल मचाने को तैयार नहीं है। ली ज़ेयुआन कमजोर हो गया है, संदेह बढ़ रहा है, जो आपके और मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि आज ली ज़ेयुआन और लॉन्ग झान को अलग करना, उन्हें एक एक करके हराने के अधिक अवसर पैदा करना हार नहीं माना जा सकता है ना? राजकुमारी खिलखिलाकर मुस्कुराई, उसकी आकर्षक आभा खिल उठी। आप लॉन्ग झान से छुटकारा पाने में सक्षम थे, जिससे शियाओ की कैंप में एक महत्वपूर्ण पद खाली हो गया, इसलिए ये राजकुमारी लोगों को शामिल करने के अवसर का लाभ उठा सकती है। इस तरह विद्रोह के दिन शहर में घुसने का एक और अवसर मिलेगा। तुमने बहुत अच्छा किया, इस राजकुमारी की बहुत मदद की, ली झाओहुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के झाओ हुजियांग की प्रशंसा की। जब वह लॉन्ग झान को जीतना चाहती थी तो उसे पहले ज़ियाओ की कैंप में लॉन्ग झान की बात सुननी पड़ती थी। वह चाहती थी कि ज़ियाओ की कैंप में उसके ज्यादा लोग हों, जिससे विद्रोह के दिन शहर में घुसना उसके लिए आसान हो जाए। अब जब झाओ हुजियांग ने उसके लिए ये कर दिया था, तो वह वास्तव में खुश थी। झाओ हुजियांग के सुंदर चेहरे, उसकी तुच्छ लेकिन गहरी निगाहों को देखते हुए वह झाओ हुजियांग के सिर को पकड़कर उसे चूमने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने झाओ हुजियांग के होठों को चूमा और इससे पहले कि झाओ हुजियांग कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, जैसे ही वे स्पर्श हुए, वह अलग हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके गाल लाल हो गए। झाओ हुजियांग को नहाने के लिए ले जाया गया, उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसने अपने मुंह के कोने से बचा हुआ रूज पोंछा और मुस्कुराया। मैंने ली ज़ेयुआन के दाहिने हाथ वाले आदमी से छुटकारा पाने में आपकी मदद की, जिससे आपके लिए लोगों को अंदर डालना आसान हो गया। क्या मुझे मिलने वाला इनाम इतना ही है? छप छप पानी की बौछारें पड़ी और एक गोल पतला जेड पैर स्नान की सतह से बाहर निकलकर झाओ हुजियांग की कमर के पास घूम गया। ली झाओहुआ की आंखें घूम गईं। तो फिर तुम्हें कैसा इनाम चाहिए? मुझे क्या इनाम चाहिए? झाओ हुजी ली झाओहुआ के करीब आ गया। उसकी भारी सांसें और लाल गाल इतने करीब थे कि वे उसे छू सकते थे। उसके होंठली झाहुआ के नाजुक चेहरे से टकराए और उसने उसके कान में फुसफुसाया, क्या मैं आपकी चोली की डोरियां खोल सकता हूँ? मुझे लगता है कि आपकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है और मैं देखना चाहता हूँ। क्या आप सिर्फ मेरी महत्वाकांक्षा देखना चाहते हैं? ली झाओहुआ ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी आकर्षक आंखें रेशमी धागे खींच रही थी, उसकी चिपचिपी निगाहें झाओगुजी के गालों से चिपकी हुई थी। बेशक वहां भी है। झाओगुजी पहले ही उसकी चोली की डोरियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन ली झाओहुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। और क्या तुम्हें ये कहना होगा ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में चाहती हो? मैं ये भी पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या सबसे बड़ी राजकुमारी में सचमुच दुनिया को गले लगाने की क्षमता है। ली झाओहुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से झाओगुजी के होठों को थपथपाया, चांदी जैसी जीभ वाली, क्या तुम्हें मेरा मुंह पसंद नहीं है? हाँ हाँ, तुम ही एकमात्र आदमी हो जो मेरे सामने अहंकारी होने का साहस करते हो, फिर भी मैं तुम्हें घृणित नहीं पाता। ली झाओहुआ झाओगुजी के पीछे आए और उनके कंधों की मालिश की। इस आरामदायक अनुभूति से झाओगुजी के शरीर में झुनझुनी होने लगी। झाओगुजी ने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दी। ली झाओहुआ की कमर बहुत मुलायम थी, किसी किशोरावस्था की महिला जैसी, विशेषकर उसकी त्वचा जो नमी से चमक रही थी, गोरी और पारदर्शी, मानो उसे छूने से तोड़ा जा सकता था। लेकिन पुरुषों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला था ली झाओहुआ का चेहरा। उसके अहंकारी चेहरे ने झाओगुजी को उस दिन का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया जब वह चेहरा उसके सामने नरम पड़ जाएगा, यहां तक कि दया की भीख भी मांगेगा। झाओगुजी का हाथ ली झाओहुआ की पतली कमर से नीचे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ली झाओहुआ ने उसे पकड़ लिया। मैंने तुम्हें अभी तक एक इंच भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। ली झाओहुआ ने विषय बदल दिया, मेरे पास महत्वपूर्ण मामले हैं, मैं इसे पूरा करने के बाद तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, कैसा रहेगा? जैसे ही वह बोल रही थी, ली झाओहुआ ने झाओगुजी का हाथ लिया और उसकी मध्यमा उंगली के सिरे को चूमा। जब समय आएगा तो आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगी मैं वह करूंगा, ठीक है? चुंबकीय आवाज ने झाओगुजी को लगभग नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। बेशक वह जानता था कि वह उसे मजबूर नहीं कर सकता, अन्यथा ली झाओहुआ उसे एक ही हथेली के वार से मार सकता था। तो फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। झाओगुजी ने चतुराई से राजकुमारी के महल को छोड़ दिया। ली झाओहुआ ने राहत की सांस ली, क्योंकि न केवल झाओगुजी बल्कि वह खुद भी बहुत गर्म महसूस कर रही थी। बुरे आदमी, मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि आपके आसपास महिलाएं कुछ ज्यादा ही हैं। ली झाओहुआ ने एक फॉर्म फिटिंग आउटफिट पहन लिया और स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। वह अपनी फिगर को और भी अधिक परफेक्ट और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती थी। इस बीच दूसरी तरफ लॉन्ग जान के कपड़े अधिकतर फटे हुए थे और उसके अपने चिपचिपे खून से भीगे हुए थे। उनके सरकारी लबादे पर खून का रंग काला दिख रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उस समय उनका मूड था। शाही अध्ययन कक्ष में छिपी क्रूरता और आक्रोश अंततः अब छिपा नहीं रह गया था। हवा के विपरीत दिशा में सवारी करते हुए हवा में एक मीठी धातु जैसी गंध घुल गई थी। उसने अपने मुंह से बहते खून को पोंछा। आज की नफरत का उसे बदला लेना होगा। ली ज़ेयुआन झाओगुजी, वह निश्चित रूप से हिसाब बराबर कर लेगा। अतीत में वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता था, लेकिन अब ज़ियाओ की शिविर द्वारा अपना चेहरा साफ करने के बाद वह अपने कपड़े बदल लेता और हवेली में वापस आ जाता। लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह घावों और टूटे हुए टुकड़ों से लदा हुआ अपना शरीर लेकर अपने घर लौट आया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, नौकर सभी कांपने लगे, आगे बढ़ने से डरने लगे। हर कोई देख सकता था कि आज लॉन्ग जान की हालत बेहद खराब थी और वह शायद अपने दिल में एक भयानक आग दबाए हुए था। कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? जियांग ली का शरीर तलवार की तरह था, उसके हाथ में तलवार की पुस्तिका थी। उसने अपने कुछ हद तक अनुपस्थित दिमाग वाले छोटे भाई की ओर देखा और वह अपनी पतली भौहों को सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। इस अवधि के दौरान लॉन्ग जान ने कई असफलताओं का अनुभव किया था, लेकिन उसने लॉन्ग जान को इस तरह कभी नहीं देखा था, जैसे कि वह खो गया था और अपने पूरे जीवन के बारे में संदेह से भरा था। झाओ फेयन छत पर बैठकर ताजे फल खा रही थी और उसने लॉन्ग जान की तरफ देखा, जो खून से लथपथ था। उसने फलों के छिलके लॉन्ग जान की तरफ फेंके। अरे जूनियर भाई, क्या हुआ? लॉन्ग जान की आंखें धुंधली थी और उसने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, झाओ फेयन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वर्तमान लॉन्ग जान ने उसे कई साल पहले की दोपहर दिखाई थी। लॉन्ग जान, जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ था, एक युवा की तरह हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरे संप्रदाय के शिष्यों के साथ लड़ाई में उसे बुरी तरह पीटा गया और आज की तरह खून से सना हुआ शरीर लेकर लौटा। उस लड़ाई में लॉन्ग जान ने मार्शल आर्ट में प्रवेश करने के दायरे का इस्तेमाल करते हुए 5-9वें रैंक के मार्शल कलाकारों के साथ जबरन लड़ाई की। 5 लोगों ने अकेले लॉन्ग जान को हराया। लॉन्ग जान ने पहले एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर अन्य चार लोगों के हमलों का विरोध करने के लिए एक भयंकर ऊर्जा पर भरोसा किया। अंत में लॉन्ग जान हार गया, लेकिन उस संप्रदाय के पांच लोग डर गए। कई सालों बाद वह और बड़ी बहन लॉन्ग जान को नीची नजर से देखने लगे। लॉन्ग जान की अपनी असफलताओं के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लॉन्ग जान में उस समय के युवक जैसी तीक्ष्णता और निर्दयता नहीं थी और उसमें अधिकारी वर्ग का पाखंड और अधिक चेहरा ज्यादा था। आज का लॉन्ग जान शांत था, उस लड़के की तरह जिसका उस दिन बड़े बच्चों से झगड़ा हुआ था। वह न रोया और न ही कोई उपद्रव किया, लेकिन उसका दिल पहले से ही अनिच्छा से भरा हुआ था। झाओ फेयन छज्जे से कूद गया, उसने लॉन्ग जान को घर में प्रवेश करते देखा और फिर देखा कि लॉन्ग जान अपने मालिक के सामने सीधे घुटने टेक रहा है। इस समय उस युवक की आकृति, जो अनिच्छुक था और प्रगति करना चाहता था, एक दूसरे के ऊपर आ रही थी। लॉन्ग जान की आवाज अतुलनीय दृढ़ता के साथ कांप उठी। गुरुजी, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मैं दाओ संप्रदाय के आठ द्वारों में प्रवेश करना चाहता हूँ। जियांगली का तलवार का मैनुअल पकड़े हाथ हिंसक रूप से कांप रहा था। लॉन्ग जान दाओ संप्रदाय के आठ द्वारों में प्रवेश करना चाहता था। क्या लॉन्ग जान पागल था? दाओ संप्रदाय के आठ द्वार वे स्थान हैं जिनमें दाओ संप्रदाय की विरासत समाहित है। वे प्राकृतिक खजाने नहीं हैं, न ही कोई विदेशी खजाना है। उनके अंदर केवल शक्ति है, शक्ति का निरंतर प्रवाह। इस निरंतर शक्ति प्रवाह के आधार पर ही दाओ संप्रदाय का निर्माण हुआ। आठ द्वार कब्र हैं। जो लोग आठ द्वारों में प्रवेश करते हैं और ऐसा करने के लिए किस्मत में होते हैं, वे शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एक कदम में आकाश तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी आठ द्वारों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अंदर ही फंस जाएंगे। यहां तक कि मौत के जाल में भी नहीं फंसे, बल्कि आठ द्वारों में प्रवेश कर गए और अंदर की अजीब शक्ति द्वारा निगल लिए गए। शी युहिंग ने इस अयोग्य शिष्य की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम अंदर ही अंदर मर जाओगे। गुरुजी, आपने कहा था कि आपके शिष्य की किस्मत अच्छी है। लॉन्ग जान ने जमीन पर सिर झुकाया। आपका शिष्य निश्चित रूप से अंदर नहीं मरेगा। तुम्हारे पास मजबूत बनने के कई तरीके हैं। शी युहिंग ने भौहें सिकोड़ी। वह नहीं चाहती थी कि लॉन्ग जान दाओ संप्रदाय के आठ द्वारों में कदम रखे। अगर लॉन्ग जान मर गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका शिष्य जानता है कि गुरु के पास आपके शिष्य को मजबूत बनाने के कई तरीके हैं। लॉन्ग जान की आंखें कांप उठी, उनमें से सभी दृढ़ थीं। लेकिन आपने कहा था कि जो लोग प्राचीन काल से महान उपलब्धियां हासिल करते आ रहे हैं, उनमें कड़ाही को तोड़ने और नाव को डुबोने तथा विपत्ति में पुनर्जन्म लेने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब आपके शिष्य को क्या बचा सकता है? यह कोई रास्ता नहीं है, बल्कि कोई रास्ता नहीं है। मैं हमेशा दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहता। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें गुरुजी। लॉन्ग जान ने फिर से जमीन पर सिर झुकाया, उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। शी युहिंग अपनी उंगलियां दबाता रहा। भाग्य का सितारा बदल गया, लेकिन लॉन्ग जान अभी भी किस्मत में था और यहां नहीं मरेगा। दाओ संप्रदाय के आठ द्वार मूल रूप से लॉन्ग जान के लिए सबसे खराब परिणाम थे जो उसने तैयार किए थे। अब जब लॉन्ग जान को कई असफलताएं झेलनी पड़ी हैं, तो उसकी आत्मा में उमंग भर गई है और उसने इसका उल्लेख करने की पहल की है। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। लॉन्ग जान को खुद को छोड़ने या अपने दिल में गांठ के साथ आगे बढ़ने देने के बजाय, लॉन्ग जान इस भाग्य के आदमी को इसे करने देना बेहतर है। मैं सहमत हूँ, शी युहिंग ने आह भरी। जियांग ली और झाओ फेयन ने भौहें सिकुड़ी और आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। झाओ बुजी, मुझे नहीं पता कि जूनियर ब्रदर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद दूं या आपसे नफरत करूं। आकाश में अंधेरा छाने लगा था और लॉन्ग जान को उसके मालिक की अनुमति मिल गई थी। वह मुड़ा और अंधेरे में चला गया। दाओ संप्रदाय के आठ द्वार, वह मरने के लिए पैदा हुआ था और तियान्यू के 13वें वर्ष के 10वें महीने के 15वें दिन की रात को उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कब्र में कदम रखा जहां दाओ संप्रदाय के आठ द्वार स्थित थे। कब्र का दरवाजा गहरा और एकांत था। उसने उत्तर की ओर देखा, उसकी मुस्कान शांतिपूर्ण थी लेकिन उसकी आंखें बेहद उदास थीं, जैसे रात में कब्र के चारों ओर भूतिया आग तैर रही हो। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, झाओ बुजी, ली ज़े युआन और हर कोई जो मुझे नीचे देखता है, लॉन्ग जान। इंपीरियल अध्ययन। ली ज़े युआन ने धीरे से अपना माथा रगड़ा और चिंतन में अपनी आंखें बंद कर ली। चेन झेंगहुआ चुपचाप पहरा दे रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने देखा था कि सम्राट की चिंताएं हर साल बढ़ती जा रही थीं। झेंगहुआ, ली ज़े युआन ने गहरी सांस ली। चेन झेंगहुआ ने तुरंत सिर झुकाया। ये बूढ़ा नौकर यहाँ है, ली ज़े युआन ने आह भरी। बताओ, युन रूई ने किसका अपमान किया? कोई उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? लॉन्ग जान ने पहले ही युन रूई के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया था और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था। हम्फ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युन रूई को नुकसान पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति वही होगा। चेन झेंगहुआ ने अपनी नजरें नीची कर ली, उसकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि सम्राट वास्तव में झाओ हुजियांग को दोषी ठहरा रहा था। सातवीं राजकुमारी ने किसी को नाराज नहीं किया था, लेकिन चूंकि उसने झाओ हुजियांग से शादी की थी, इसलिए वह गोलीबारी में फंस गई और उसे फंसा दिया गया। जाओ और क्यानलोंग गार्ड्स को सूचित करो, उन्हें शाही आदेश के अनुसार राजकुमार के भवन में जाने दो और युन रुई और हुजियांग की रक्षा करने दो। लीजा युआन की भौहें चिंता से भर गईं, एक चिंतित बूढ़े पिता की तरह। अगर कोई समस्या है तो तुरंत मुझे बताएं, मैं युन रुई और अन्य लोगों के लिए तुरंत खड़ा होऊंगा। हाँ, ये बूढ़ा नौकर आज्ञा का पालन करता है, चेन झेंगहुआ ने सिर झुकाया। इसके अलावा, लीजा युआन ने अपना माथा रगड़ा, इंपीरियल अस्पताल का मामला बहुत बड़ा हो गया है, युन रुई की गर्भावस्था अब और नहीं छिपाई जा सकती। आज रात के लिए भोज की तैयारी करो और शाही परिवार तथा नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों को सूचित करो। हाँ, चेन झेंगहुआ ने फिर से सिर झुकाया और बाहर जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए। सम्राट की सेवा करना बाघ की सेवा करने के समान है, उसने सम्राट के इरादों पर विचार किया। सम्राट के इरादों का सही अनुमान लगाकर ही वह मामलों को संभालते समय विवरणों को मजबूत कर सकता था और गलतियां करने से बच सकता था। नागरिक और सैन्य अधिकारियों और शाही परिवार को सूचित करते हुए सम्राट क्या करना चाह रहे थे? खुशखबरी बांटें। राजकुमार की हवेली। काले वस्त्र पहने 9 शक्तिशाली व्यक्ति, जिनके चेहरे काले मुखौटों से ढके हुए थे, राजकुमार के भवन के सामने खड़े थे। उत्तराधिकारी को सूचित करें कि आज से हम शाही रक्षकों को राजकुमार के भवन में गश्त करने तथा राजकुमारी और वहां मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा करने का आदेश दिया गया है। बूढ़े प्रबंधक झाओ मनफू ने काले वस्त्र पहने 9 लोगों को देखा, फिर आंखें मूंद कर काले वस्त्र पहने अग्रणी व्यक्ति द्वारा उठाए गए सुनहरे टोकन को ध्यान से देखा। उसने सलामी में अपनी मुट्ठी बांधी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें सभी लोग, मैं तुरंत हमारे राजकुमार को रिपोर्ट करूंगी। जैसे ही बूढ़ा प्रबंधक मुड़ा, काले कपड़े पहने 9 आदमी बिना इंतजार किए उसके पीछे चले गए। उसने बगल से देखा, उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, उसका स्वर और अधिक गंभीर हो गया। कृपया सभी प्रतीक्षा करें, काले वस्त्र पहने आदमी ने गहरी आवाज में कहा। सम्राट के निजी रक्षक के रूप में हम शाही शहर में कहीं भी गश्त कर सकते हैं। हम आपको सूचित कर रहे हैं, अनुमति नहीं मांग रहे हैं। हमें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह एक विशेष विशेषाधिकार है जो हमें स्वयं सम्राट द्वारा दिया गया है, पहले कार्य करने और बाद में रिपोर्ट करने की एक विशेष शाही अनुमति। जैसे ही ये शब्द निकले, राजकुमार के भवन की गहराई से तलवार की ऊर्जा का विस्फोट फूट पड़ा। काले वस्त्र पहने हुए अग्रणी व्यक्ति ने अपनी कृपाण निकाली और वार किया, गति सुचारू रूप से प्रवाहित हुई जिससे तलवार की ऊर्जा कट गई। लेकिन जब कृपाण अपने म्यान में वापस आई तो ब्लेड अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, जिससे पता चलता है कि राजकुमार के महल की गहराई से निकली तलवार की ऊर्जा असाधारण थी। यहां तक कि वह एक तीसरे दर्जे का मार्शल कलाकार बिना तैयारी के केवल मुश्किल से ही इसका सामना कर सकता था। अग्रणी काले वस्त्रधारी व्यक्ति 36 क्यानलांग गार्डों में से एक था, 36 सम्राट के निजी रक्षक 10वें स्थान पर थे, जिनका कोड नाम जियाशे था। अब वह क्यानलांग गार्ड्स की दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। अपनी तीसरी रैंक की ताकत के साथ उसने शुरू में सोचा था कि झेनबेई के राजकुमार के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद झेनबेई के राजकुमार के महल में सभी समस्याओं को रोकने के लिए यह पर्याप्त होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार के महल में अभी भी विशेषज्ञ मौजूद होंगे। जियाशे ने ध्यान से सामने देखा, एक लंबा और सीधा व्यक्ति धीरे धीरे इत्मीनान से और बेफिक्र होकर चला। चूंकि आप सम्राट के निजी रक्षक हैं, इसलिए राजकुमार के महल में गश्त करना ठीक है। यह आकृति झाओ हुजियांग थी। झाओ हुजियांग की मुस्कान मिलनसार थी, लेकिन डूबते सूरज की रोशनी में उसके गालों का ज्यादातर हिस्सा कोमल था, जबकि उसके चेहरे का बचा हुआ आधा हिस्सा सूरज की रोशनी के बिना एक अलग तरह की ठंडी और प्रभावशाली शक्ति प्रकट कर रहा था। लेकिन झाओ हुजियांग ने विषय बदल दिया। युरुई गर्भवती है, आराम करने के अलावा वह अनिवार्य रूप से इधर उधर घूमेगी। वह कुलीन परिवार से है, अगर वह राजकुमार के महल में तलवारें लिए नौकरों को देख लेगी और डर जाएगी। आप में से कौन इस जिम्मेदारी को उठा सकता है? सम्राट, सम्राट ने हमें बताया। जियाशे अवाक रह गई, जवाब देने में असमर्थ। सम्राट ने तुम्हें गश्त करने के लिए कहा था, झाओ हुजियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसने इन निजी सुरक्षाकर्मियों के आने से पहले ही लीजा युआन के इरादों का अनुमान लगा लिया था, जो सुरक्षा के नाम पर निगरानी से ज्यादा कुछ नहीं था। लीजा युआन को अभी भी संदेह था और उसका संदेह बढ़ता जा रहा था। उसने राजकुमार के महल पर भी नजर रखना शुरू कर दिया था। सम्राट ने हमें आप उत्तराधिकारी और राजकुमारी की रक्षा करने के लिए कहा है। जियाशे ने अपनी मुट्ठी बांध ली। ये सही है, झाओ हुजियांग मुस्कुराया। सुरक्षा ही उद्देश्य है, यही आपके कार्य का मूल है। गश्त बेहतर सुरक्षा के लिए है, उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है। उद्देश्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन साधन तो बदले जा सकते हैं। राजकुमार के महल में उसके अपने सैनिक हैं और मैं भी वहां हूं। हवेली के अंदर गश्त की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल राजकुमार के भवन के बाहर गश्त करनी है और मेरे और यून रुई के आदेश के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकना है। जिया शि चुप थी। झाओ बुजियांग ने जो कहा वह समझ में आया और उसने इसे बहुत अच्छी तरह से तोला था, बिना उसके लिए चीजों को बिल्कुल भी मुश्किल बनाए। उसी समय वह झाओ बुजियांग के शरीर पर हल्की तलवार ऊर्जा महसूस कर सकता था। तलवार ऊर्जा की ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हवेली की गहराई से पहले की तलवार ऊर्जा इस उत्तराधिकारी द्वारा निकाली गई थी। झाओ बुजियांग की अप्रत्याशित ताकत के कारण उसके लिए बल प्रयोग करना असंभव हो गया। वह सत्ता या प्रभाव पर भरोसा नहीं कर सकते थे और झाओ बुजियांग ने जो कहा वह उचित था। गहराई से सोचने के बाद उसने फिर से अपनी मुट्ठी बांध ली। जियाशी निश्चित रूप से राजकुमार के महल की रक्षा के लिए सम्राट के निजी रक्षकों का नेतृत्व करेगी और किसी को भी राजकुमार के महल में घुसने और उत्तराधिकारी और राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगी। जाओ जाओ, भविष्य में सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। झाओ बुजियांग ने हाथ हिलाते हुए प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मनफू, उन्हें इनाम दो। हाँ, बूढ़ा प्रबंधक जल्दी से चला गया और अपने हाथ में एक धन का थैला लेकर वापस आया, उसे नौकियानलोन गार्डों के हाथों में थमा देने के लिए तैयार। बिल्कुल नहीं, जियाशे ने गहरी आवाज में कहा और तुरंत मना कर दिया। महाराज, राजकुमार के भवन की रक्षा करना सम्राट का आदेश है, हमारा परम कर्तव्य है। सम्राट ने पहले ही पुरस्कार दे दिया है। झाओ बुजियांग ने मुस्कुराते हुए व्यक्तिगत रूप से पैसे का थैला जियाशे के हाथ में थमा दिया। सम्राट पुरस्कार और दंड के मामले में निष्पक्ष है और उससे पुरस्कार पाना तुम्हारा हक है। तुम्हें राजकुमार के महल की रक्षा करने का आदेश दिया गया है और यह भी उचित है कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि यह धनराशि बहुत कम है? या फिर आप चाहते हैं कि दूसरों को पता चले और वे मेरी पीठ पीछे गपशप करें कि झाओ बुजियांग को आपका संरक्षण प्राप्त था लेकिन वह आपको लाभ देने में अनिच्छुक था? महाराज, मेरा यह मतलब नहीं है। जियाशे एक पल के लिए घबरा गई, फिर जल्दी से समझाया। तो पैसे ले लो। झाओ बुजियांग ने जियाशे के हाथ में पैसे का थैला थमा दिया और दोनों हाथों से जियाशे की मुट्ठी पकड़ ली। सबका हिस्सा है, अगर तुम ही नहीं स्वीकारोगे तो बाकी भाई कैसे स्वीकार करेंगे? जियाशे ने पहले सुना था कि झाओ बुजियांग एक बदचलन और बेलगाम आदमी है जो पुरुषों को धमकाता है और महिलाओं पर हावी होता है, और अपनी शादी से थोड़ा पहले ही उसने खुद को संयमित किया था। लेकिन आज उसने जो देखा वह अप्रत्याशित था। झाओ बुजियांग शाही परिवार के किसी भी सदस्य की तुलना में लोगों से निपटने में बेहतर था, जिस पर उन्हें निगरानी रखने का आदेश दिया गया था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, हाँ धन्यवाद महाराज, भविष्य में सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। झाओ बुजियांग ने जियाशे के हाथ थपथपाए। जियाशे ने फिर से अपनी मुट्ठी बांधी और अन्य 8 कियानलोंग गार्डों को राजकुमार के भवन से दूर ले गया, फिर राजकुमार के भवन के चारों ओर फैल गया, अंधेरे में छिप गया और राजकुमार के भवन की शांति की रक्षा करने लगा। कियानलोंग गार्ड्स के चले जाने के बाद झाओ बुजियांग की आंखें और अधिक गहरी हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। अब 15 अक्टूबर था और ली ज़ायुआन की कमजोरी का दौर नजदीक आता जा रहा था। उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। झाओ बुजियांग, ली ज़ायुआन का संदेह और भी गहरा होता जा रहा था। सबसे पहले उसने राजकुमार के महल की निगरानी के लिए कियानलोंग गार्ड्स की व्यवस्था की और फिर आज रात का भोज रखा। वह अभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया था कि भोज का आयोजन करने में ली ज़ायुआन का इरादा क्या था, केवल कुछ अनिश्चित अनुमान ही थे। वह ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर वह ज्यादा सोचता तो उसकी ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती। जैसे जैसे गोधूली का अंतिम क्षण धुंधलाता गया। गूगल खोज TWKAN। झाओ बुजियांग और ली यूनरुई गाड़ी से नीचे उतरे और चमकते हुए हॉल में प्रवेश किया। हॉल में शोरगुल मच गया था, शाही रिश्तेदार और दरबारी अधिकारी वहां मौजूद थे। उनके आगमन से तुरंत ही लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई तथा अनेक दरबारी और शाही रिश्तेदार बधाई देने के लिए उनके पास आए। महामहिम और राजकुमारी, आपके सच्चे प्यार और आपके प्रिय बच्चे के शीघ्र आगमन के लिए बधाई। यूनरुई, मुझे पता नहीं था कि तुम गर्भवती हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने बताया होता तो तुम्हारी बहन ने आज इतनी जल्दी करने के बजाय पहले से ही उपहार तैयार कर रखा होता। महाराज, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, आज आपने राजकुमारी के लिए शाही बलिदान के दरबार में इतनी हलचल मचा दी। एक सच्चे इंसान राजकुमारी के लिए महामहिम की सजा सहने के लिए तैयार रहना, ऐसी भक्ति सराहनीय है। आपका महाराज नमस्कार। महामहिम, बधाया अंतहीन थी, लेकिन भीड़ तुरंत ही अलग हो गई क्योंकि खूबानी पीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आया, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग सम्मान में झुक गए। युनरुई गुजियांग, क्राउन प्रिंस ली युचेन, जिनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, आगे बढ़े और झाओ गुजियांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झुक गए, उसे गले लगा लिया, फिर धीरे से ली युनरुई को गले लगा लिया। मैं तो बस ये कह रही थी कि शादी के दिन गुजियांग ने मेरे साथ कितने प्याले शराब पी थी, उसके बाद वह जल्दी से चला गया। शायद उसकी बहन युनरुई उसे बुला रही थी। भीड़ हंसने लगी और माहौल जीवंत हो गया। झाओ गुजियांग ने इस चिढ़ाने पर मुस्कुराया और ली युनरुई के गाल लाल हो गए और उसने अपने बड़े भाई क्राउन प्रिंस को एक हल्का मुक्का मारा। झाओ गुजियांग को पता था कि क्राउन प्रिंस ली युचेन अपने कामों में स्थिर, दयालु और उदार थे, कुछ हद तक विद्वान भी थे और दरबार में और शाही रिश्तेदारों में से कई लोग उन्हें पसंद करते थे। उनमें कोई खास खामी नहीं थी। एकमात्र समस्या ये थी कि ली युचेन का एक बेटा था जो अब 7 या 8 साल का था, जो काफी शरारती था। ली युचेन के विद्वान स्वभाव के कारण उसके लिए अपने इकलौते बेटे को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। हालांकि शरारत के मामले में ली युचेन के बेटे की प्रतिष्ठा बहुत खराब नहीं थी। आखिरकार जब बात राजधानी में सबसे अधिक अड़ियल डैंडी की आई तो वह संभवतः पूर्व झाओ गुजियांग ही होगा। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। ली युनरुई भी एक सुनहरा रेशमी मुलायम कवच पकड़े हुए भीड़ को धकेलते हुए और क्राउन प्रिंस की ओर देखते हुए पहुंचे। ओह भाई, तुम भी यहाँ हो। वैसे युनरुई, आओ और देखो कि क्या आकार सही है। ली युनरुई ने सुनहरे रेशमी मुलायम कवच को खोला, उसे मापा, सिर हिलाया और फिर उसे ली युनरुई को सौंप दिया। भविष्य में जब भी बाहर जाओ तो इसे पहनकर जाना। झाओ गुजियांग की अभिव्यक्ति दयालु थी और उसने ली युनी की ओर सिर हिलाया। अन्य लोगों के चेहरे पर विभिन्न भाव थे, कुछ ईर्ष्यालु, कुछ ठंडे और कुछ गंभीर। ये छठा राजकुमार ली युनरुई वास्तव में बहुत ही कठोर था, वह खुलेआम सभी से रक्षा करता था। लेकिन ली युनरुई के व्यवहार से कोई भी हैरान नहीं था। इंपीरियल अस्पताल में हुई घटना पहले ही पूरी राजधानी में फैल चुकी थी और ली युनरुई पर किसी गुप्त इरादे वाले व्यक्ति द्वारा निशाना बनाए जाने का संदेह था। शाही शहर में हर कोई जानता था कि छठे राजकुमार ली युनरुई अपनी बहन ली युनरुई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब सबके सामने ये कदम उठाना उचित माना गया। भोज शुरू होने वाला है, सभी को अपनी जगह पर बैठ जाना चाहिए। ली युचेन ने भी एक टोकन निकाला और झाओ गुजियांग को सौंप दिया। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये ईस्ट पैलेस से एक टोकन है। अगर तुम किसी भी स्थिति का सामना करते हो और तुम्हें जनशक्ति की जरूरत होती है तो बस इस टोकन को पकड़ो और ईस्ट पैलेस में आ जाओ। धन्यवाद भाई युचेन। झाओ गुजियांग जानता था कि ली युचेन हमेशा मितव्ययी था, लेकिन मूल कार्य में उसका वर्णन शायद ही कभी किया गया था। लगभग 20 वर्षों तक क्राउन प्रिंस रहने के बाद लॉन्ग झान के सिंहासन पर बैठने से पहले ही वह सिंहासन पर चढ़ गया था। उन्होंने टोकन लेने से मना कर दिया। मैं आपके विचार की सराहना करता हूँ, धन्यवाद। पिताजी ने वांग निवास की सुरक्षा के लिए शाही रक्षकों की व्यवस्था की है, ली युनरुई ने गंभीरता से कहा। ली युचेन थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया, असहाय रूप से टोकन वापस ले लिया, झाओ गुजियांग को देखा और ली युनरुई को देखकर मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि पिताजी तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ, ली युनरुई ने बीच में कहा। सभी अपनी सीट पर बैठ जाएं। रुको, मेरी सीट वहां क्यों है? नहीं, मुझे युनरुई और गुजियांग के बगल में बैठना है। ली युनरुई ने अपनी सीट से नेम प्लेट उठाई और उसे झाओ गुजियांग के बगल में छोटी मेज पर रखी नेम प्लेट से बदल दिया, फिर बेपरवाह होकर बैठ गया। झाओ गुजियांग ने ली युचेन की ओर हाथ बढ़ाया और ली युनरुई को उनकी सीटों तक ले गया। ली युनरुई ने युवराज की ओर हाथ हिलाया और उत्सुकता से पूछा, भैया क्या छोटा लिंग नहीं आया? वह यहाँ है, ली युचेन मुस्कुराए। यांग र फिर से शरारती हो रही है, तुम्हारा छोटा लिंग यांग र को सबक सिखा रहा है। ठीक है, ली युनरुई ने झाओ गुजियांग का बारीकी से अनुसरण करते हुए ली युचेन को अलविदा कहते हुए सिर हिलाया। क्राउन प्रिंस के रूप में ली युचेन की सीट बहुत आगे थी। वह और झाओ गुजियांग राजकुमारी और पत्नी के रूप में अपने भाई क्राउन प्रिंस से थोड़ी दूर थी। उसका भतीजा ली मुयांग वास्तव में बहुत शरारती था, भोज शुरू होने पर भी वह परेशानी खड़ी कर रहा था। आओ बैठो, बैठो, ली युनरुई ने झाओ गुजियांग को एक नरम तकिया दिया और झाओ गुजियांग को संकेत दिया कि वह अपनी बहन के आराम से बैठने के लिए एक और तकिया रख दे। झाओ गुजियांग ने इसे ली युनरुई को सौंप दिया, उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। ली युनरुई को अतिरिक्त कुशन कहां से मिला? चचेरे भाई क्या हुआ? क्या तुम्हारी आंखें असहज हैं? ली युनरुई ने देखा कि उसके दूसरी तरफ शाही परिवार की एक महिला रिश्तेदार उसे तिरछी नजर से देख रही थी। उसने उलझन में पूछा। शाही परिवार की इस महिला रिश्तेदार ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी खाली सीट थपथपाई, उसका मतलब स्पष्ट था। आप क्या सोचते हैं? ली युनरुई ने धीरे से खांसते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। जब तक वह ये दिखावा करता रहेगा कि उसने नहीं देखा, उसका चचेरा भाई उसे दोष नहीं देगा। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और झाओ बुजियांग और ली युनरुई से कहा, झाओ बुजियांग, युनरुई, क्या तुम जानते हो, मैंने महारानी से सुना है कि आज रात एक बहुत ही असाधारण व्यंजन बनने वाला है। महारानी ने मुझे इसे खाने पर ध्यान देने का निर्देश दिया है और विशेष रूप से मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है। इसे खाने पर ध्यान दो। झाओ बुजियांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। महारानी ने विशेष रूप से निर्देश दिया, ये कौन सा व्यंजन हो सकता है? क्या इसमें जहर है? क्या कोई फिर से ड्रग्स के साथ युनरुई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? क्या कुछ और है? झाओ बुजियांग ने पूछा। हम, ली युनरुई ने एक पल सोचा और झाओ बुजियांग के कान में फुसफुसाया। मैंने पहले ही पवित्र ड्रैगन कौशल से ड्रैगन धारणा सीख लिया है। मैं अन्य कौशल सीखने के लिए किसी अन्य दिन आपके पास आऊंगा। झाओ बुजियांग ने सिर हिलाया। उसे आज रात के भोज की ज्यादा चिंता थी। उसे हमेशा लगता था कि ली ज़ायुआन के इरादे कुछ और ही हैं। भोज हॉल में पहुंचने के बाद से ही वह सभी पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं दिखा था। सम्राट आ गए हैं, तीखी आवाज के साथ ली ज़ायुआन हॉल में दाखिल हुआ। नमस्कार महाराज, सभी लोग खड़े हो गए और झुककर प्रणाम किया। आप उठ सकते हैं। ली ज़ायुआन महारानी के साथ मुख्य सीट पर बैठ गया, जिसकी सीढ़ियां बाकी सभी की तुलना में 3 मंजिल ऊंची थी। उसने भीड़ की ओर देखा। मैं आज की घटनाओं से बहुत क्रोधित हूँ। सब चुप हो गए। बादशाह तो शुरू से ही नाराज था। वे इस भोज को शांति से कैसे खा सकते थे? लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ। ली ज़ायुआन ने अपना स्वर बदला। यदि युनरुई और बुजियांग ने बारीकी से ध्यान नहीं दिया होता, तो युनरुई को विश्वासघाती लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया होता। झाओ बुजियांग ने भौहें सिकोड़ी। ली ज़ायुआन ने उनके और ली युनरुई के शाही बलिदान दरबार में हलचल मचाने का जिक्र नहीं किया, बल्कि सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की, जो कि दुर्लभ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ली ज़ायुआन को वाकई इस बच्चे की परवाह थी जो पैदा होने वाला था? क्या वह दयालु हो गया था? और क्या वह उसे, इस दामाद को स्वीकार करने लगा था? सौभाग्य से हमारे पूर्वज हमारी रक्षा कर रहे हैं। ली ज़ायुआन ने भीड़ की ओर देखा, उनके भावों पर नजर डाली। उसने आगे कहा, युनरुई मेरी बेटी है। जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने की हिम्मत करता है, मैं उसे कभी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने छिपे हुए इरादों का पता न चलने दो। सभी लोग और भी अधिक चुप हो गए तथा कई लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया तथा अपनी आंखें चुराने लगे। इस भोज का उद्देश्य मेरे युनरुई से तुच्छ लोगों की लालच को दूर करना है। ली ज़ायुआन की नज़र कुछ समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर टिकी रही, जैसे कि किसी को चेतावनी दे रही हो। उसने कहा, मैं अजन्मे बच्चे की खातिर ज्यादा उदार होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कम क्षमाशील भी रहूंगी। बस भोज शुरू हो जाए, जी भर कर पियो। धन्यवाद महाराज, सभी ने एक स्वर में कहा। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। झाओ बुजियांग का मूड तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उसने हॉल के बाहर एक दर्जन नौकरों को एक बड़ी मेज को हॉल में ले जाते और बीच में रखते नहीं देखा। बड़ी मेज पर एक हल्की सी आवाज हुई और उस पर एक नक्शा रखा था, जो मानो जैद से बना हो, लेकिन उससे मीठी सुगंध आ रही थी। मुझे याद है कि युनरुई को बचपन से ही पेस्ट्री बहुत पसंद थी और उसने उन्हें खाते खाते अपने दांत भी खराब कर लिए थे। ली ज़ायुआन भावुक होकर मुस्कुराया, मानो ली युनरुई के बचपन को याद कर रहा हो। उसकी आंखें दयालु थीं। मैंने एक बार उससे वादा किया था कि मैं उसे पहाड़ों और नदियों की यात्रा पर ले जाऊंगा, लेकिन महान जिया के लिए, आम लोगों की खातिर, मैं व्यस्त हूं और मेरे पास समय नहीं है। अपना वादा तोड़ रहा हूं। ये परिदृश्य पेंटिंग पूरी तरह से पेस्ट्री से बनी है। मेरे पास उसे पहाड़ों और नदियों की यात्रा पर ले जाने का कोई समय नहीं है, इसलिए मैं उसे केवल इस तरह से परिदृश्य के लिए अपना प्यार व्यक्त करने, महान जिया की महान नदियों और पहाड़ों का अनुभव करने और साथ ही पेस्ट्री की मिठास का स्वाद लेने, अपना जीवन मधुरता से बिताने दे सकता हूँ। भीड़ ने आश्चर्य से कहा, इतनी बड़ी मेज पर रखी सारी चीजें पेस्ट्री से बनी थीं। ये बहुत यथार्थवादी और सजीव था। क्या ये पहाड़ और नदियां ग्रेट जिया परिदृश्य का एक छोटा सा हिस्सा थे? भीड़ के बीच क्राउन प्रिंस ली युचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, फिर जल्दी से शांत हो गए, अपनी आंखें नीचे कर ली। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। समस्या को देखकर कई मंत्रियों की आंखें कांप उठीं और वे उस परिदृश्य पेंटिंग को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजकुमारी ली झाओहुआ ने मन ही मन कहा। उसे कुछ समझ में आ गया था। बहुत से लोगों ने इसे अस्पष्ट रूप से देखा। ये लैंडस्केप पेंटिंग या एक लैंडस्केप पेंटिंग कहाँ थी? ये स्पष्ट रूप से ग्रेट जिया का एक लघु मानचित्र था, जिसे पेस्ट्री शेफ द्वारा सरलता से तैयार किया गया था। ये जियांगशान था। क्या सम्राट जियांगशान को ली युनरुई को सौंपने जा रहा था? झाओ बुजियांग को, युनरुई, पिता सम्राट द्वारा तुम्हें ये सब दिए जाने के बारे में तुम क्या सोचती हो? ली ज़ायुआन ने ली युनरुई की ओर देखा। ये सुनकर कई लोग बेचैन हो गए। झाओ गुजी ने धीरे से ली यूनरुई की जांघ को दबाया और ली यूनरुई ने अपना सिर हिलाया, मुंह बनाते हुए और नखरे दिखाते हुए। पिता सम्राट, मैं ये सब कैसे खा सकता हूँ? यह एक भोज है, इसे सभी के लिए बांटकर खाना बेहतर है। लीजा युआन मुस्कुराया, उसकी आंखें गहरी थीं, वह सबकी ओर देख रहा था। सम्माननीय मंत्रीगण, क्या मैं इसे आप लोगों में बांट दूं? बहुत से लोग चुप रहे, उनकी आंखें लीजा युआन से मिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जबकि कई अन्य लोगों को कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। क्या ये पेस्ट्री से बना एक लैंडस्केप पेंटिंग नहीं था? चूंकि सातवीं राजकुमारी इसे पूरा नहीं कर सकी, इसलिए हर कोई इसे साझा कर सकता था, जिससे एक खुशनुमा माहौल बन सकता था, इसमें क्या गलत है? हालांकि, जिन लोगों ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह लैंडस्केप पेंटिंग ग्रेट ज़िया मानचित्र का एक लघु संस्करण है, उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। क्या सम्राट उनकी वफादारी का परीक्षण कर रहा था? देश को आपस में बांटकर कौन सम्राट का देश लेने की हिम्मत करेगा? धन्यवाद पिता सम्राट, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई खड़ा हो गया। झाओ गुजी ने खड़े होकर सबको चौंका दिया। आज कोई भी खड़ा हो सकता था, लेकिन वह आप नहीं हो सकते झाओ गुजी। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ गुजी, आपको पहले यह एहसास नहीं हुआ कि सम्राट किसी न किसी तरह से आपको निशाना बना रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झाओ गुजी ने पहले अपनी मुट्ठी बंद की, फिर युनरुई के पास पूछताछ करने के लिए नीचे झुका। ली युनरुई ने बड़ी मेज पर एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया। झाओ गुजी सीधे आगे बढ़े, एक काटने वाला चाकू उठाया, परिदृश्य की ओर इशारा किया और ली युनरुई की स्वीकृति प्राप्त करते ही बिना शर्माए या बिना रुके उन्होंने सीधे एक टुकड़ा काट दिया। फिर उसने बेपरवाही से एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसे चखा। उनका हर कदम सबकी उम्मीदों से परे था। फिर उसने खुलेआम पेस्ट्री का बचा हुआ बड़ा हिस्सा ले लिया, अपनी सीट पर वापस आया, उसे ली युनरुई को सौंप दिया और धीरे से मुस्कुराया। ली युनरुई ने पेस्ट्री का स्वाद चखा, उसके दिल में मिठास भर गई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और वह मीठी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, धन्यवाद पिता सम्राट। ली ज़ायुआन के विचार उमड़ पड़े। झाओ गुजी बहुत अप्रत्याशित था, वह उसका असली इरादा समझने वाला पहला व्यक्ति था। उसका असली इरादा केवल एक ही था, चूंकि उसे लगा कि वह गिरावट के दौर में प्रवेश कर रहा है, इसलिए वह पहले से ही हर किसी की वफादारी का परीक्षण करना चाहता था। जो लोग तुरंत पहचान गए कि यह महान ज़िया के क्षेत्र का एक लघु संस्करण था, उनमें से अधिकांश के इरादे गुप्त थे, क्योंकि आम लोग इसे पहचान नहीं सकते थे। अगर आप विद्रोह नहीं करते तो आप इलाके को क्यों नापेंगे? अगर आप इलाके को नहीं नापते तो आप ग्रेट ज़िया के नक्शे को कैसे जान पाएंगे? वह विशिष्ट क्षेत्र क्या है, आपको कैसे पता चला? या शायद झाओ गुजी को अपने असली इरादे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, लेकिन वह इतना वफादार और ईमानदार था कि वह इतना खुला और ईमानदार था कि उसने देश के बजाय अपने द्वारा तैयार किए गए परिदृश्य चित्रकला का स्वाद चखा। ये पहली बार था जब वह झाओ गुजी पर इतने लंबे समय से शक कर रहा था, झाओ गुजी के हर कदम से हैरान था। ये झाओ गुजी द्वारा उठाए गए किसी भी पिछले अप्रत्याशित कदम से भी अधिक अप्रत्याशित था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पिछली शंकाएं निरर्थक थी? उसने झाओ गुजी और युनरुई के सामंजस्यपूर्ण और दिल को छू लेने वाले रूप को देखा और पहली बार खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें जटिल थीं और उसने झाओ गुजी को गहराई से देखा। इस बीच हॉल में चर्चा शुरू हो गई, कुछ लोगों को धीरे धीरे इसका निहितार्थ समझ में आया, जबकि अन्य लोगों को समस्या का पता ही नहीं चला। जितने अधिक लोगों को इसका निहितार्थ समझ में आया, वे झाओ गुजी के कार्यों से उतने ही अधिक स्तब्ध हुए। झाओ गुजी द्वारा उठाया गया हर कदम बिल्कुल सही था, चाहे झाओ गुजी ने देखा हो कि पेस्ट्री देश का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं, हर कदम एक सुरक्षित दांव था। सबसे पहले सम्राट को धन्यवाद दिया, फिर धीरे से ली युनरुई के बारे में पूछताछ की और फिर ली युनरुई के सुझाव पर देश का एक टुकड़ा काटकर पहले उसे चखा, जैसे कि वह ली युनरुई के लिए जहर का परीक्षण कर रहा हो, और फिर उसे ली युनरुई को खाने के लिए दे दिया। ये ली युनरुई के प्रति खुला और स्पष्ट स्नेह था, जिसमें कोई छिपाव नहीं था और कोई भी इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था। हर कदम को दूसरे नजरिए से भी समझाया जा सकता है कि झाओ गुजी काफी खुले थे। सम्राट ने मुझे खाने के लिए कहा, इसलिए मैंने खाया, चाहे वह देश था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। मैं काफी वफादार था और मुझ पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं था। यदि सब कुछ तीसरे दृष्टिकोण से समझाया जाता तो झाओ गुजी की योजनाएं कितनी गहरी होती कि वे ये सब समझ पाते और बिना किसी दोष के इसे संभाल पाते। ली झाओ हुआ ने झाओ गुजी को शून्य भाव से देखा। झाओ गुजी के लिए उसकी प्रशंसा अवर्णनीय स्तर पर पहुंच गई थी। झाओ गुजियांग ने नेतृत्व करते हुए भोज की शुरुआत की। अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया, पेस्ट्री का स्वाद लिया और ली ज़ायुआन के प्रति कृतज्ञता में झुके। जो लोग जानते थे कि पहाड़ों और नदियों को दर्शाने वाली पेस्ट्री वास्तव में साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने असामान्यता का थोड़ा सा भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि धैर्य का दिखावा किया। लीजा युआन अपने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए भीड़ का निरीक्षण कर रहे थे तथा प्रत्येक व्यक्ति के हाव भाव को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका पतन निकट है और यह भोज हर किसी के इरादों को परखने तथा गुप्त इरादों वाले लोगों की पहचान करने का एक अच्छा अवसर था। गूगल खोज TWKAN। फिर उन्हें ऐसे इरादे रखने वालों से सावधान रहना होगा। जैसे ही मेहमानों ने पेस्ट्री का स्वाद चखा, माहौल शांत हो गया और धीरे धीरे जीवंत हो गया। शाही परिवार के कई सदस्यों और नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने सम्राट के लिए टोस्ट बनाया और उनकी चापलूसी की। इसके बाद उन्होंने झाओ गुजियांग और ली युनरुई को टोस्ट किया, उन्हें बधाई दी और उनके द्वारा तैयार किए गए उपहार भेंट किए। कुछ ही देर में झाओ गुजियांग और ली युनरुई उपहारों के ढेर से घिर गए। माहौल में गर्मजोशी बढ़ती गई और ली युनरुई के शाही भाई बहन भी धीरे धीरे एकत्रित हो गए और अपने अनुभवों के आधार पर ली युनरुई को गर्भावस्था के दौरान किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इस बारे में अपनी चिंता और सलाह देने लगे। झाओ गुजियांग को भी मार्गदर्शन दिया गया और उसने असहाय भाव से सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सभी ने हंसते हुए जीवंत माहौल का आनंद लिया। लीजा युआन ये सब देख रहा था, उसका मूड लगातार जटिल होता जा रहा था। वह जो कर रहा था, क्या वह सही था या गलत? इस बीच भोज कक्ष के एक कोने में लगभग 7 या 8 साल का एक बच्चा लगातार उसे दी गई पेस्ट्री को गूंथ रहा था और अपने चिपचिपे हाथों से पूरी मेज को फैला रहा था। क्राउन प्रिंस की पत्नी ने बच्चे के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। यांग ए, क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम्हारी चाची के गर्भ में छोटा भाई है या छोटी बहन? आंटी को यांग ए रब पसंद नहीं आएगी। लीमुयांग ने भौहें सिकुड़ी, उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। आपको ये किसने बताया? लीमुयांग के पीछे खड़ा व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हारी चाची अब तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती? तुम बस थोड़ी शरारती हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है यांग ए। दादा सम्राट को अब यांग ए पसंद नहीं है, लीमुयांग ने भोलेपन से गंभीर भाव से कहा। अगर अन्य छोटे भाई बहन हैं तो दादा सम्राट यांग र को पसंद नहीं करेंगे। अब चूंकि आंटी के भी एक भाई है तो वह भविष्य में भी यांग र को पसंद नहीं करेंगी। जाओ और अपनी चाची को बधाई दो, जल्दी से चलो, अच्छे बनो। लीमुयांग के पीछे क्राउन प्रिंस ली यूचेन ने अपने बेटे के बालों को बिखेरा। ओह, लीमुयांग ने अनिच्छा से जवाब दिया, उपहार लिया और अपनी चाची और चाचा की ओर चल दिया। ली युचेन ने अपने बेटे को ली युनरुई और झाओ गुजियांग की ओर दौड़ते हुए देखा, उसका चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ था। आंटी, लीमुयांग भीड़ में घुसना चाहता था, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह वयस्कों के बीच फंसकर किसी भी तरह भीड़ में घुस नहीं सकता था। लेकिन भीड़ में उसके एक शाही चाचा या कुल के चाचा ने उसे जोर से धक्का दिया, उसे उसकी चाची ली युनरुई की ओर इतनी जोर से धकेला कि वह खुद को रोक नहीं सका। वह लड़खड़ा गया, स्थिर नहीं रह सका और उसका सिर अनियंत्रित होकर सीधे उसकी चाची के पेट में जा लगा। ड्रैगन बैटल मैनर। लॉन्ग जान ने राजधानी में अपने निवास को पीछे छोड़ते हुए दाओ संप्रदाय के 8 द्वारों में प्रवेश किया था, जो अब दाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक अस्थायी विश्राम स्थल बन गया था। शियुहिंग को खबर मिली कि झाओ गुजियांग और ली युनरुई भोज में शामिल होने गए हैं और ली युनरुई इस भोज के लिए ली जायुआन द्वारा नामित नायक भी थे। वे दोनों फिलहाल राजकुमार के महल में वापस नहीं आएंगे, यह उसके लिए ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर था। झाओ गुजियांग के भोज में भाग लेने के लिए संभवतः विशेषज्ञों को साथ लाना होगा, विशेष रूप से ली युनरुई की सुरक्षा करने वाले 3 विशेषज्ञों को। उस स्थिति में उत्तरी गैरिसन के राजा के राजकुमार के भवन में न होने तथा 3 विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में उसके पालक माता पिता की सुरक्षा करने वाले केवल 7 प्रतिभाशाली दासियां तथा राजकुमार के भवन के सैनिक और उसके 3 साधारण शिष्य थे। राजकुमार के भवन के वर्तमान कार्मिक विन्यास को देखते हुए उसे रोकना असंभव था। यह उसके लिए अपने पालक माता पिता को सुरक्षित रूप से वापस पाने का अवसर था। फियान ज़ियाओली, चलो। राजकुमार के भवन में शी युहिंग ने जल्दी से निर्णय लिया और अपने 2 शिष्यों के साथ चल पड़ी। जब तक वह अपने माता पिता को वापस पा लेगी, वह झाओ गुजियांग के नियंत्रण में नहीं रहेगी। शी युहिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चूंकि वह स्थिति का फायदा उठा रही थी, इसलिए वह बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकती थी। हालांकि जब वह राजकुमार के भवन से 50 कदम की दूरी पर पहुंची तो काले कपड़े पहने एक व्यक्ति काला मुखौटा पहनकर उसके सामने रुका। मार्शल आर्टिस्ट, रुकें, आगे राजकुमार का महल है, क्या आप तीनों के पास पास है? शी युहिंग ने भौहें सिकोड़ी। ये काले वस्त्र वाला व्यक्ति कहां से आया? भूल जाओ, कोई बात नहीं, पहले उसे मार दो। 3रे दर्जे के मार्शल कलाकार की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसका रास्ता रोके? उसकी शक्तिशाली आभा बाहर निकल गई और उसके भीतर की शक्ति उमड़ पड़ी, अवरोधक को दबाने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही पल उसी पोशाक में 8 और काले वस्त्रधारी आकृतियां सभी दिशाओं से प्रकट हुईं और उसे और उसके 2 शिष्यों को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत भी मुझे रोकने की? शियुहिंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे इन 9 काले वस्त्र पहने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन इन 9 लोगों की खड़ी स्थिति बहुत खास थी, एक संरचना की तरह। अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो वह कुछ समय के लिए उन्हें नीचे नहीं गिरा पाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह इन 9 लोगों को एक पल में नहीं मार पाती तो वह राजकुमार के महल में मौजूद सैनिकों और विशेषज्ञों को सचेत कर सकती थी। अगर वे उसके पालक माता पिता को छिपा देते तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती। उसे उम्मीद नहीं थी कि भले ही उत्तरी गैरिसन के राजा राजधानी छोड़ चुके थे, झाओबुजियांग ने किसी तरह राजकुमार के महल की बाहरी परिधि की रक्षा के लिए 9 विशेषज्ञों को ढूंढ लिया था। अंदर और बाहर विशेषज्ञ थे। क्या तुम तीनों के पास पास हैं? क्यानलोंग गार्ड की आवाज अभी भी बर्फीली थी। इस अजीब महिला ने उन्हें बहुत खतरा महसूस कराया, लेकिन ये राजधानी थी। तो क्या हुआ अगर यह महिला प्रथम श्रेणी की मास्टर थी? क्या हुआ अगर वह ग्रैंड मास्टर थी? क्या कोई ग्रैंड मास्टर हजारों कवचों को तोड़ सकता है? राजधानी में बहुत सारे मौत के योद्धा हैं। मानव शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और वे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को हराने से नहीं डरते। बस एक क्षण में सैनिक इस जगह को घेर लेंगे। शी यूहिंग ने अपनी लंबी आस्तीनें उतारी, ठंडे चेहरे के साथ मुड़ी और चली गई। मास्टर, अब हम क्या करें? झाओ फेयन ने धीमी आवाज में पूछा। रुको, शी यूहिंग की आंखें ठंडी हो गईं। राजकुमार के भवन के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा है, लेकिन झाओ बुजियांग कितने विशेषज्ञों को भोज में ले जा सकता है? जब वह वापस आएगा तो यह उसकी हार का समय होगा। अगर हम उसे मारने जा रहे हैं तो हम उसे अचानक पकड़ लेंगे। उसी समय शाही महल के भोज में शाही पोते ली मुयांग ने सातवीं राजकुमारी ली युनरुई के पेट में जोरदार टक्कर मारी। ये दृश्य अचंभित करने वाला था और छोटी मेज पर रखे कप और तश्तरियां जमीन पर गिर गईं और दृश्य में अराजकता फैल गई। युरुई, क्या तुम ठीक हो? युरुई, ली मुयांग, तुमने फिर ऐसा कर दिया। युरुई, ली युनरुई के कबीले के लोग लगातार आ रहे थे, उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई थी। झाओ बुजियांग ने ली मुयांग के माथे पर अपनी हथेली दबाई, उसकी आंखें कोमल थीं, लेकिन उसका दिल अतुलनीय रूप से ठंडा था। उसने धीरे से ली मुयांग को दूर धकेल दिया। ली मुयांग को होश आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने शाही चाचा और कबीले के चाचाओं की तरफ देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि उसे किसने धक्का दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने आंसू पोंछते हुए हताश भाव से कहने लगा, चाची, यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। झाओ बुजियांग पहले से ही तेज तर्रार था और जिस क्षण ली मुयांग नीचे गिरा उसके बड़े हाथ ने पहले ही ली युनरुई को ढाल दिया था तथा ली मुयांग के भारी प्रहार को रोक दिया था। स्पष्ट रूप से कहें तो शुरू से ही वह हर किसी और सभी संभावित आपात स्थितियों के प्रति सतर्क रहे थे। भोज शुरू होने से पहले ही उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बता दिया था कि यह भोज शांतिपूर्ण नहीं होगा। ये ठीक है, ली युनरुई ने ली मुयांग को सांत्वना दी। वह चौंकी नहीं। अगर झाओ बुजियांग ने उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह खुद मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सातवें या लगभग छठे स्थान पर होती और ली मुयांग की दुर्घटना पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती। बात बस इतनी सी थी कि झाओ बुजियांग ने उसे पहले ही निर्देश दे दिया था कि जब तक बहुत जरूरी न हो वह अपनी ताकत दूसरों को न बताए। ली मुयांग, हमेशा शरारती रहना एक बात है, आज तो तुमने लगभग तबाही मचा दी। शाही परिवार के एक क्रोधित सदस्य ने ली मुयांग को गुस्से से डांटा। यहां हुए हंगामे ने जल्दी ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लिया और सभी को ली मुयांग की शरारत के बारे में पता चला और कैसे वह लगभग ली युनरुई से टकरा गया था। ली ज़ायुआन गुस्से में था और ड्रैगन और बाघ की तरह शानदार चाल से आगे बढ़ा। उसने सुरक्षित ली युनरुई को देखा, फिर रोते हुए परपोते ली मुयांग को देखा। ये यांग एयर की गलती नहीं थी, यांग एयर ने ये जानबूझ कर नहीं किया था, ली युनरुई ने अपने शाही पिता को समझाते हुए विनम्रतापूर्वक कहा। ली मुयांग की आक्रामक हरकतें ऐसी थीं जैसे उन्हें ठोकर मार दी गई हो या जबरदस्ती धक्का दिया गया हो। झाओ बुजियांग ने ली मुयांग के लिए कुछ नहीं कहा। तार्किक रूप से वह ये भी देख सकता था कि ली मुयांग ने यह जानबूझकर नहीं किया था, किसी ने ली मुयांग को फंसाया था जबकि वह ली युनरुई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भावनात्मक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि ली ज़ायुआन ली मुयांग को दंडित करेगा, दूसरों को चेतावनी देगा और तुच्छ कार्यों को कम करेगा। यांग ए क्राउन प्रिंस ली युचेन भी भीड़ में घुस गए। उन्होंने ली ज़ायुआन को झुककर प्रणाम किया, अपने बेटे को समझाना चाहते थे। पिताजी, यांगर वह, पिताजी, ये यांग एर नहीं थी। ली मुयांग ने अपने पिता को आते देखा और तुरंत अपने पिता की बाहों में गिरकर दुखी होकर रोने लगा। ली ज़ायुआन ने ली युचेन को ठंडी नजर से देखा। आप इस युवराज की तरह कैसे काम कर रहे हैं? आप यांग एर को आमतौर पर कैसे पढ़ाते हैं? पिताजी, ली युचेन जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आपका बेटा अपनी गलती जानता है, यह आपका बेटा ही है जो अपने बेटे को ठीक से पढ़ाने में विफल रहा है। कृपया मुझे दंड दीजिए पिताजी। पिताजी, युवराज भाई, ली युनरुई ने नरमी बरतने की गुहार लगानी चाही। ली ज़ायुआन ने सख्ती से कहा, आज से युवराज ली युचेन 2 महीने के लिए पूर्वी महल तक ही सीमित रहेंगे। देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसने सोचा था कि एक दुर्घटना सीधे क्राउन प्रिंस को साल के अंत तक कैद कर देगी? वर्तमान युवराज के लिए ये कितना अपमानजनक और दमनकारी था। 2 महीने तक दरबार के कामों में भाग न ले पाना। अन्य महत्वाकांक्षी राजकुमार इस अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकते थे? भीड़ के हाव भाव अलग अलग थे। कुछ लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, कुछ मन ही मन खुश हो रहे थे। क्राउन प्रिंस ली यूचिन ने अपनी भौहें नीची की और सिर हिलाया। आपका बेटा आज्ञा मानता है यून रुई। क्राउन प्रिंस भाई आपसे माफी चाहते हैं, उन्होंने लगभग एक बड़ी गलती कर दी है। ली यूचिन ने ली यूनरुई को फिर से प्रणाम किया। झाओ बुजियांग ने चिंता से देखा जबकि ली यूनरुई ने भौहें सिकोड़ी। क्राउन प्रिंस भाई, ली यूनरुई को पता था कि यह क्राउन प्रिंस भाई की गलती नहीं थी। क्राउन प्रिंस भाई ने भी एक अवांछित आपदा का सामना किया था। झाओ बुजियांग ली यूनरुई के बगल में खड़ा था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, केवल लगातार अपनी उंगलियों को रगड़ रहा था। वह जानबूझकर किसी को नहीं घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों का कोना हमेशा सभी के हाव भाव और हरकतों पर ध्यान दे रहा था। ली ज़ायुआन ने भीड़ की ओर देखा और भीड़ से बाहर चला गया। यून रुई को छोड़कर उसके सभी बच्चों में से किसी ने भी उसे मानसिक शांति नहीं दी। उसने यून रुई का पक्ष लिया, ये जानते हुए कि कुछ लोग असहमत थे, ईर्ष्या रखते थे और निश्चित रूप से यून रुई को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ छोटी मोटी हरकतें करेंगे। वह वास्तव में इन छोटी मोटी हरकतों में हमेशा से ही लिप्त रहा था। यून रुई के बच्चे के प्रकट होने पर जब भी वह इसके बारे में सोचता तो वह द्वंद्व में पड़ जाता। वह गिरावट के दलदल में बुरी तरह से फंस चुका था, जिसका मूल कारण उसकी भावनाओं से लगाव था। शायद यून रुई के बच्चे को व्यक्तिगत रूप से खत्म करने से उसकी ताकत और भी बढ़ सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। फिर वह इसे अन्य बच्चों के लिए छोड़ देता। हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ईर्ष्या या अन्य कारणों से यून रुई को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे उसके लिए एक विकल्प बनाना माना जाएगा, या उसे यह स्पष्ट रूप से सोचने के लिए अधिक समय देना होगा कि किस पक्ष को छोड़ देना है। इस प्रहसन का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो गया तथा वातावरण धीरे धीरे पुनः जीवंत हो गया तथा सभी लोग अपने अपने प्याले उठाकर टोस्ट का आदान प्रदान करने लगे। झाओ बुजियांग ली यूनरुई की तरफ से पहरा दे रहा था। वह लगातार घटनाओं की समीक्षा कर रहा था, हर किसी के इरादों पर अटकलें लगा रहा था। अपने और अपने परिवार के हित के लिए उसे सबसे बुरी स्थिति और सबसे अधिक शत्रुओं से निपटने के लिए तैयार रहना था। युवराज ली यूचेन ने ली मुयांग को जीवंत भोज कक्ष से बाहर ले गए। ली मुयांग अभी भी रोना बंद नहीं कर सका और दुखी होकर बताया, पिताजी ये यांगर नहीं था। पिताजी जानते हैं, यह आपकी गलती नहीं है। ली यूचेन ने अपने बेटे के लिए आंसू पोंछे। अपनी माँ के घर जाओ। क्राउन राजकुमारी ने ली मुयांग का हाथ थामते हुए सौम्यता और सदाचार का परिचय दिया। ली यूचेन ने अपनी पत्नी और बच्चों की पीठ पर नजर डाली। वह भोज कक्ष की ओर देखते हुए बुदबुदाया, यांगर पिताजी जानते हैं कि यह तुम नहीं थे, क्योंकि पिताजी ने देखा था कि तुम्हें किसने धक्का दिया। धुंधली लैंप की रोशनी में ली यूचेन ने झाओ बुजियांग और उसके शाही पिता को गहराई से देखा, जिन्हें वह वर्षों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था। वह चुपचाप मुड़ा और अपनी पत्नी और बच्चों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए अंधेरे में चला गया। पूर्वी महल में कारावास, ये वही परिणाम था जो वह सबसे अधिक चाहता था। वह समय आ गया था जब शाही पिता को सबसे अधिक संदेह था। इस वर्ष बहुत सी चीजें घटित हो चुकी थीं। झेनबेई के राजा को पदच्युत कर दिया गया था और दक्षिणी सीमा पर भी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। तूफान आ रहा था और उसे सबसे पहले स्वयं को उस स्थिति से दूर करना था और पूरी स्थिति को छाया से देखना था। कम से कम उस समय शाही पिता की नजरों में नहीं आना था जब वह सबसे अधिक संदिग्ध था। वह कई वर्षों तक युवराज रहे थे। पूर्वी महल ठंडा और एकाकी था, युवराज होना कठिन था और पत्नी होना भी कठिन था। मेरे अच्छे बहनोई झाओ बुजियांग, क्या आप इस तूफान से बच सकते हैं? डरो मत, ली यूचेन की आंखें बहुत गहरी थीं। क्राउन प्रिंस भाई तुम्हें धक्का देंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यांग एयर को धक्का दिया था। बैंक्वेट हॉल में झाओ बुजियांग को कुछ महसूस हुआ हॉल के बाहर की ओर देखते हुए। हॉल के बाहर रात बहुत बड़ी थी और शाम की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। बहुत बड़ी अराजकता आ रही थी, अंतरधाराएं उमड़ रही थीं और रात में सैकड़ों भूत घूम रहे थे। वह पहले ही उनके बीच घुलमिल चुका था। भोज में ली झाओहुआ ने दूर से अपना प्याला उठाया, सब कुछ तैयार था। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई पूर्वी हवा ग्रेट जिया की असंख्य नदियों और पहाड़ों को पार करती हुई दक्षिणी सीमा की धुंध भरी भूमि में गहराई तक प्रवेश कर गई और झाओ टिंगशियाओ की आंखों के सामने घने कोहरे को उड़ा ले गई। जैसे ही कोहरा छंटा, हर जगह क्रॉसबो और तीर दिखाई देने लगे और विशेषज्ञ छाया में छिप गए। झेनन के राजा ली जिंगशेन एक भयंकर बाघ पर सवार होकर लहराते हुए आए। भाई टिंगशियाओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। शराब के 3 दौर के बाद सभी मेहमान आनंद ले रहे थे। शुरुआत को छोड़कर जब सभी ने उसे और युन रुई को अपना सम्मान दिया, झाओ गुजियांग ने थोड़ी शराब पी, लेकिन उसके बाद उसने एक बूंद भी नहीं पी। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह इतना शांत है कि युन रुई पर दोबारा कोई खतरा ना आ सके। जब शराब का नशा अपने चरम पर पहुंच गया तो भीड़ ने मौज मस्ती शुरू कर दी। कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग पिचकारी बजा रहे थे और कुछ लोग अपने पास खड़े लोगों से कानाफूसी कर रहे थे। हाल के वर्षों में ग्रेट जिया अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है। कोई व्यक्ति सीमा पर युद्ध का भार उठा रहा है ताकि यह राजधानी तक न पहुंचे। राजधानी में बैठे इन गणमान्य लोगों को बंदूक और लाठी चलाना पसंद नहीं है, उन्हें तो केवल लिखना और स्याही लगाना पसंद है। अब जबकि शराब का प्रचलन जोरों पर है, शाही परिवार के कई सदस्यों और अधिकारियों ने कविता पाठ करने का सुझाव दिया है। लीजा युआन को आमतौर पर इंपीरियल स्टडी में लिखना और स्याही से चित्रकारी करना पसंद है और यह प्रस्ताव भी उसे बहुत पसंद आया, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। सभी लोग कविता पाठ करने लगे। प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको आश्चर्यचकित करना चाहते थे, जबकि अंतर्मुखी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पूरे भोज के दौरान तालियां और चापलूसी जारी रही और माहौल अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण होता गया। ली युनई के गाल शराब पीने से लाल हो गए थे। उसने झाओ गुजियांग को धक्का दिया और अपनी जीभ को ऐसे लड़खड़ाते हुए कहा जैसे उसके मुंह में बेर हो। झाओ गुजियांग, आप भी एक कविता क्यों नहीं लिखते? मैं नहीं कर सकता, झाओ गुजियांग ने अपना सिर हिलाया। वह हर किसी के कविता पाठ में भाग नहीं लेना चाहता था, वह दिखावा नहीं करना चाहता था। अनिवार्य शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित एक व्यक्ति के रूप में, यदि वह वास्तव में दिखावा करना चाहता तो वह आसानी से ढेर सारी कविताएं लिख सकता था। क्या वह कुछ कविताएं सुनाकर श्रोताओं को आश्चर्यचकित नहीं कर सकते थे? लेकिन उसके लिए ये सब उबाव था। उसने दिखावे के लिए कविता का इस्तेमाल करने के बहुत से दृश्य देखे थे, जो फिल्मों और उपन्यासों में हर जगह थे। लेकिन अब उसके लिए जो चाहिए था वह स्थिरता थी, दिखावा नहीं। वह झूठी प्रसिद्धि के बोझ तले दबना नहीं चाहता था, बल्कि चुपचाप धन कमाना चाहता था, अपना जीवन बचाना चाहता था और बेहतर जीवन की ओर बढ़ना चाहता था। गुजियांग, क्या तुम नहीं चाहते? शाही परिवार के एक सदस्य ने अपनी गर्दन आगे की और करीब झुक गया। मैंने ये क्यों सुना कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो? तुम कविता भी नहीं लिख सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? झाओ गुजियांग ने विनम्रता से कहा, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कम प्रोफाइल रखने का विकल्प चुना। ठीक है, जिस व्यक्ति ने सुझाव दिया था उसने कंधे उचका दिए और उस पर जोर नहीं डाला। कविता पाठ में अधिकाधिक लोगों ने भाग लिया। राजपरिवार के कई सदस्यों ने असाधारण प्रतिभा दिखाई और उन्होंने जो कविताएं लिखी वे सुगठित और लयबद्ध थीं। और राजपरिवार की अनेक महिलाएं तथा उच्च पदस्थ अधिकारियों की पत्नियां, जब भी उनके पति ऐसी कविताएं लिखते थे जिन पर श्रोताओं की तालियां बजती थीं, तो उनके चेहरे पर खुला गर्व होता था, वे सम्मानित महसूस करती थीं। ली युनरुई ने अन्य सुंदरियों के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा और वह बहुत ईर्ष्यालु थी। इसलिए उसने झाओ गुजियांग की बांह को हिलाया, उसकी आंखें झाओ गुजियांग पर टिकी थीं। इससे पहले कि झाओ गुजियांग ली युनरुई को जवाब दे पाता, जो लोग झाओ गुजियांग और ली युनरुई पर ध्यान दे रहे थे वे हंसे और कहा, गुजियांग आओ बस यूं ही एक कविता लिखो, भाग लो और मजे में शामिल हो जाओ। ये सही है गुजियांग, देखो युनरुई चाहती है कि तुम खेलो, तुम उसे निराश नहीं कर सकते, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा नहीं लिख सकते। महाराज, डोगरेल भी ठीक है, अगर यह आसानी से पढ़ा जा सके तो ये भी अच्छा है। आखिरकार कविता प्रेरणा का विषय है और इसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। चूंकि महामहिम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक छंदों के बारे में नहीं सोचा है। कुछ ने उपहास किया, कुछ ने व्यंग्य किया और कुछ ने ईमानदारी से आशा व्यक्त की कि झाओ गुजियांग मंच पर आएंगे। झाओ गुजियांग ने ली युनरुई का हाथ छुआ। वह मंच पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर युनरुई चाहता तो वह अनिच्छा से दिखावा कर सकता था। उसे अपनी महिला की भावनाओं की रक्षा करनी थी। ठीक है, झाओ गुजियांग ने अनिच्छा से धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद को मूर्ख बनाऊंगा। भीड़ ने जयकारे लगाए जिससे माहौल खुशनुमा हो गया। उन्हें कमोबेश पता था कि झाओ गुजियांग में असली प्रतिभा है या नहीं। एक राजकुमार जो अक्सर मौज मस्ती के स्थानों पर जाता था, कमोबेश कुछ सती प्रतिभा से कलंकित था, लेकिन उन्होंने ये भी सुना कि पूर्व झाओ गुजियांग वेश्यालयों में शराब पीने के खेल में भी नहीं जीत सकता था। वह मूल रूप से अपने रास्ते को तोड़ने के लिए पैसे पर निर्भर था। इससे पता चलता है कि झाओ गुजियांग की प्रतिभा केवल सामान्य स्तर पर है। लेकिन भले ही झाओ गुजियांग की कविताएं खराब हों, लेकिन इससे होने वाला मजा कम नहीं होगा। वहां उपस्थित अधिकांश लोग राजकुमार झाओ गुजियांग पर निशाना साधना चाहते थे। खासकर लॉन्ग झान के बर्खास्त होने के बाद कई लोगों के दिलों में लॉन्ग झान और झाओ गुजियांग के बीच संघर्ष झाओ गुजियांग की स्थायी जीत के साथ समाप्त हो गया। लॉन्ग झान पहले कितना गौरवशाली था, झाओ गुजियांग अब भी उतना ही गौरवशाली है। माँ बेटे के बढ़प्पन पर निर्भर करती है और राजकुमार झाओ गुजियांग भी पिता के बढ़प्पन पर निर्भर करता है और अत्यधिक ध्यान देता है। झाओ गुजियांग की नजरें घूम गईं। उसने ली यूनरुई का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, उसका चेहरा फूल जैसा है और उसके वस्त्र बादलों जैसे हैं, वसंत की हवाएं उससे भरी हुई छत को छूती हैं, लेकिन जेड पर्वत की ऊंचाई पर उससे मिलने के कारण मैंने उसे चंद्र महल की परी मान लिया था। धमाका। जैसे ही झाओ गुजियांग की स्नेह भरी कविताएं सामने आईं, कुछ महिलाएं जो शुरू में अपने पतियों की कविताओं के बारे में आत्मसंतुष्ट थीं, वे इतनी आश्चर्यचकित हुईं कि वे इसमें कुछ और नहीं जोड़ सकीं और गलती से उनके कप टूट गए। जो अधिकारी मूल रूप से झाओ गुजियांग पर निशाना साधना चाहते थे, वे तुरंत अचंभित रह गए। झाओ गुजियांग की कविता सरल थी और बिना किसी दिखावे के सहजता से लिखी गई थी। कविता में शब्द समृद्ध और रंगीन है और हर शब्द बह रहा है। इस कविता को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कागज पर वसंत की हवा चल रही हो और फूलों की रोशनी आंखों में हो। व्यक्ति की सुंदरता धुंधली हो जाती है। बिना किसी चित्रण की आवश्यकता के यह स्वाभाविक रूप से लोगों को यह महसूस कराता है कि यह एक चपरासी है, एक सुंदरता का जेड रंग है और झाओ गुजियांग ली यूनरुई की प्रशंसा कर रहा है और कुछ नहीं। वे इस तरह की कविता से कैसे मुकाबला कर सकते थे? खुद को अपमानित करने के लिए ली यूनरुई ने झाओ गुजियांग को खाली आंखों से देखा। उसका चेहरा गुलाबी चमक से भरा था। कविता द्वारा प्रशंसा किए जाने की शर्म और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक महिला के रूप में उसके घमंड को पूरी तरह से संतुष्ट करने की खुशी। उसका अहंकार भर गया और उसका प्यार उमड़ पड़ा। उसने हिम्मत करके खुद को झाओ गुजियांग की बाहों में फेंक दिया, अपना नाजुक चेहरा झाओ गुजियांग के सीने में दबा लिया। अपने प्यारे आदमी के दिल की धड़कन सुनना चाहती थी। वहां उपस्थित अन्य महिलाएं ईर्ष्यालु और जलनशील थीं। ली यूनरुई के पास एक प्यार करने वाला पिता और एक प्यारा पति है। अच्छा, ली यूनरुई ने शराब का एक और घूंट लिया और जोर से प्रशंसा की। अच्छी कविता। ली यूनरुई के नेतृत्व ने अन्य लोगों को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया और एक के बाद एक तालियां बजाने लगे। एक और, ली यूनरुई ने खुशी जाहिर करना जारी रखा। उसे गर्व था कि उसका साला प्रतिभाशाली था। झाओ गुजियांग ने अपनी भौहें उठाई, ली यूनरुई को कसकर गले लगाया। उसकी आंखें गहरी थीं और उसने अपने बूढ़े पिता के बारे में सोचा, इसलिए उसने कहा, अपने प्यालों में मैं दीपक की रोशनी में अपनी तलवार का निरीक्षण करता हूँ, अपने सपनों में मैं शिविर में वापस आ जाता हूँ और सीन बजाता हूँ। 800 ली मेरी कमान के तहत भुना हुआ मांस विभाजित है, 50 तार सीमा से परे ध्वनि करते हैं, धुन बदल जाती है, ड्रिल ग्राउंड पर सैनिकों की शरद ऋतु की समीक्षा, युद्ध के मैदान की वीरतापूर्ण भावना सामने आई और सभी ने अपनी सांस रोक ली। झाओ गुजियांग का स्वर भावनाओं से भरा हुआ था और वह लगातार कहता रहा, मेरा घोड़ा दिल्लू तेजी से उड़ता है, मेरा धनुष वज्र के समान है जो डोरी को चौंका देता है, मैं आपके शासनकाल को समाप्त करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करना चाहता हूँ तथा जीवन में और मृत्यु के बाद भी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता हूँ, अफसोस मेरे सफेद बाल बढ़ रहे हैं। कविता समाप्त होने के बाद श्रोता चुप हो गए और एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दी। सभी ने झाओ गुजियांग को देखा और ठंडी हवा की सांस ली। वे अपने दिल में चल रहे सदमे को दबा नहीं सके। झाओ गुजियांग कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया, वह ऐसी कविता कैसे लिख सकता है? ये सही है, झेनबेई के राजकुमार। ये कविता झेनबेई के राजकुमार के लिए लिखी गई है। ये झेनबेई का राजकुमार ही होगा जिसने अपने दुख और गुस्से को अपने बेटे के सामने व्यक्त किया होगा। झेनबेई का राजकुमार राजधानी लौट आया और उसकी सैन्य शक्ति छीन ली गई। उसके पास कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक बूढ़े व्यक्ति की अधूरी महत्वाकांक्षा थी। पूरी कविता देशभक्ति के भाव, सम्राट के प्रति वफादारी के विचार और दिल में वीर महत्वाकांक्षा को चरम सीमा तक पहुंचाती है, ताकि भले ही लोग सहानुभूति न रख सकें, लेकिन वे भावना से संक्रमित हो सकते हैं। मैं तुम्हारे शासनकाल को समाप्त करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करना चाहता हूँ, जीवन में और मृत्यु के बाद प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता हूँ। लीजा युआन ऊंचे स्थान पर बैठा था, उसकी आंखें कांप रही थीं। अफसोस मेरे सफेद बाल बढ़ रहे हैं। वह लगातार आहें भरता रहा, शायद वह सचमुच गलत था और वह अपने भाई पर लगातार संदेह करता रहा था। क्या वह वापस लौट सकता है? वह पीछे नहीं हट सकता। वह सम्राट है, वह महान जिया का स्वर पुत्र है और केवल वह ही महान जिया को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। वह कैसे पीछे लौट सकता है? भोज कक्ष में धीरे धीरे प्रशंसा बढ़ती गई, धीरे धीरे अंतहीन होती गई। हर कोई झाओ गुजियांग की प्रतिभा और उसके द्वारा दिखाए गए पितृभक्ति पर आश्चर्यचकित था जो उसने अपने पिता की अधूरी महत्वाकांक्षाओं के बारे में विशद रूप से लिखा था। सभी ने एक के बाद एक टोस्ट किया और झाओ गुजियांग मना नहीं कर सका, इसलिए उसने आधा बर्तन हल्के से पी लिया। मेहमान तब तक आनंद लेते रहे जब तक कि चांद आसमान के बीच में नहीं आ गया और मेहमान पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए। झाओ गुजियांग और ली यूनरुई ने उत्साही परिचितों के एक समूह को विदाई दी, गाड़ी में सवार हुए और शाही महल की ओर चल पड़े। झाओ मनफू बहुत स्थिर गति से गाड़ी चला रहा था। जब वह एक शांत गली में पहुंचा तो घोड़ा अचानक हिनहिनाया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आगे कोई व्यक्ति सड़क को रोके खड़ा था। उसने बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहन रखे थे तथा उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिसके ब्लेड पर बर्फ जमी हुई थी। चमकते चांद में एक छाया चमकी और एक लंबा और फुर्तीला व्यक्ति गाड़ी की छत पर हल्के से गिरा। इस बार मैं देखूंगा कि तुम कहां से बचकर निकलती हो, शियुहिंग की ठंडी आवाज अनिश्चित थी और उसने उग्रता से कहा। झाओ बुजियांग, वाह, चमकते चांद के नीचे एक लंबी सीटी की आवाज खामोश रात में गूंज रही थी। घोड़े को मजबूरन रुकना पड़ा। झाओ बुजियांग ने गाड़ी की खिड़की का पर्दा उठाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आगे की सड़क को जियांग ली रोक रही थी। उसकी तलवार की आभा ठंडी थी जबकि गाड़ी के ऊपर खड़ी उसकी ओर देख रही थी झाओ फेयन, जो अपनी असाधारण हल्कापन कौशल के लिए जानी जाती थी। क्या संयोग है, झाओ बुजियांग बिना किसी घबराहट के मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए कहा। गूगल सर्च TWKAN, मेरा योर कहाँ है? खुद को दिखाने से पहले ही बोल रही है, क्या उसे मुझसे मिलने में शर्मा रही है? झाओ बुजियांग, आपने बार बार इस सीट को अपमानित किया है, आज आपको निश्चित रूप से फांसी दी जाएगी, शी युहिंग की आवाज फिर से गूंजी। कुछ ही दूरी पर दीवार पर एक सुंदर आकृति दिखाई दी जिसके पीछे चमकता हुआ पूर्ण चंद्रमा था। झाओ बुजियांग शी युहिंग की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन ये सुंदर आकृति और ठंडी आवाज निस्संदेह शी युहिंग की थी। दुश्मनों को सुलझाना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। हमारे मन में शुरू से ही कोई नफरत नहीं है तो फिर परेशान क्यों होना चाहिए? चूंकि झाओ बुजियांग ने आज रात के भोज में भाग लेने की हिम्मत की थी, इसलिए उसने पहले से ही सभी संभावित स्थितियों के लिए तैयारी कर ली थी। अब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ था सिवाय इस अवरोध के जिसकी उसने आशंका जताई थी। उनकी उम्मीद के अनुसार क्या लॉन्ग झान को कम से कम यहाँ नहीं होना चाहिए? लॉन्ग झान की उसके प्रति नफरत को देखते हुए इस अवरोधन में निश्चित रूप से वह शामिल होगा, लेकिन अब लॉन्ग झान का फिगर कहीं नहीं मिल रहा था। क्या वह अंधेरे में छिपकर चुपके से हमला करने की योजना बना रहा होगा? ये भी सही नहीं है। जब छिपकर हमला करने की बात आती है तो क्या झाओ फेयन उपयुक्त विकल्प नहीं होना चाहिए? लॉन्ग झान कहाँ है? इतना बड़ा नायक कहाँ चला गया? उसके गायब होने का कोई कारण नहीं है, है ना? उन्होंने सीधे पूछा। यूर लॉन्ग झान कहाँ है? वह आज क्यों नहीं आया? जैसे ही झाओ बुजियांग ने बोलना समाप्त किया, हथेली से हवा का एक झोंका उसके सिर की ओर आया। उसने अपना सिर वापस गाड़ी में खींच लिया। झाओ फेयन की गुस्से भरी फटकार उसके पीछे पीछे आ रही थी। झाओ बुजियांग, ये सब तुम्हारी वजह से है, अन्यथा जूनियर भाई खुद को जोखिम में क्यों डालेंगे? खुद को जोखिम में डालो, मुझे सोचने दो। झाओ बुजियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, अपने दिल में विचार किया और जवाब पा लिया। उसके साथ शब्दों को बर्बाद मत करो। जियांग ली ने अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार उठाई, ब्लेड और उसका गाल चांदनी में ढका हुआ, ठंड की तरह सफेद। झाओ बुजियांग, अब गाड़ी से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे कोचमैन और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी। गाड़ी के अंदर झाओ बुजियांग ने ली युनरुई का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे आश्वस्त करते हुए कि सब कुछ ठीक है। उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने बस आह भरी। तो ये सब मेरे कारण है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैंने प्रतिरोध किया। तो क्या मैं दोषी हूं? क्या मुझे लॉन्ग झान द्वारा मार दिया जाना चाहिए था ताकि वह मुझसे सब कुछ छीन ले? मुझे स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहिए था और उसका आदर्श बनना चाहिए था। सही। गाड़ी के बाहर सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं बोला। झाओ बुजियांग के शब्द व्यंग्य से भरे थे, लेकिन वे उसका खंडन नहीं कर सके। वे चिंतित थे कि जबरन किया गया हमला चरम यिन पवित्र शरीर ली युनरुई को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वे पहले झाओ बुजियांग को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उनके शब्द झाओ बुजियांग को बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सके और इसके बजाय वे झाओ बुजियांग के खंडन से अवाक हो गए। युवा, अपने शिष्यों को लेकर चले जाओ, झाओ बुजियांग ने फिर सलाह दी। वह लड़ना और मारना नहीं चाहता था। वर्तमान में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ली जायुआन था, जो अपनी कमजोरी के दौर में पहुंच रहा था, और लॉन्ग झान शियुहिंग अभी भी उसके नियंत्रण में था। वह उससे तभी छुटकारा पा सकती थी जब या तो उसे पकड़कर या अपने दत्तक माता पिता को बचाकर। लेकिन उसने पहले ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी और शियुहिंग कम समय में दोनों में से कोई भी काम पूरा नहीं कर सका। झाओ बुजियांग, तुम ली युनरुई के बगल में छिपे हो, उम्मीद है कि वह तुम्हें बचा लेगी। शी युहिंग दीवार के साथ टहल रही थी, उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। ये सीट जानती है कि आप समय की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको बचाने नहीं आ सकता। गाड़ी के अंदर झाओ बुजियांग ने ली युनरुई को कसकर गले लगाया। जब वह ली युनरुई की नजरों से मिला तो उसकी आंखें नम हो गईं। आज की हत्या उसके दिमाग में कल्पना की गई सभी हत्याओं में सबसे सरल थी। वह कल्पना कर सकता था कि निकट भविष्य में लोगों का एक और समूह उसकी हत्या करने आएगा, और उस समय उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि वह और ली यूनरुई जीवित हैं या मर गए हैं। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, झाओ बुजियांग ने बड़बड़ाया। सच्चे यांग हॉट सूत्र की शक्ति उसके पूरे शरीर में उमड़ रही थी। अगले ही क्षण एक एबेकस गाड़ी के ऊपर से टूटकर छत पर बैठे झाओ फेयन पर सीधा हमला कर दिया। झाओ फेयन की आंखें कांप उठी और वह जल्दी से चकमा दे गई। एबेकस की मालाएं हिलती रहीं, जैसे कि किनारे पर घास काटने वाला गिलोटिन झाओ फेयन के बालों का एक कतरा काट रहा हो। मोदियाओ ने एबेकस को पकड़ लिया, आगे की ओर दबाया और अपने कपड़े के थैले से एक मुट्ठी औषधीय पाउडर निकाला और उसे झाओ फेयन की ओर फेंक दिया। झाओ फेयन ने अपने पैर के अंगूठे से एबेकस को टैप करते हुए पीछे की ओर उड़ने के लिए बल का प्रयोग करते हुए गंभीर भाव से छलांग लगाई और सड़क को अवरुद्ध करने वाले जियांग ली के सामने एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा आदमी अचानक छाया में दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि चियांग था। उसकी आंखें तेज थीं और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। मिस, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जियांग ली ने अपनी तलवार को छाया में घुसाया, लेकिन ब्लेड को एक कठोर मुट्ठी ने जोर से मारा। बल इतना अधिक था कि पूरा ब्लेड गूंजने लगा और कांपने लगा, और शेष बल जियांग ली के तलवार पकड़े हुए हाथ में चला गया। वह दर्द से पीछे हट गई। चियांग ने हंसते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, जियांग ली को पीछे हटने से रोका। वह कठोरता पर काबू पाने के लिए कोमलता का उपयोग करने में सबसे अच्छा था। जियांग ली की तलवार की धार और ताकत उसे चोट पहुंचाना मुश्किल था। अधिक से अधिक यह एक पारस्परिक नुकसान होगा, लेकिन जब तक वह इस महिला को उत्तराधिकारी से निपटने से बचाता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह मर जाता है। ये देखकर कि उसके दो शिष्यों को उन दोनों ने रोक दिया है, शियुहिंग ने ठंडी सांस ली और एक अद्वितीय ग्रैंड मास्टर की शक्ति खिल उठी। अपने पैर की एक टैप के साथ वह गाड़ी के सामने की ओर उड़ गई। उसका जेड पैर घोड़े के सिर पर पड़ा। घोड़ा भयभीत था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। एक बड़े हाथ ने घोड़े की गर्दन को लपेट लिया और कैंग लैंग ने पलटकर शी युहिंग की ओर लात मारी। शी युहिंग ने इसे हल्के से खारिज कर दिया, पीछे की ओर लात मारी। कैंग लैंग ने अपना शरीर स्थिर करने से पहले 10 फीट से अधिक की दूरी तय की। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह शी युहिंग को देख रहा था। उसकी आंखें शी युहिंग की हरकतों पर घूम रही थी, खामियों की तलाश कर रही थी, कार्रवाई करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। झाओ बुजियांग, आपके पास एक तुरुप का पत्ता होना बेहतर है। शी युहिंग का चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। युवक, क्यों परेशान हो? गाड़ी के अंदर झाओ बुजियांग अभी भी शांत और संयमित था, फिर से चिढ़ा रहा था। शी युहिंग ने अनसुना कर दिया और एक शक्तिशाली आभा ने लहरें पैदा कर दी जिससे गाड़ी की घंटियां बजने लगी। वह झाओ बुजियांग की ओर लपकी। सबसे पहले चरम यिन पवित्र शरीर ली यूनरुई पर कब्जा करो और फिर झाओ बुजियांग के मुंह को तोड़ दो। लेकिन जैसे ही वह आधा कदम आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया जब उसने अपने बगल में बैठे झुरीदार बूढ़े बटलर को देखा। ये बूढ़ा बटलर थोड़ा ज्यादा शांत था। बूढ़ा बटलर गाड़ी के किनारे पर झुक गया, दयालुता से मुस्कुराया, कुछ सड़े हुए दांत दिखाए। मिस, कृपया अपनी मदद करें। महामहिम ने पहले ही इस बूढ़े को निर्देश दिया था कि वह आपको अंदर आने दे और अपनी जान व्यर्थ न गंवाए। शी युहिंग ने गहरी सांस ली। उसे बूढ़े बटलर में कोई मार्शल आर्ट की खेती महसूस नहीं हुई, लेकिन बूढ़े बटलर ने स्पष्ट रूप से बड़े तूफानों का अनुभव किया था और उसकी शक्तिशाली आभा के सामने उसने बिल्कुल भी डरपोकपन नहीं दिखाया। और झाओ बुजियांग ने हिम्मत करके बूढ़े बटलर को उसे रोकने नहीं दिया। क्या यह हो सकता है कि झाओ बुजियांग के पास कोई और मजबूत तुरुप का पत्ता था? क्या यह उसे धोखा देने की एक खोखली शहरी चाल थी या उसे सचमुच उस पर भरोसा था? शी युहिंग की आंखें कांप उठी। झाओ बुजियांग ने उसे बार बार चौंकाया था। उसकी मजबूत मानसिकता, तेज तर्रार प्रतिक्रिया और कई जोखिम भरे लेकिन बहुत प्रभावी फैसले उसे इस युवा जूनियर की सही मायने में कद्र करने पर मजबूर कर देते हैं। झाओ बुजियांग हर बार खतरे के किनारे पर उछलता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन हर बार झाओ बुजियांग खतरे को सुरक्षा में बदल सकता था। शी युहिंग ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई, गहरे नीले आकाश की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। उसने अपनी उंगलियां भींची और अपने दिल में हिसाब लगाया, स्वर्गीय भाग्य सितारा खिसक गया और आपदा सितारा पूर्व में उगाया। क्या ये झाओ बुजियांग स्वर्गीय भाग्य का नया मालिक था या आपदा सितारा? किसी भी स्थिति में नजदीक से जांच करने पर उसे पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका जेड हाथ गाड़ी को छूता, वह बिजली की तरह पीछे हट जाता, उसकी उंगलियों पर दीवार की राख की तरह सफेद पाउडर लग जाता। अगर चांदनी न होती तो उसे भी यह नोटिस करने में मुश्किल होती। जहर, वह अपनी उंगलियों की जलन को साफ महसूस कर सकती थी। जहर की इतनी भयावहता उसने विशाल मार्शल दुनिया में शायद ही कभी देखी हो। ये देखकर कि शी युहिंग ने अपने द्वारा बिछाए गए जहर को छू लिया था और वह रक्षा की अंतिम पंक्ति को तोड़ने वाला था, मोडियाओ ने अब झाओ फेयन का पीछा नहीं किया बल्कि एक लंबी पताका पकड़े हुए, अपनी कमर से एक एबेकस लटकाए हुए, रंगीन पाउडर से घिरे हुए, एक अजीब सुगंध को बुझाते हुए गाड़ी के शीर्ष पर कदम रखा। सलामी देते समय उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। संप्रदाय गुरु शे, उत्तराधिकारी की सलाह सुनो। अभी भी अंदर आ रहे हो? गाड़ी के अंदर झाओ गुजियांग का स्वर शांत था, मानो उसने पर्दे के पीछे से शी युहिन की हरकतें देखी हों। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मील तक विदा कर दूंगा, लेकिन अंत में हमें अलग होना ही होगा। अगर तुम अंदर नहीं आते तो चले जाओ, यहाँ रात को ठंड है, मुझे जल्दी घर जाकर आराम करना है। शी युहिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। राजकुमार के महल में जहर का इस्तेमाल करने वाले इस व्यक्ति के पास जहर का बहुत उच्च स्तर का कौशल था। उसके लिए इस व्यक्ति को मारना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कठिनाई इस तथ्य में थी कि इस व्यक्ति को मारना एक नुकसान होगा, क्योंकि उसे भी अनिवार्य रूप से जहर दिया जाएगा और आज ली युनरुई को रोकने का उसका विचार चकनाचूर हो जाएगा। खुद को भाग्यशाली समझो, उसने ठंडी सांस ली, अपनी लंबी आस्तीनें झटकी और हवा के साथ उठी और अपनी जगह पर गायब हो गई। वैसे झाओ गुजियांग ने पर्दा उठाया, आज रात मैं वृद्ध दंपति को बता दूंगा कि आप कल उनसे मिलने जा रहे हैं, जल्दी आना, याद रखें। हाँ, आप उन्हें निराश नहीं करना चाहते, है ना? रात के आकाश के नीचे शी युहिन की आकृति रुक गई, उसकी पतली उंगलियां तब तक भीगती रहीं जब तक कि वे सफेद नहीं हो गईं। झाओ गुजियांग और ली युनरुई ने इसे नहीं खाया, बल्कि वह खुद मुसीबत में पड़ गई। झाओ गुजियांग ने उसे फिर से राजकुमार के महल में जाने के लिए कहा, वास्तव में वह क्या योजना बना रहा था।